झेनबेई राजा के वारिस की सगाई टूटने वाली है, जल्दी जाओ और देखो।
नहीं, क्या उसके पिता झेनबेई राजा सीमा पर लड़ाई में नहीं मरे थे?
बिल्कुल, तो उसके निकम में बेटे ने उसका साथ खो दिया है। सातवीं राजकुमारी, जिसकी उससे सगाई हो चुकी थी, आज रिश्ता तोड़ने आई है।
दक्षिया राजवंश, झेनबेई राजा की संपत्ति के बाहर सफेद कपड़े ऊंचे स्थान पर लटकाए गए थे। एस्टेट के अंदर सैकड़ों नौकर अंतिम संस्कार की तैयारी में व्यस्त थे। मुख्य हॉल के मध्य में लगभग 20 वर्ष का एक युवक खड़ा था। वह शोक के कपड़े पहने हुए था, लंबा और दुबला था, सुंदर आकृति वाला था, लेकिन उसमें दुख का कोई निशान नहीं था और वह झपकी भी ले रहा था। एस्टेट के बाहर सुनहरी छत वाली एक भव्य पालकी बड़ी तेजी से आई और झेनबेई राजा की एस्टेट के ठीक बाहर रुक गई, जिससे प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया। भव्य पालकी का पर्दा एक हिजड़े ने खींचा। सातवीं राजकुमारी, झेनबेई राजा की जागीर। झाओ जागीर आ गई है। एक अति सुंदर आकृति पालकी से नीचे उतरी। उसका शरीर उत्कृष्ट था, आकर्षक वक्रता थी और उसका आभामंडल पूर्णतया पारलौकिक था। उसके रूप ने आसपास के आम लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया। यह महामहिम की सबसे प्रिय सातवीं राजकुमारी है, सचमुच ऐसी सुंदरता जो शहरों को हिला सकती है। हे हे, झाओ बुझी आंख की तरह गोबर के ढेर में फंसा एक ताजा फूल। कोई आश्चर्य नहीं कि सातवीं राजकुमारी सगाई तोड़ने आई। इस समय महिला की अभिव्यक्ति भयावह रूप से गंभीर थी। एस्टेट के बाहर खड़ी होकर दूर से अंदर सो रहे आदमी को देखकर उसके चेहरे पर ठंडक बढ़ गई। आज उसके पिता झेनबेई राजा के निधन को सातवां दिन है और वह अभी भी सो रहा है। सातवीं राजकुमारी की बातें सुनकर नपुंसक ने आह भरी। इस बूढ़े नौकर ने सुना है कि उसने पिछली रात धुएं और विलो वाली गलियों में बिताई थी। उसे शायद अभी भी हैंगओवर है, बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाला, जानवर से भी बदतर। सातवीं राजकुमारी ने अपने मोती जैसे दांत काटे। अगर मुझे अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे आदमी के साथ बितानी पड़े तो मैं अकेले ही बूढ़ी हो जाना पसंद करूंगी। ऐसा कहकर सातवीं राजकुमारी ने स्वयं झेनबेई राजा की संपत्ति की ओर चिल्लाकर कहा, झाओ बुजियांग, मैं सगाई तोड़ने आया हूँ। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी झेनबेई राजा की संपत्ति के अंदर और बाहर सभी ने उसे सुना। विशेषकर बाहर तमाशा देखने आए कई आम लोग पहले से ही एकत्र हो चुके थे। हे हे, वह बेकार वारिस, आज हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। अच्छा शो? मैं तो कहूंगा कि यह सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी की बात है। यह अफसोस की बात है कि झेनबेई राजा अपने इकलौते बेटे की रक्षा के लिए पूरी जिंदगी वीरता से काम करता रहा, जो इतना निराशाजनक निकला। अपमानजनक? एक पुरुष के लिए इससे अधिक अपमानजनक क्या हो सकता है कि उसे एक महिला ने छोड़ दिया हो। ... एस्टेट के अंदर मौजूद नौकर तुरंत वारिस के पास आए और बाहर की स्थिति की सूचना दी। लेकिन काफी देर तक बात करने के बाद भी वारिस स्थिर रहा। वे नहीं जानते थे कि इस समय वारिस झाओ बुजियांग के दिमाग में दो यादें तेजी से विलीन हो रही थीं। महाराज, हमें क्या करना चाहिए? सातवीं राजकुमारी सगाई तोड़ने आई है। राजा का मुखिया भी आपकी अध्यक्षता का इंतजार कर रहा है। वारिस, हे मेरे स्वामी, कृपया अब और मत सोइए। एस्टेट का बूढ़ा बटलर रोया। अंततः झाओ बुजियांग की चेतना पूरी तरह से साफ हो गई। लेकिन जो जागा वह मूल वारिस नहीं था, बल्कि एक अन्य आत्मा थी जो देहांतरित हो गई थी। ठीक है, ठीक है, मैं पूरी रात एक उपन्यास पढ़ता रहा और अंततः उसी में खो गया, झाओ बुजियांग ने मन ही मन बुदबुदाया। जन्म लेना तो ठीक है, लेकिन क्या मैं किसी बेहतर किरदार में जन्म नहीं ले सकती? ये झाओ बुजियांग तो वास्तव में कथानक का विषय है, उसमें जन्म क्यों लेना? जिस उपन्यास में उन्होंने काम किया उसका नाम था दक्षिया राजवंश का सबसे रोमांटिक शाही दामाद, जो विशुद्ध इच्छा पूर्ति शक्ति की कल्पना थी। मूल पुस्तक के नायक का नाम लांग जान था, जिसका एक अजेय स्वामी और कई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली वरिष्ठ बहनें थीं। 10 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद वह पहाड़ से नीचे उतरकर दरबार में अधिकारी बन गया और उसने अपना रास्ता बनाने, जवाबी हमला करने और आगे बढ़ने की यात्रा शुरू की। मूल कथानक के अनुसार आज झाओ बुजियांग की सगाई सातवीं राजकुमारी ली युनरुई द्वारा तोड़ दी जाने वाली थी। लेकिन झाओ बुजियांग अनिच्छुक था और ये देखकर कि ली युनरुई काफी सुंदर थी, उसकी वासना भड़क उठी। इसलिए उसने कुछ अनुचित कार्य करने के इरादे से उसे नशीला पदार्थ दे दिया। और नायक लॉन्ग झान ठीक समय पर वहां पहुंचा और उसने झाओ बुजियांग को लात मारकर मार डाला। उसे ये भी पता चला कि ली युनरुई को नशीला पदार्थ दिया गया था, इसलिए उसने सीधे झाओ बुजियांग की जगह ले ली और ली युनरुई के कौमार्या का दावा किया। क्योंकि वह उसे बचा रहा था, बाद में ली युनरुई न केवल नाराज नहीं हुआ, बल्कि शाही परिवार ने भी लॉन्ग झान का दृढ़ता से समर्थन किया। नायक के रूप में लॉन्ग झान की महत्वाकांक्षा स्वाभाविक रूप से चरम पर पहुंच गई। इसके बाद की साजिश में उसने सम्राट की जगह ले ली और दुनिया पर पूर्ण अधिकार कर लिया। उसके हरम में 3,000 सुंदरियां थीं। वह हर दिन एक नई सुंदरी के साथ खेलता था और 10 वर्षों तक उसने किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण कथानक वास्तव में एक सुपर अजेय शक्ति की कल्पना थी। एक पाठक के रूप में झाओ गुजियांग को यह बहुत संतोषजनक लगा। लेकिन अब जब झाओ गुजियांग उसमें स्थानांतरित हो गया था और लॉन्ग झान द्वारा मौत के घाट उतारा जाने वाला पहला छोटा खलनायक बन गया था तो ये बहुत ही दुखद था। बिल्कुल नहीं, उसे अपनी नियतिपूर्ण मृत्यु को बदलना होगा। लॉन्ग झान के पास नायक का आभामंडल था और उसे भाग्य का भी आशीर्वाद प्राप्त था, उसके साथ मुकाबला करना असंभव था। सबसे अच्छा तरीका था कथानक को बदलना। चूंकि ली युनरुई सगाई तोड़ना चाहता था, इसलिए उसे विरोध करने की जरूरत नहीं थी। उसे जल्दी से सगाई तोड़ देनी चाहिए और उसे भाग जाने देना चाहिए। फिर लॉन्ग जान के पास उसे मारने का कोई बहाना नहीं होगा। दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत सारी सुंदरियां हैं। जब तक वह लॉन्ग जान के आसपास की महिलाओं को नहीं छूता, तब तक वह बहुत आराम से रह सकता था। झाओ गुजियांग, यहाँ से बाहर निकलो अभी। एस्टेट के बाहर ली युनरुई पहले से ही झेनबेई राजा की एस्टेट में घुस गया था। वारिस, वारिस, सातवीं राजकुमारी अंदर घुसने वाली है। वारिस, क्यों ना हम इसे आपके सामान्य तरीके से करें और पहले उसे बांध दें। बूढ़े बटलर के शब्द तुरंत ली युनरुई ने सुन लिए। उसे बांध दो, कितना अश्लील और बेशर्मी भरा काम है। ली युनरुई की झाओ गुजियांग के प्रति घृणा की भावना और भी बढ़ गई। उसे और भी यकीन हो गया कि सगाई तोड़ने के लिए आना सही फैसला था। लेकिन अगले ही पल थप्पड़, बूढ़े बटलर ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उसे झाओ गुजियांग से एक थप्पड़ मिला। इस समय झाओ गुजियांग अभी अभी खड़ा हुआ था, उसका चेहरा भयानक रूप से गंभीर था। मैं, झाओ गुजियांग, ऐसा आदमी कैसे हो सकता हूं जो इस तरह से महिलाओं का अपमान करता है? तुम कुत्ते के गुलाम, तुम मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर रहे हो। बूढ़ा बटलर अचंभित था, वह अविश्वास से झाओ गुजियांग को देख रहा था। ओह वारिस, मैंने कम से कम 80, अगर 100 नहीं तो सभ्य महिलाओं को बांधने में आपकी मदद की है। आप सिर्फ अपना नाम साफ करने के लिए मुझे नहीं बेच सकते। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में वह भाव बहुत दुष्ट है। तुम्हारे मन में अभी भी गलत विचार आ रहे होंगे। उसे नीचे खींचो और मारो। झाओ गुजियांग के आदेश पर बूढ़े बटलर को तुरंत खींच कर ले जाया गया। उसे ज्यादा बोलने और खुद को उजागर करने से रोकने के लिए झाओ गुजियांग ने उसके मुंह में एक जूता भी ठूंस दिया। ये सब करने के बाद झाओ गुजियांग ने फिर अपना गला साफ किया और ली युनरुई के सामने आया। आज उसने एक लहराती हुई बैंगनी पोशाक पहनी थी जो जमीन तक लटक रही थी, जिससे वह आकर्षक दिख रही थी। लंबी पोशाक कमर पर संकरी हो गई थी, जिससे पतली कमर दिख रही थी, जो पकड़ने के लिए बहुत नाजुक लग रही थी। आगे बढ़ने पर यह अचानक ऊपर उठा और आगे की ओर फूल गया, मानो किसी भी क्षण असीम आकर्षण फूट पड़ सकता है। सचमुच उसका शरीर सुंदर था और चेहरा कोमल था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मूल मालिक वह दुष्ट उसे नशीला पदार्थ देने और उसके साथ जबरदस्ती करने से खुद को नहीं रोक सका। यह अफसोस की बात है कि वर्तमान झाओ गुजियांग एक भयानक रूप से शांत व्यक्ति था। मेरा नौकर असभ्य था और उसने सातवीं राजकुमारी को हंसाया। ये वारिस आपसे माफी मांगता है। ये रवैया न केवल अच्छा था, ये पूरी तरह से असामान्य था। ली युनरुई के मूल रूप से क्रोधित चेहरे पर अचानक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई दिए। झाओ गुजियांग को इतना विनम्र देखकर ली युनरुई थोड़ा हैरान हुए और फिर उन्होंने खंडन किया। झाओ गुजियांग, तुम्हारी प्रतिष्ठा पहले से ही खराब है, फिर भी तुम अभी भी एक सज्जन व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। चाहे तुम आज मुझसे कितनी भी विनती करो, मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। वह सगाई तोड़ने की जल्दी में थी क्योंकि उसे चिंता थी कि झाओ गुजियांग अपने पिता का समर्थन खोने के बाद उससे चिपक जाएगा। यह विवाह मूलतः झेनबेई राजा और उसके शाही पिता द्वारा उनके जीवन काल में ही तय किया गया था। उस समय झेनबेई राजा की संपत्ति के पास सैन्य शक्ति थी, वह उत्तरी सीमा के किले की रक्षा करता था और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यहां तक कि ली शाही परिवार भी केवल अस्थायी रूप से ही उनकी तीखी धार से बच सका। झेनबेई राजा के मन को शांत करने के लिए महामहिम सम्राट ने इस विवाह पर सहमति दे दी। शादी बाद में होनी थी, जब झाओ गुजियांग का चरित्र परिपक्व हो गया और वह अब और अधिक स्वच्छंद नहीं रहा। लेकिन अब जब झेनबेई राजा मर चुका है तो कौन एक अपरिपक्व व्यक्ति के बड़े होने पर उसका साथ देने को तैयार होगा? बाहर खड़े लोग भी बड़बड़ाने लगे। क्या आपको लगता है कि अगर इस वारिस झाओ की सगाई सचमुच टूट गई तो वह भविष्य में भूख से मर जाएगा? झेनबेई राजा की संपत्ति में बहुत बड़ी संपत्ति है, लेकिन यह उसके लिए बर्बाद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब जब वह शाही परिवार द्वारा त्याग दिया गया है तो मुझे डर है कि झाओ गुजियांग अब और अधिक परेशानी पैदा नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि वह भी यह जानता है, इसलिए ये लड़का निश्चित रूप से सातवीं राजकुमारी से गोंद की तरह चिपक जाएगा। ये सातवीं राजकुमारी के लिए अफसोस की बात है, ये ताज़ा फूल गाय के गोबर के ढेर में फंस गया है। अपने पीछे आम लोगों की चर्चा सुनकर ली युनरुई को भी लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। झाओ गुजियांग, मेरा मन बना हुआ है। अगर तुम एक आदमी होते, लियुनरुई के वाक्य के आधे रास्ते में अचानक उसके दिमाग में कहीं से एक आवाज प्रकट हुई। यह महिला वाकई काफी खूबसूरत है, फिल्मों और टीवी के बड़े सितारों से भी बदतर नहीं। लेकिन मैं सिर्फ देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। उसे किसने बताया कि वह लॉन्ग जान की औरत है? ये सोचकर कि वह भविष्य में लॉन्ग जान को चार बच्चे कैसे देगी, टीएस निश्चित रूप से सिर्फ एक प्रजनन उपकरण। मैं क्या सोच रहा हूँ, यह महिला मेरा मजाक क्यों नहीं उड़ा रही है? अगर वह मेरा और मजाक उड़ाएगी तो मैं सीधे सगाई तोड़ दूंगा। वैसे भी मैंने कहानी पढ़ ली है, जब तक मैं लॉन्ग जान की महिलाओं को नहीं छूता तब तक ये दुनिया मेरी है और मैं इसका खुलकर आनंद ले सकता हूँ। लियुनरुई ने हैरानी से भरे चेहरे से झाओ बुजियांग को देखा। उसने इसकी पुष्टि की, वह झाओ बुजियांग के अंदरूनी विचारों को सुन सकती थी। अभी झाओ बुजियांग ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसका मन उसके आंतरिक विचारों से भरा था। इस आदमी ने कहा कि वह काफी अच्छा दिखता है, लेकिन फिर उसने कहा कि वह लॉन्ग जान की औरत है, और यहां तक कहा कि वह लॉन्ग जान को चार बच्चे देगी। धिक्कार है कमीनी, ये कमीनी खुद को क्या समझती है? झाओ बुजियांग भी इस समय हैरान था, लियुनरुई की अभिव्यक्ति थोड़ी अलग क्यों थी। परेशानी से बचने के लिए झाओ बुजियांग ने हल्के से खांसते हुए और एक ईमानदार चेहरे के साथ कहा, जैसा कि राजकुमारी ने कहा, ये युवा स्वामी योग्य नहीं है। राजकुमारी की जवानी में देरी से बचने के लिए मैं एक पत्र लिखूंगा और उस पर हस्ताक्षर करूंगा, और अब से आपका और मेरा कोई संबंध नहीं होगा। बोलने के बाद झाओ बुजियांग ने जल्दी से घर की नौकरानी को कागज और कलम लाने का इशारा किया। फिर उसने जल्दी से कागज पर लिखा, मैं झाओ बुजियांग गुणिया प्रतिभा से रहित हूँ, सातवीं राजकुमारी के साथ विवाह के अयोग्य। आज मैं स्वेच्छा से विवाह अनुबंध त्यागता हूँ। झेनबेई रॉयल हवेली द्वारा एक बार दिए गए सगाई के उपहार को मुआवजा माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि राजकुमारी उन्हें मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करेगी। स्वर विनम्र था, जो लोगों के दिलों में दया उत्पन्न करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस समय लियुनरुई की अभिव्यक्ति और भी जटिल थी। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि झाओ बुजियांग इतना सहमत होगा, और बिना एक शब्द का खंडन किए उसने तलाक का पत्र लिख दिया। इससे उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। आखिरकार आज झेनबेई राजा की मृत्यु के बाद सातवां दिन है, क्या वह सगाई तोड़ने की जल्दबाजी करके बहुत आक्रामक नहीं हो रही है? शायद उसे पहले उसके साथ ठीक से बातचीत करनी चाहिए थी, ताकि उसे कुछ सम्मान देने जैसा माना जा सके। जैसा कि लियुनरुई इस तरह सोच रहा था, झाओ बुजियांग ने पहले ही तलाक पत्र सौंपने की पहल कर दी थी। सातवीं राजकुमारी, कृपया औपचारिकता न निभाएं, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार है, कृपया। झाओ बुजियांग का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। वह सूर्य की रोशनी में बहुत स्वाभाविक, शांत, संतुलित और सुंदर दिख रहे थे। किसी को क्या पता था कि वह पहले से ही अपने मन में कोस रहा था। जल्दी करो और इसे ले जाओ। दादी, तुम किस लिए टालमटोल कर रहे हो? मैंने पहले ही इतनी स्वतंत्रता से काम किया है, क्या इससे कथानक में बदलाव नहीं आएगा? झाओ बुजियांग अभी भी मुस्कुराया, सातवीं राजकुमारी, आप क्यों चकित हैं? तलाक का पत्र ले लो, मेरे पिता का अंतिम संस्कार अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे अभी भी व्यस्त रहना है, इसलिए मैं आपका मनोरंजन नहीं करूंगा। लेकिन लियुनरुई का उसे जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसका मन प्रश्न चिन्हों से भरा था। मैं उसके आंतरिक विचार क्यों सुन सकता हूँ? क्या वह सचमुच मेरा जीवन साथी हो सकता है? वह अभी भी अपने विचारों से संघर्ष कर रही थी। झाओ बुजियांग की आंतरिक आवाज फिर से आई। पूर्व झाओ बुजियांग वास्तव में मूर्ख था। मेरे पिता द्वारा छोड़ी गई पारिवारिक संपत्ति मेरे लिए सैकड़ों वर्षों तक प्लेबॉय बने रहने के लिए पर्याप्त है, और आपका दक्षिया राष्ट्रीय खजाना लगभग खाली है, इस महिला को क्यों रखा जाए यहां मुफ्तखोरी करने के लिए? या उस सुंदर लड़के लॉन्ग जान का इंतजार करें जो आपको खुश करेगा और आपको अपना खिलौना बनाने के लिए मनाएगा? जल्दी करें और भाग जाएं। आप लियुनरुई अपने होश में आए, उसने अपने दांत पीसते हुए और कोसते हुए कहा, झाओ बुजियांग, तुम्हारी इच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा पा सकते हो? झाओ बुजियांग, जिसने शुरू में सोचा था कि उसने लियुनरुई को बसा दिया है और कथानक बदल दिया है, इस वाक्य से भ्रमित हो गया। हम सातवीं राजकुमारी का इससे क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? तुम सगाई तोड़ना इतना चाहते हो? इससे पहले कि झाओ बुजियांग कुछ बोल पाता, उसने देखा कि लियुनरुई नाराजगी से भरे चेहरे के साथ उसे घूर रहा था। उन छोटी छोटी आंखों में एक प्रकार की मासूमियत और दयनीयता थी, जैसे कि उसे उसके द्वारा छोड़ दिया गया हो। क्या स्थिति है? यह महिला जबरन यहां नहीं रहना चाहती और लॉन्ग जान को मुझे मारने नहीं देना चाहती है न? जल्दी करो और लॉन्ग जान को ढूंढो, तुम उसके उत्थान के लिए सिर्फ एक साधन हो, मुझे परेशान मत करो। झाओ बुजियांग अपने दिल में घबरा गया और अपने चेहरे पर आग्रह किया, शायद यह आज सातवीं राजकुमारी के लिए असुविधाजनक है, नपुंसक चेन, कृपया इसे इकट्ठा करने में मदद करें और जल्दी से अपनी राजकुमारी को महल में वापस ले जाएं। इससे पहले कि हिजड़ा चेन जवाब दे पाता, उसने ली युनरुई को अचानक कहते सुना, मैं नहीं करूंगा। अब उसे यकीन हो गया था कि वह झाओ बुजियांग के अंदरूनी विचारों को सुन सकती है, लेकिन ली युनरुई को जिस बात की अधिक परवाह थी वह थी झाओ बुजियांग के आंतरिक विचारों की विषय वस्तु। इस मृत व्यक्ति ने वास्तव में कहा था कि वह लॉन्ग जान का खिलौना और उसके उत्थान के लिए एक उपकरण बन जाएगी। उसने हाल ही में दरबार में शियाओजियन के नए उभरते कमांडर लॉन्ग जान के बारे में सुना था। उसके पास ऐसी क्या योग्यताएं थीं कि वह उस प्रतिष्ठित सातवीं राजकुमारी को अपना हथियार बना सके। बा, नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे? झाओ बुजियांग भी थोड़ा चिंतित था और उसने जो पुरानी छह छवि बनाए रखी थी वह थोड़ा हिल गई थी। मृत औरत, तुम अभी भी मुझे क्यों परेशान कर रही हो? क्या वह जानती है कि मेरे पिता मरे नहीं हैं? मूल पुस्तक के अध्याय 200 के अनुसार झेनबेई राजा को सीमा पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनकी मौत दुश्मन को धोखा देने के लिए एक नकली मौत मात्र थी। बाद में झेनबेई राजा ने सेना को पुनर्गठित किया और दक्सिया की उत्तरी सीमा पर आक्रमण करने वाले बर्बर लोगों का सफाया कर दिया, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके एकमात्र प्रिय पुत्र झाओ बुजियांग की राजधानी में मृत्यु हो गई है। झेनबेई राजा गुस्से में अपनी सेना को वापस अदालत में ले गया और झाओ बुजियांग की मौत का न्याय मांगना चाहता था। परिणामस्वरूप उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। झेनबेई राजा सम्राट के प्रति वफादार था और अपने देश से प्यार करता था। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति छोड़ दी और आखिरकार फिर से लॉन्ग जान का अनुभव पैक बन गया। नहीं, अगर यह महिला नहीं गई तो वह मेरे पिता और मुझे मार डालेगी। आप इसके बारे में सोचते भी नहीं, झाओ बुजियांग ने तुरंत कहा। अहम, मैंने कहा मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। चूंकि सातवीं राजकुमारी सगाई तोड़ने के लिए यहाँ आई है, इसलिए मैंने, झाओ बुजियांग ने भी सगाई तोड़ने का फैसला किया है। यह शादी, ये खत्म हो गई है। हाँ, आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन उसने पाया कि ली युनरुई वहीं स्तब्ध रह गई थी। उसके चेहरे पर स्तब्धता थी, मानो उसने कोई बड़ा रहस्य सुन लिया हो। यद्यपि ली युनरुई झाओ बुजियांग की शिकायतों के कारण क्रोधित थी, लेकिन वह किसी भी तरह से एक बुद्धिहीन फूलदान राजकुमारी नहीं थी। झेनबेई राजा, जिसके पास सैन्य शक्ति है, वास्तव में अपनी मौत का नाटक कर रहा है। ली युनरुई को याद आया कि उसके पिता ने कहा था कि अगर एक दिन झेनबेई राजा विद्रोह करना चाहे तो वह सफल हो सकता है। आखिरकार झाओ परिवार एक अलग उपनाम वाला राजा है। ये कल्पना की जा सकती है कि एक गैर शाही व्यक्ति के लिए शाही परिवार के अधीन राजा बनना और भारी सेना रखना कितना शक्तिशाली होगा। यदि उसने सचमुच सगाई तोड़ दी और झाओ बुजियांग को अपमानित किया, तो क्या इससे झेनबेई राजा को विद्रोह करने का कारण नहीं मिल जाएगा? इससे उसके ली परिवार के शाही परिवार की मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा ये झाओ बुजियांग सिर्फ एक सती बांका लंपट है। वास्तव में वह अपने हृदय में कितना बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह हर समय अपनी ताकत छुपाता रहा हो? जितना अधिक ली युनरुई इसके बारे में सोचती, उतना ही वह खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी, ये सोचकर कि वह लगभग अंधी हो गई थी और उसने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने कहा था कि मैं सगाई नहीं तोड़ूंगी। झाओ बुजियांग, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसे मत तोड़ो। तुम इसे क्यों नहीं तोड़ देते? तुम्हें मुझमें क्या आकर्षक लगता है? मैं बदल सकता हूँ। अगर तुम इसे नहीं तोड़ते तो मत तोड़ो। तुम्हारी और मेरी शादी का महत्वपूर्ण मामला मेरे पिता और तुम्हारे पिता ने तय किया है। ये बच्चों का खेल कैसे हो सकता है? झाओ बुजियांग अवाक रह गया। क्या यह आप ही नहीं थे जिन्होंने सगाई तोड़ने को कहा था? अब मैं ही हूं जो खेल रहा हूं। अच्छा साथी, संस्करण T0 है ना? ली युनरुई अत्यंत आत्मसंतुष्ट था। मृत व्यक्ति को यह निश्चित रूप से पता नहीं है कि मैं आपके आंतरिक विचारों को सुन सकता हूं। यह अच्छी बात है। शादी के बाद मुझसे कुछ भी छिपाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन झाओ बुजियांग को ऐसा लगा जैसे वह खुद को फांसी लगा ले। अगर आप सगाई नहीं तोड़ेंगे तो मैं कथानक कैसे बदल सकता हूं? मैं लॉन्ग जान द्वारा मारे जाने से कैसे बच सकता हूं? हम छोटे खलनायकों में भी जीवित रहने की इच्छा होती है, ठीक है? झाओ बुजियांग ने तुरंत उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैं झाओ बुजियांग हूं। आपकी नज़र में मैं किस तरह का व्यक्ति हूं? बदमाश और क्या? व्यभिचारी कमीना, उद्धरण चिन्ह .. ठीक है, सगाई तोड़ दो। इसे मत तोड़ो, ली युनरुई दृढ़ता से चिल्लाया। झाओ बुजियांग इससे इतना डर गया कि वह दो कदम पीछे हट गया। इसे मत तोड़ो, अगर तुम सगाई नहीं तोड़ते तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या लेना देना? ली युनरुई ने सीधे झाओ बुजियांग द्वारा लिखे गए तलाक के पत्र को फाड़ दिया। वैसे भी ये राजकुमारी तुमसे शादी करने के लिए दृढ़ है। ये ऑपरेशन वास्तव में एक अंधे व्यक्ति द्वारा कड़ाई सीखने जैसा था। झाओ बुजियांग को पूरा चेहरा दिखाते हुए, चलो इस पर बात करते हैं, सगाई तोड़ना जरूरी है। अभी बहुत से लोग थे, क्या मैं अब आपके सामने झुकूं? ठीक तभी झेनबेई शाही हवेली के बाहर घुड़सवार सेना की एक टीम दहाड़ती हुई आई। लोहे के खुरों से जमीन पर उत्पन्न कंपन के कारण शाही भवन के बाहर के लोग तुरंत ही हर जगह पीछे हटने लगे। झाओ बुजियांग और शाही हवेली में मौजूद अन्य लोगों को भी इस हलचल का एहसास हुआ और उन्होंने उस ओर देखा। मैंने देखा कि घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने घोड़े से कूद रहा था। उसकी चाल अच्छी थी और वह कवच पहने हुए आगे बढ़ रहा था। लांग झान शियाओजियन के कमांडर सातवीं राजकुमारी की रक्षा के लिए महामहिम के आदेश के तहत यहाँ हैं। झाओ शिजी सातवीं राजकुमारी के प्रति असम्मानजनक है और मेरी राजधानी की स्थिरता को बाधित करता है। चलो उसे नीचे ले जाओ। यह आ गया, क्या मैं वास्तव में लॉन्ग झान द्वारा नष्ट किए जाने के भाग्य से बचने में असमर्थ हूँ? झाओ गुजियांग की पुतलियां फड़क रही थी, उसकी निगाहें लॉन्ग झान पर टिकी थी जो सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। लॉन्ग झान का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, उसकी पूरी छवि एक उत्साही युवा नायक की थी। उसकी नजर में झाओ गुजियांग शराब और औरतों के नशे में चूर एक बेकार व्यक्ति था, एक कचरा जो उत्तर के राजा के बिना कुछ भी नहीं था। इसलिए लॉन्ग झान ने झाओ गुजियांग का अभिवादन भी नहीं किया, बल्कि सीधे ली यूनरुई के पास चले गए। जब उसने यह अद्भुत सौंदर्य देखा, भले ही लॉन्ग झान ने अपनी इच्छा को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसे निगलने से खुद को नहीं रोक सका। ये सोचकर कि इस दुर्लभ सुंदरी का वास्तव में झाओ गुजियांग के साथ विवाह अनुबंध था, ये निकम्मा। लॉन्ग झान बहुत परेशान था। वह मेरी होनी चाहिए, लॉन्ग झान। महारानी, राजकुमारी, आप डर गई हैं। लॉन्ग झान अब आपको ले जाएगा। बोलते समय लॉन्ग झान ने अपनी लंबी तलवार निकाली, जिसकी धार उत्तर के राजा के महल में सभी लोगों पर चली। यहां सबको बंद कर दो, खासकर उसे। तलवार की नोक झाओ गुजियांग की ओर इशारा कर रही थी। झाओ गुजियांग ने अपनी सांस को यथासंभव स्थिर रखने की कोशिश की। ये पहली बार था जब उसने उपन्यास के नायक का सामना किया था, और यह कहना झूठ होगा कि वह घबराया नहीं था। लेकिन जितना अधिक यह मामला था, उतना ही अधिक उसे शांत रहना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह उत्तर के राजा का महल है, तुम्हारी बारी कब आई जंगली हरकतें करने की? लेकिन इससे पहले कि झाओ गुजियांग कुछ बोल पाता, बूढ़ा बटलर, जिसे अभी अभी पीटा गया था, झाओ गुजियांग को खुश करने के लिए बाहर निकल आया। चिंता मत करो महाराज, ये बूढ़ा आदमी उसे रोक देगा। लेकिन झाओ गुजियांग की आंखें सिकुड़ गईं और एक थप्पड़ के साथ उसने बूढ़े बटलर के मुंह पर फिर से थप्पड़ मारा। कमांडर लांग भी तो सातवीं राजकुमारी और बाकी सब की भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप इतना क्यों बोल रहे हैं? बूढ़े बटलर के कान बज रहे थे। उसे लगा कि उत्तराधिकारी बीमार होगा, गंभीर रूप से बीमार। उत्तराधिकारी ने निश्चित रूप से पहले भी इन लोगों का सामना किया होगा। आखिर जब उत्तर का राजा उसका समर्थक हो तो वह किससे डरेगा? लेकिन वह नहीं जानता था कि झाओ गुजियांग उसकी रक्षा कर रहा था। मूल कहानी में बूढ़े बटल ने प्रतिरोध करने में अगुवाई की, लेकिन लॉन्ग झान ने तलवार से उसे मार डाला और उस पर कानून में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया। अगर झाओ गुजियांग ने बात नहीं की होती तो बूढ़ा बटल पहले ही मर चुका होता। सभी को हिलने डुलने की मनाही है, स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन के साथ पूर्ण सहयोग करें। झाओ गुजियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने लॉन्ग झान की ओर अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, कमांडर लॉन्ग, यदि आप राजकुमारी को ले जाना चाहते हैं तो कृपया ऐसा करें। मेरे उत्तर के राजा की हवेली निश्चित रूप से सहयोग करेगी। उत्तर के राजा के महल के लोग पहले से ही अपने हथियार उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन झाओ गुजियांग का आदेश सुनकर वे सभी अपने दिल में आहें भर रहे थे। उत्तर के राजा के चले जाने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि उत्तराधिकारी ने अपनी ईमानदारी खो दी है। वास्तव में स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन के कमांडर ने उन्हें अपने दरवाजे तक धमकाया था और उन्होंने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वे नहीं जानते थे कि लॉन्ग झान अब झाओ गुजियांग से ज्यादा असहज थी। उसे महामहिम का आदेश मिला था कि यदि झाओ गुजियांग ने सातवीं राजकुमारी के साथ जबरदस्ती करने की हिम्मत की तो उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। लॉन्ग झान झाओ गुजियांग के हठपूर्वक विरोध करने की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि वह झाओ गुजियांग को मार सके और ली यूनरुई के सामने दिखावा कर सके। वैसे वह सुंदरी का दिल जीत सकता था। यदि भविष्य में उसे राजपरिवार का सहयोग मील गया तो उसका भविष्य 90,000 मील ऊपर उठ जाएगा। लेकिन अब झाओ गुजियांग थोड़ा ज्यादा सहयोगी हो गया था। इसके बजाय उसके पास हमला करने का कोई बहाना नहीं था। क्या तुम विरोध नहीं करोगे? उत्तर के राजा का प्रतिष्ठित उत्तराधिकारी इतना अयोग्य? लॉन्ग झान का स्वर कुछ उत्तेजक था। जाहिर है वह झाओ गुजियांग को उत्तेजित कर रहा था, उसे उसकी पहचान की याद दिला रहा था। यद्यपि उत्तर का राजा अब गिर चुका है, उसकी शेष शक्ति अभी भी मौजूद है, तुम्हें कम से कम उसका प्रतिरोध तो करना ही चाहिए। झाओ गुजियांग आक्रामक रणनीति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराया और कहा, सही और गलत लोगों के दिलों में है। आज मैं झाओ गुजियांग सातवीं राजकुमारी को नहीं रोकूंगा, उसका जाना या रहना स्वतंत्र है, मुझे विरोध क्यों करना चाहिए? इस वाक्य ने झाओ बुजियांग को तुरंत नैतिक स्तर पर पहुंचा दिया। लॉन्ग झान ने तुरंत जवाब दिया, ये सही नहीं है। ये स्पष्ट रूप से आप ही थे जिन्होंने शाही परिवार की अवहेलना करते हुए सातवीं राजकुमारी को यहाँ आने के लिए मजबूर किया। चाहे तुम विरोध करो या ना करो, मैं सबसे पहले तुम्हें मौत की सजा दूंगा। संक्षेप में, तुम्हें झाओ बुजियांग आज ही मरना होगा। लेकिन जब लॉन्ग जान ने बात की तो उसने यह नहीं देखा कि ली युनरुई की आंखों में, जब वह उसे देख रही थी, थोड़ी अधिक अवमानना थी। ये वही लॉन्ग जान है जिसका जिक्र झाओ बुजियांग बार बार करता रहता है। उसमें कुछ भी खास नहीं है, एक छोटा कमांडर, हालांकि उसके पास राजधानी की स्थिरता को प्रबंधित करने और सरकार की जांच करने की योग्यता है, बस इतना ही। उत्तर के राजा के महल में शक्तिशाली और भव्य अभिनय करने की उसकी बारी कब आई? जब तक मैं सहन करता रहूंगा, जब एक दिन मेरे पिता वापस आएंगे, तब भी क्या मैं आपसे डरूंगा? लेकिन अब मुझे सहना होगा और मुझे इस महिला को दूर भेजना होगा। झाओ बुजियांग के आंतरिक विचार सुनना। ली युनरुई की राय उसके बारे में थोड़ी और बदल गई थी। जो चीज दूसरे लोग सहन नहीं कर सकते, उसे सहन करने में सक्षम यह व्यक्ति उतना असहनीय नहीं लगता जितना कि अफवाहें कहती हैं। मेरे शाही पिता भी उलझन में हैं, उन्होंने लॉन्ग जान को आने और परेशानी पैदा करने के लिए कहा, लेकिन इसके बजाय झाओ बुजियांग को मुझे भगाने का मौका दिया। कदापि नहीं, ली युनरुई ने तुरंत धीरे से कहा, आप कमांडर लॉन्ग हैं। किसने कहा कि हमें यहाँ मजबूर किया गया था? जैसे ही उसने ये कहा, लॉन्ग जान का चेहरा तुरंत बदल गया। सातवीं राजकुमारी झाओ बुजियांग के पक्ष में क्यों बोलेगी? लॉन्ग जान अपनी नजरें ली युनरुई के हॉट फिगर पर घुमाने से रोक नहीं सका। यदि यह पहले होता तो ली युनरुई को शायद इस बात का ध्यान नहीं आता, लेकिन अब ली युनरुई पहले से ही उससे सावधान थी। तुम क्या देख रहे हो? इस राजकुमारी की राय में तुम ही हो जो हमारे प्रति इरादे रखती हो। नहीं, इस अधीनस्थ का ऐसा कोई इरादा नहीं है। लॉन्ग जान अवाक रह गया, लेकिन साथ ही झाओ बुजियांग भी अवाक रह गए। क्या हो रहा है? क्या कहानी ऐसी ही है? क्या ली युनरुई को रोना और दुख बेचना नहीं चाहिए जिससे लॉन्ग जान को मेरे उत्तर के राजा की हवेली को नष्ट करने का कारण मिल सके? झाओ बुजियांग के आंतरिक विचारों ने ली युनरुई को गर्व से अपना सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम सचमुच सोचते थे कि मैं एक ऐसा फूलदान हूं जो केवल अच्छा दिखता है? मैं बाहरी लोगों को अपने पति को नुकसान पहुंचाने में कैसे मदद कर सकती हूं? ली युनरुई ने सोचा और स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन की ओर घूरते हुए कहा, आप लोग यहां से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? लॉन्ग जान को होश आ गया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, मानो वह ली युनरुई को देखने के लिए किसी माओशान जादू का उपयोग कर रहा हो। कुछ ठीक नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस सातवीं राजकुमारी को झाओ बुजियांग ने धोखा दिया है? ठीक है, एक बेकार व्यक्ति, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें कुछ क्षमता होगी। झाओ बुजियांग, तुमने सातवीं राजकुमारी पर कौन सा जादू किया था? कबूल करो। लॉन्ग जान ने झाओ बुजियांग की ओर उंगली उठाई, सातवीं राजकुमारी दुनिया के खतरों को नहीं जानती है, इस पतित उत्तराधिकारी से धोखा मत खाओ। लॉन्ग जान ने विशेष रूप से गिर शब्द पर जोर दिया, फिर अपना हाथ उठाया, चलो, महामहिम ने पहले सातवीं राजकुमारी को वापस लेने का आदेश दिया है झाओ बुजियांग के लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से उससे पूछताछ करूंगा। बोलते समय लॉन्ग जान के चेहरे पर दबंगई का भाव था, मानो वह अभी भी स्थिति पर नियंत्रण रख रहा हो। क्या ये नायक का प्रभा मंडल है? बहुत सुंदर, नहीं, लानत है, मुझे ही भुगतना पड़ेगा। झाओ बुजियांग को होश आया, रुको, तुम सातवीं राजकुमारी को ले जा सकते हो, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, पूछताछ करने की क्या बात है? लॉन्ग जान ने थोड़ा शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, नियमित प्रक्रिया, मुझे उम्मीद है कि उत्तराधिकारी झाओ मुझे माफ कर देंगे। झाओ बुजियांग को अचानक अपने पीछे एक जकड़न महसूस हुई, माफ करना क्या? अगर आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ पूछें, यहाँ सुविधाजनक नहीं है। क्या तुम जबरदस्ती कबूलनामा करवाने की कोशिश कर रहे हो? लॉन्ग जान, तुम्हारा इरादा क्या है? इरादे? फिर मैं आपके साथ स्पष्ट रहूंगा, हर कोई जानता है कि आप झाओ बुजियांग भद्दे और अक्षम हैं, और उत्तर के राजा के गिरने के बाद आपका झाओ परिवार होजेन की तरह और भी बिखरा हुआ है। सातवीं राजकुमारी स्वेच्छा से आपके दरवाजे पर कैसे आ सकती है? वह स्पष्ट रूप से आपके द्वारा कब्जा कर लिया गया था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन ने अपने चाकू निकालकर हमला करना शुरू कर दिया। झाओ बुजियांग अब इसे सहन नहीं कर सका। अतीत में जब वह नायक के नजरिए से उपन्यास पढ़ते थे तो उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि इससे उनके मूल्यों का नाश हो रहा है, लेकिन अब जब वह खलनायक के नजरिए से देख रहा था तो उसे एहसास हुआ कि कई नायक तो इंसान ही नहीं थे। तुम मुझे चुप नहीं रहने दोगे, है ना? तुम हम सबको मार डालोगे, है ना? मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। झाओ बुजियांग के आंतरिक विचारों को सुनकर ली युनरुई को झाओ बुजियांग के लिए और भी अधिक अन्याय महसूस हुआ। ये लॉन्ग जान बहुत ज्यादा है, मेरे पति को छूने की हिम्मत कौन करता है? मैं झाओ बुजियांग की मंगेतर पत्नी हूँ। आज उत्तर के राजा की मृत्यु के बाद से सातवां दिन है। एक बहू के रूप में मुझे यहाँ शोक की रखवाली करने में क्या दिक्कत है? आज जो कोई भी वर्तमान शाही दामाद को चोट पहुंचाता है वह मेरा दुश्मन है। ली युनरुई, मेरे लिए कबीले के शाही परिवार के क्रोध को झेलने के लिए प्रतीक्षा करें। कुछ समय के लिए लॉन्ग जान और स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन वहीं स्तब्ध रह गए। यहां तक कि झाओ बुजियांग, जो पहले से ही एक फावड़ा उठा चुका था और लॉन्ग जान से लड़ने के लिए तैयार था, वह भी अचंभित था। उसे अचानक एक रखेल होने से उपलब्धि की भावना महसूस हुई। क्या बकवास है, क्या सातवीं राजकुमारी हमेशा से इस विवाह के खिलाफ नहीं थी? पूरी राजधानी को इस बारे में पता था, तो अब वह व्यक्तिगत रूप से झाओ बुजियांग की पत्नी के रूप में स्थिति को क्यों स्वीकार कर रही है? ड्रैगन बैटल का दिल समुद्र की तरह उछल रहा था, क्योंकि वह हमेशा सोचता था कि वह महिलाओं के साथ संबंध बनाने में माहिर है। लेकिन इस बार ली युनरुई की हरकतें देखकर वह वास्तव में उसे समझ नहीं पाया। सातवीं राजकुमारी, यह अधीनस्थ भी महामहिम के आदेश का पालन कर रहा है। ड्रैगन बैटल अभी भी वर्तमान सम्राट को बाहर लाना चाहता था, लेकिन इससे ली युनरुई और भी अधिक क्रोधित हो गया। तुरंत ली युनरुई ने अपनी हथेली उठाई और ड्रैगन बैटल के चेहरे पर सीधा प्रहार किया। थप्पड़, आवाज बहुत तेज थी, जिससे पूरा उत्तरी गैरिसन किंग मैनर तुरंत शांत हो गया। मेरे शाही पिता और उत्तरी गैरिसन राजा आपस में भाई हैं, मैं तुम्हें यहाँ कैसे जंगली होने की अनुमति दे सकता हूँ? यदि तुमने फिर से मेरे शाही पिता की निंदा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे कबीले को मौत के घाट उतार दूंगा। ली युनरुई क्रोधित थे। यह शापित ड्रैगन बैटल, स्विफ्ट कैवेलरी कैंप का कमांडर, जानबूझकर उनके लिए इंपीरियल परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। क्या वह झाओ बुजियांग के साथ उनके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था? क्या वह उत्तरी गैरिसन के राजा को विद्रोह करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह शहर में सेना ला सके? घिनौना, ली युनरुई के थप्पड़ से ड्रैगन बैटल की आस्तीन के अंदर की मुट्ठी इतनी कस गई कि उसकी उंगलियां उसकी हथेली में गहराई तक धंस गईं और खून की बूंदें निकलने लगीं। लेकिन ड्रैगन बैटल ने ली युनरुई पर वास्तव में गुस्सा होने की हिम्मत नहीं की। उसे सहना ही था, कम से कम तब तक जब तक वह शीर्ष पर नहीं चढ़ गया, उसे सहना ही था। जब वह दिन आएगा जब वह दरबार पर अधिकार कर लेगा, तो वह ली युनरुई को अपने नीचे घुटने टेक कर दया की भीख मांगेगा और वह झाओ बुजियांग को अपनी सवारी का घोड़ा बनाएगा। लेकिन अभी के लिए, ये ड्रैगन बैटल था जिसने गलत बोला। कृपया मुझे माफ कर दो राजकुमारी, ये जानते हुए भी कि तुमने गलत कहा, तुम अभी तक क्यों नहीं चले गए? हाँ, ड्रैगन बैटल ने मुस्कुराने की कोशिश की और फिर स्विफ्ट कैवेलरी कैंप को उत्तरी गैरिसन किंग मैनर से दूर ले गया। इससे झाओ बुजियांग को और भी असहज महसूस हुआ। ये सर्वविदित है कि नायक जितना अधिक धैर्यवान होगा वह उतना ही अधिक भयानक होगा। हालांकि अब उसने कथानक बदल दिया था, लेकिन ये ड्रैगन बैटल शायद उसे पहले से भी अधिक मारना चाहता था। धिक्कार है, ये सब इस बेवकूफ राजकुमारी की गलती है। विनम्र जीवन जीने की मेरी अच्छी योजना विफल हो गई है। नहीं, मुझे अभी भी पहले सुरक्षित खेलना होगा और जब मेरे पिताजी अपनी सेना वापस लाएंगे तभी मुझे अपना सिर उठाने का मौका मिलेगा, झाओ बुजियांग ने ली युनरुई को देखते हुए मन ही मन सोचा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, ली युनरुई के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे कह रहा हो, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, और उसने पूछा, तो क्या मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए? हम, झाओ बुजियांग दंग रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसके प्रति सातवीं राजकुमारी का रवैया मूल कथानक से पूरी तरह से अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। उत्तराधिकारी को कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने होंगे, इसलिए ये राजकुमारी पहले जाएगी। मेरे शाही पिता की चिंता मत करो, मैं उन्हें सारी बातें समझा दूंगी। इसके साथ ही ली युनरुई वास्तव में चले गए। तो क्या वह कथानक, जिसमें उसकी मृत्यु निश्चित थी, ऐसे ही समाप्त हो गया? झाओ बुजियांग ने अपने विचारों को सुलझाया, ली युनरुई का उसके प्रति रवैया थोड़ा बदल गया। लेकिन इससे वास्तव में उसकी जान नहीं बच सकेगी। अगली बार जब ड्रैगन बैटल मुसीबत की तलाश में आएगा तो उसे उससे निपटने का कोई रास्ता निकालना होगा। समझ गया, झाओ बुजियांग को प्रेरणा मिली और वह अध्ययन कक्ष में चला गया। उत्तरी सीमा से एक अति गोपनीय पत्र भेजा गया था। इससे पहले झाओ बुजियांग अनैतिक और अनैतिक था और उसने इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, लेकिन ड्रैगन बैटल द्वारा मारे जाने के बाद ड्रैगन बैटल ने पत्र देखा। झाओ बुजियांग ने पत्र खोला, अंदर उत्तरी गैरिसन राजा द्वारा भेजा गया एक पारिवारिक पत्र था। इसने झाओ बुजियांग को सूचित किया कि उसकी मृत्यु एक दिखावा थी और उसे दुखी न होने को कहा। जाहिर है, उत्तरी गैरिसन का राजा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, उसे डर था कि कहीं वह प्रभावित न हो जाए। ये केवल अफसोस की बात थी कि पिछला झाओ बुजियांग उपन्यास में एक मामूली खलनायक था जिसने नायक को सिर दिया था और उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा सका। हालांकि इस पारिवारिक पत्र से ड्रैगन बैटल को पता चल गया कि उत्तरी गैरिसन राजा मरा नहीं है, इसलिए वह पहले से तैयारी कर सकता था और बाद में उसे विद्रोह करने के लिए धोखा देने की योजना बना सकता था। ये सोचते हुए झाओ हुजियांग ने गुस्से में लिखा, पिताजी आपका बेटा कष्ट में है। चूंकि पिताजी ने अपनी मौत का नाटक किया था, इसलिए अदालत के अधिकारियों ने अपना असली रंग दिखा दिया है और मेरे झाओ परिवार को अपनी मर्जी से रौंद दिया है। वर्तमान शाही परिवार मेरे परिवार को अपमानित करने के लिए स्विफ्ट कैवेलरी कैंप का सहारा ले रहा है। आपका बेटा अपने पिता के लिए गौरव हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा गया और लगभग उसकी पैतृक जड़ें ही तोड़ दी गईं। सौभाग्य से आपके बेटे को अपने पिता की शिक्षाएं याद थीं। ये जानते हुए कि झाओ परिवार का केवल एक ही वारिस है और भविष्य की पीढ़ियां पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हैं, इसलिए मैं केवल अपमान में रह सकता हूं। लेकिन आपका बेटा अब दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसलिए कृपया मेरी सहायता के लिए यथाशीघ्र 10 लाख सैनिकों को वापस दरबार में ले आइए। आपके पीड़ित बेटे, झाओ हुजियांग ने आंखों में आंसू भरकर लिखा। इन कुछ वाक्यों को लिखने के बाद स्वयं झाओ हुजियांग भी भावुक हो गया। उसे विश्वास था कि उसका घटिया बूढ़ा आदमी, जो हमेशा उसे प्राथमिकता देता था, इस पत्र को देखने के तुरंत बाद निश्चित रूप से सेना को वापस दरबार में ले आएगा। हालांकि वापसी की यात्रा में 10 दिन लगेंगे। इसके अलावा पत्र भेजने के दिन भी बताए गए। उत्तरी गैरिसन का राजा कम से कम आधे महीने में वापस आ जाएगा। सहन करना, ड्रैगन बैटल टिक सकता है तो झाओ हुजियांग क्यों नहीं टिक सकता? जब तक मैं इस आधे महीने तक सहन करता रहूंगा, मेरी जान बच जाएगी, झाओ हुजियांग ने सोचा। मैं ये पत्र कैसे भेज सकता हूँ? उसे किसी और पर भरोसा नहीं था, और इस राजधानी शहर में, अब जबकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी सगाई भी टूट चुकी थी, तो निश्चित रूप से उसके हर कदम पर बहुत से लोगों की नजर थी। यदि पत्र को रोक लिया गया तो यह बहुत बड़ी आपदा होगी। सुरक्षा के लिहाज से झाओ हुजियांग ने अंधेरा होने पर खुद शहर से बाहर जाने का फैसला किया और फिर उत्तरी गैरिसन किंग मैनर के अच्छी तरह से प्रशिक्षित बाजों का इस्तेमाल करके पत्र भेजा। बाज बहुत तेज थे और एक बार जब वे शहर से बाहर निकल गए तो उन्हें गोली लगने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। शहर से बाहर निकलते समय खतरा हो सकता है। झाओ हुजियांग तुरंत कीमिया कक्ष में गया, जहां उत्तरी गैरिसन राजा ने पहले से ही विभिन्न चिकित्सकों और विष विशेषज्ञों को विषनाशक और विष बनाने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया था। उत्तराधिकारी कीमिया कक्ष में छिपकर क्या कर रहा है? एक नौकर ने आश्चर्य से पूछा। बूढ़ा बटलर प्रसन्नचित दिखाई दिया। उत्तराधिकारी अंततः आत्मनिर्भर होने जा रहा है। वह चिकित्सा की पुस्तकें पढ़ रहा होगा। जल्दी करो, उत्तराधिकारी के लिए कुछ सुंदर चीजें तैयार करो ताकि बाद में वह आराम कर सके। मेडिकल की किताबें पढ़ना मेरी गांध, झाओ हुजियांग ने अंदर से ये सुनकर बड़बड़ाया। उसने अपने सामने पड़ी हरी बोतलों को देखा। नींद की गोलियां, कामोद्दीपक पाउडर, हड्डी नरम करने वाला पाउडर, 10 खुशबू कंडरा कमजोर करने वाला पाउडर। उसने इतनी भी परवाह नहीं की। उसने वे सभी चीजें ले ली जो दुश्मन को अपंग बना सकती थी। कमरे से बाहर निकलकर उसने बटलर के पीछे खड़े नौकरों की ओर देखा और कहा, तुम लोग अपने कपड़े उतार दो। बटलर दंग रह गया। महाराज, यहाँ औरतें हैं, इस बूढ़े नौकर ने आपके लिए औरतें तैयार की हैं। मुझे महिलाओं की क्या जरूरत है? झाओ हुजियांग अवाक था, लेकिन बटलर को लगा कि झाओ हुजियांग की रुचियां बदल गई हैं। नौकर भी चौंका, वारिस, मैं अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। बकवास बंद करो, इन्हें उतार दो। झाओ हुजियांग को पता था कि ये नौकर बहुत लंबे समय से पिछले झाओ हुजियांग का अनुसरण कर रहे थे और उनके दिमाग गंदे विचारों से भरे हुए थे। उसने केवल नौकर का कोट और जहर का एक ढेर लिया और कमरे में छिप गया। अंधेरा होने का इंतजार करते हुए वह चुपके से शहर से बाहर निकल जाता। एक ही समय पर स्विफ्ट कैवेलरी कैंप कमांडर की हवेली में ड्रैगन बैटल एक काले चेहरे के साथ वापस आया और सीधे सबसे गहरे कमरे में चला गया। कमरे के अंदर बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, जो कमरे के अंदर और बाहर मधुरता से गूंज रही थी। लेकिन बांसुरी की ध्वनि में ड्रैगन बैटल ने अकेलेपन की एक झलक सुनी। दरवाजा बंद नहीं था और ड्रैगन बैटल के अंदर जाने के बाद उसने एक महिला को बैंगनी धुंधली पोशाक पहने हुए देखा। धुंधली पोशाक की स्कर्ट बहुत ऊंची कटी हुई थी, जिससे उसकी लंबी टांगें काफी दिखाई दे रही थीं। महिला ने दोनों हाथों में एक लंबी बांसुरी पकड़ी हुई थी और उसका नाजुक छोटा मुंह फूंक रहा था और सांस छोड़ रहा था। उसकी जेड उंगलियां भी लयबद्ध तरीके से चल रही थीं, जिससे लोगों के मन में हलचल मच गई। ड्रैगन बैटल को वापस आते देख महिला ने जानबूझकर अपनी जीभ बाहर निकाली और धीरे से बांसुरी के मुंह को चाटा। ये देखकर ड्रैगन बैटल, जिसे झाओ हुजियांग द्वारा अपमानित किया गया था, का भी मुंह सूख गया। पांचवी वरिष्ठ बहन, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, ड्रैगन बैटल ने कहा, आगे बढ़ा और सीधे महिला को उठाया और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। महिला ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसके चेहरे पर आकर्षण और प्रत्याशा भरी हुई थी। तो क्या मैं आपका गुस्सा दूर करने में आपकी मदद करूँ? तो फिर मुझे बड़ी बहन को परेशान करना पड़ेगा। लॉन्ग जान ने जल्दी से महिला के कपड़े फाड़ दिए। उसका चेहरा अभी भी लालच से भरा हुआ था जब उसने पूछा, पांचवीं वरिष्ठ बहन, आप जूनियर भाई को ग्रेट जिया में पैर जमाने में मदद करने के लिए अन्य चार वरिष्ठ बहनों को कब आमंत्रित करेंगी? लेकिन पांचवीं वरिष्ठ बहन चंचलता से मुस्कुराई, अभी तुम्हारी योग्यताएं बहुत कम हैं, वे तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं, केवल मैं। वह रुकी और जानबूझकर अपनी उंगलियों से लॉन्ग जान के पेट पर घेरे बनाते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी भी अपना सकती हूँ। ये सुनकर लॉन्ग जान अब प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और उस पर झपट पड़ा। आधे घंटे बाद शयन कक्ष में शांति लौट आई। पांचवीं वरिष्ठ बहन ने चारों ओर बिखरे कपड़ों को इकट्ठा किया। उनकी नजर थके हुए लॉन्ग जान पर पड़ी। जूनियर भाई, क्या आज आपका मूड खराब है? क्या आपको झेनबेई ड्यूक के घर पर कोई नुकसान हुआ है? लॉन्ग जान ने ठंडी सांस ली। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सातवीं राजकुमारी ने अचानक मुझे धोखा दिया, अन्यथा मैं आज झाओ बुजियांग को मारने में निश्चित रूप से सक्षम होता। महामहिम ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब तक झाओ बुजियांग की मृत्यु नहीं हो जाती, वे एक नया जीवनसाथी चुन लेंगे। ये स्वर्णिम अवसर मुझे अवश्य मिलेगा। पांचवीं बड़ी बहन ने यह सुनकर आह भरी, छोटे भाई, आप अभी भी बहुत छोटे हैं। झाओ बुजियांग वास्तव में राजधानी में बहुत लोकप्रिय हैं। उनके साथ आप राजधानी में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली युवा पीढ़ी नहीं होंगे। हालांकि उसे मारने के लिए सम्राट को स्पष्ट आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें लचीला होना सीखना होगा। लॉन्ग जान की आंखें चमक उठी। वरिष्ठ बहन का क्या मतलब है? पांचवी बड़ी बहन का छोटा सा मुंह ऊपर उठा। अपने पिता की मृत्यु का दुख झेलना और फिर आज राजकुमारी द्वारा धोखा दिया जाना। मुझे बताए, यदि यह युवा ड्यूक घर पर ही फांसी लगा ले तो क्या यह उचित और तर्कसंगत नहीं होगा? ये सुनकर लॉन्ग जान तुरंत समझ गया, ये समझ में आता है। जब तक मैं उस निकम्मे को मार देता हूँ, लियुनरुई स्वाभाविक रूप से अपना मन बदल लेगी। जब वह समय आएगा तो उसे नीचे ले जाना और शाही संगिनी बनना केवल समय की बात होगी। पांचवी वरिष्ठ बहन ने अपना सिर हिलाया, तुम अभी झाओ बुजियांग के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। आज ही तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हुआ था और कोई कदम उठाने से आसानी से नुकसान हो सकता है। आज रात कुछ लोगों को साथ में पीने के लिए ढूंढो और उनसे साबित करवाओ कि तुम वहां थे। उसने अपने कपड़े पहने, उसकी आंखों में तीक्ष्णता और जानलेवा इरादे भरे हुए थे। जहां तक झाओ बुजियांग की बात है, ऐसा हुआ कि मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, अब मेरे लिए बाहर जाकर आराम करने का समय आ गया है। लॉन्ग जान ने तुरंत उसका मतलब समझ लिया, फिर मुझे सीनियर बहन को परेशान करना पड़ेगा। जब सीनियर बहन विजयी होकर लौटेगी तो जूनियर भाई सीनियर बहन की भरपाई करने के लिए निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेगा। पांचवी वरिष्ठ बहन ने उसकी जांघ पर नजर डाली और मुस्कुराई, क्या आपको डर नहीं है कि मुझे झाओ बुजियांग के घर पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है? यह असंभव है, झाओ बुजियांग में वह क्षमता नहीं है, लॉन्ग जान ने आत्मविश्वास से कहा। पांचवी वरिष्ठ बहन भी उतनी ही आश्वस्त थी, ठीक है, बस झाओ बुजियांग की मौत की खबर का इंतजार करो। अल्पविराम, रात स्याही की तरह काली थी। झेनबेई ड्यूक के निवास के कोने में अंधेरे कुत्ते के छेद में झाओ बुजियांग दयनीय स्थिति में रेंगता हुआ अंदर आया। बाज पहले ही परिवार का पत्र पहुंचा चुका था। झाओ बुजियांग को लगा कि इस बार पत्र वितरण बहुत अच्छा था। यहां तक कि ड्यूक के निवास में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए भी उसे कुत्ते के बिल से रेंग कर निकलना पड़ता था। देर रात सड़कों पर बहुत कम लोग थे, उसे पहचानना तो दूर की बात थी। इसके बाद उसे ड्यूक के निवास में तब तक दुबकना पड़ा जब तक कि झेनबेई ड्यूक वापस नहीं आ गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा, उसने देखा कि एक बैंगनी रंग का व्यक्ति भी उसी समय ड्यूक के निवास में कूद गया। दोनों लोगों की आंखें मिली। झाओ बुजियांग अचंभित रह गया, आप कौन हैं? पांचवी वरिष्ठ बहन भी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि कुत्ते के बिल से कोई बाहर निकल आएगा। तुरंत ही उसने झाओ बुजियांग के अस्त व्यस्त रूप और ड्यूक के निवास के एक नौकर के कपड़ों पर ध्यान दिया। झेनबेई ड्यूक के निवास का एक नौकर, उसके हाथ में जैद बांसुरी तुरंत बाहर आ गई, झाओ बुजियांग की गर्दन पर टिकी हुई। उसने ठंडे स्वर में कहा, बोलो झाओ बुजियांग कहाँ है? झाओ बुजियांग ने आत्मसमर्पण दिखाने के लिए एक हाथ उठाया, जबकि दूसरा हाथ उसकी छाती में पहुंच गया, किसी भी समय जहर छिड़कने के लिए तैयार, जबकि वह दूसरे पक्ष की उपस्थिति का जायजा ले रहा था। बैंगनी कपड़े, जैद बांसुरी। अपने मन में कथानक को जल्दी से याद करते हुए, क्या ये लॉन्ग जान की पांच वरिष्ठ बहनों में से सबसे अधिक उग्र पांचवी वरिष्ठ बहन लियुरुयान हो सकती है? लियुरुयान पांचों वरिष्ठ बहनों में मार्शल आर्ट में सबसे कमजोर थी, लेकिन वह ड्रैगन पोषण करने वाले शरीर के साथ पैदा हुई थी। उसके साथ रहने वाले पुरुषों की शक्ति लगातार बढ़ती जाएगी, इसलिए लॉन्ग जान के गुरु ने उसे लॉन्ग जान के साथ रहने दिया, जो मुख्य कारण भी था कि प्रारंभिक अवस्था में लॉन्ग जान की मार्शल आर्ट इतनी जल्दी कैसे सुधर गई। क्या ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग जान दिन के दौरान उसे मार नहीं सकती थी, इसलिए उसने उसे यहां भेजा? क्या यह महिला एक जीवित उन्नत कलाकृति नहीं है? हीरोइन, मेरी जान बख्श दो। झाओ बुजियांग ने बहुत सहयोगात्मक ढंग से कहा। युवा ड्यूक ने अभी अभी मौज मस्ती करने वाली कुछ महिलाओं को तरजीह दी है और अब वह गहरी नींद में सो रहा है। यह विनम्र व्यक्ति भी खाली समय का फायदा उठाकर चुपके से बाहर निकलकर ड्यूक के घर का सामान बेच रहा है। ये सुनकर लियू रुयान ने मजाक करते हुए कहा, ऊपरी बीम सीधी नहीं है, निचली बीम टेढ़ी है। झेनबेई ड्यूक का निवास वास्तव में अपनी रस्सी के अंत में है। यह मेरे कनिष्ठ भाई के मार्ग में भी बाधा डाल रहा है, ये वास्तव में मरने के लायक है। उसने झाओ बुजियांग को घूरते हुए कहा, मुझे झाओ बुजियांग का कमरा ढूंढने के लिए ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ 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 नायका, निश्चिंत रहो, मैं लंबे समय से युवा ड्यूक को नापसंद करता रहा हूँ। उस पहलू में अच्छा होने के अलावा मुझे कोई अन्य लाभ नहीं मिल सकता है। झाओ बुजियांग ने बढ़त बना ली। उसे इतना सहयोगी होते देख लियू रुयान ने उसे केवल एक कुत्ते के गुलाम के रूप में सोचा जो मौत से डरता था, और उसने अपने हाथ से जैद बांसुरी नीचे रख दी। वह अपने दिल में और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण थी, झाओ बुजियांग उस पहलू में अच्छा है, क्या वह मेरे छोटे भाई से बेहतर हो सकता है। जल्द ही झाओ बुजियांग लियू रुयान को एक अंधेरे कमरे के बाहर ले आया। नायका, युवा ड्यूक अंदर है। लियू रुयान को उम्मीद नहीं थी कि ड्यूक के निवास की सुरक्षा इतनी खराब होगी, यहां तक कि पूरे रास्ते में कोई गार्ड भी नहीं था, लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह बात समझ में आई। झेनबेई ड्यूक के बिना झाओ परिवार के पास केवल एक अक्षम झाओ बुजियांग बचा था, और पेड़ गिरने पर चूहे तितर बितर हो गए, जो सामान्य था। ये देखकर कि झाओ बुजियांग ने पहले ही चुपचाप दरवाजा खोल दिया था, कृपया बाहर मुझ पर नजर रखना, चिल्लाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हीरोइन, निश्चिंत रहो, जब तुम युवा ड्यूक को मार दोगी तो मैं कुछ चीजें चुरा लूंगा और तुरंत भाग जाऊंगा। हम तुच्छ महत्वाकांक्षाएं। लियू रुयान अपने बगल में बैठे व्यक्ति को एक नौकर समझती थी जिसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसने अपना ध्यान कमरे पर केंद्रित किया, वहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि झाओ बुजियांग सचमुच गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि झाओ बुजियांग, जो पूरे समय हानि रहित था, ने अचानक अपने सीने से बड़ी मात्रा में पाउडर छिड़क दिया। लियू रुयान ने यह देखते ही जल्दी से पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन उसने पहले ही अपनी नाक में बहुत कुछ अंदर ले लिया था, और उसे अचानक लगा कि वह अपने पूरे शरीर में कोई ताकत नहीं लगा सकती। उसी समय ड्यूक का निवास तुरंत जगमगा उठा। झाओ बुजियांग अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला, पुरुषों, इस युवा ड्यूक के लिए इस हत्यारे को मार डालो। एक पल में प्रबंधक ने दर्जनों गार्डों को साथ लेकर लियू रुयान को घेर लिया। लियू रुयान ने उस युवक को घूर कर देखा जो उसके सामने आदेश दे रहा था, तुम झाओ बुजियांग हो। इससे पहले कि झाओ बुजियांग कुछ बोल पाती, उसके शरीर से अचानक अनियंत्रित गर्मी का एक उभार फूट पड़ा। लियू रुयान के शरीर में अनियंत्रित गर्मी की लहर दौड़ गई। उसके अंगों में झुंझुनी और कमजोरी की अनुभूति फैल गई और वह लगभग संतुलन खो बैठी। प्रतिरोध करने के लिए मार्शल आर्ट का प्रयोग करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, इस युवा मालिक के लिए इस महिला हत्यारे को बांध दो और उसे कई बार बांधना याद रखो। झाओ बुजियांग का आदेश सुनकर नौकरों ने काली जंजीरें लहराई और उन्हें लियू रुयान के अंगों और गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। महत्वपूर्ण भागों को जानबूझकर रेखांकित किया गया था। बूढ़े बटलर ने उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया था, जैसा कि वह अपने युवा मालिक को समझाता था। लियू रुयान जमीन पर गिर पड़ी, हिलने में असमर्थ हो गई और उसे एक अजीब स्थिति में बांध दिया गया, जिससे वह तुरंत अपने दांत पीसने लगी। झाओ बुजियांग, तुम घृणित खलनायक हो, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो और द्वंद्व युद्ध करें। तुम आधी रात को मेरी हत्या करने आए थे और अब तुम मुझे नीच कहने का साहस कर रहे हो। झाओ बुजियांग ने आगे बढ़कर लियू रुयान के नाजुक उभरे हुए नितंबों पर लात मारी। और द्वंद्व युद्ध, मैं तुम्हें अभी बता दूंगी कि पुरुष कौन है। कोई और जंजीरें डाल दे ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि उसके पास जवाबी हमला करने की शक्ति न हो और वह मुझे चोट न पहुंचाए, फिर उसे जेल ले जाए। जल्द ही जेल के अंदर सभी लोग पीछे हट जाएं, युवा मास्टर और इस खूबसूरत हत्यारे को कुछ जगह दें। बूढ़े बटले के चेहरे पर ऐसा भाव था कि ये बूढ़ा नौकर आपको समझता है, और फिर वह सावधानी से पहरेदारों को वहां से ले गया। झाओ बुजियांग ने लियू रुयान पर 10 सुगंध कमजोर करने वाले पाउडर को फिर से लगाया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि उसकी कमजोर अवस्था बनी रहे ताकि वह उसे नुकसान न पहुंचा सके। लियू रुयान को पता था कि अब उसका अंत हो चुका है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब झाओ बुजियांग नामक इस युवा मालिक की कुतिया ने अपनी प्रतिरोध करने की अक्षमता का परीक्षण किया तो उसने निश्चित रूप से उस पर हाथ उठाया। झाओ बुजियांग, अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन इस महिला के प्रति असम्मान दिखाने की हिम्मत मत करना। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि झाओ बुजियांग ने उसका फायदा उठाने के लिए उससे संपर्क नहीं किया। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि झाओ बुजियांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लियू रुयान ने अपने मन में झाओ बुजियांग की आवाज सुनी। ये फूहड़ हालांकि उग्र है, फिर भी उसके पैर अच्छे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लॉन्गजान ने अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए पहली बार उसके साथ सोया और 3 दिनों तक बिस्तर से बाहर नहीं निकला। काश मैं भी लॉन्गजान की तरह अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए उसका उपयोग कर पाता तो मुझे हर दिन इतना डरना नहीं पड़ता। नहीं, भले ही मैं मार्शल आर्ट सीख लूं, फिर भी मुझे सावधान रहना होगा। केवल शांत रहकर ही मैं लंबे समय तक जीवित रह सकता हूं, और केवल लंबे समय तक जीवित रहकर ही मैं दुनिया के व्यंजनों और सुंदरता का आनंद ले सकता हूं। लियु रुयान स्तब्ध थी, उसका दिमाग घूम रहा था। उसने नीचे देखा और पुष्टि की कि क्योंकि वह जमीन पर लेटी थी, उसकी स्कर्ट उसकी जांघों से दबी हुई थी और उसकी गोरी टांगे झाओ बुजियांग की आंखों के सामने थी। झाओ बुजियांग सही थे, लेकिन झाओ बुजियांग ने कुछ नहीं कहा। क्या वह झाओ बुजियांग के विचार सुन रही थी? वह झाओ बुजियांग की अंतरात्मा की आवाज कैसे सुन सकती थी? अजीब, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस मार्शल आर्ट का वह अभ्यास करती थी वह उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जिससे उसे अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले पुरुषों के आंतरिक विचारों को सुनने की विशेष क्षमता प्राप्त हो गई थी। उसके गुरु द्वारा दी गई युद्ध कलाएं वास्तव में शक्तिशाली थीं। हालांकि ये युवा गुरु मेरे कनिष्ठ भाई के साथ मेरे रिश्ते के बारे में जानता है और यह भी जानता है कि मेरी काया उसकी साधना को बढ़ा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पिता ने मरने से पहले हमारी जाँच की हो? झेनबेई का राजा वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसका बेटा इतना बेकार था। ये युवा मास्टर मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। लियु रुयान ने भी इसमें शामिल होने का निर्णय लिया। उसकी आंखों का गुस्सा तुरंत बदल गया और धुंधला तथा आकर्षक हो गया। उसने अपने नम होठों को अपने मोती जैसे दांतों से काटा और उसके गालों की लाली ने उसके आकर्षण को और बढ़ा दिया। महाराज, युवा मास्टर, मैं गलत था, कृपया मुझे जाने दीजिए। सच कहूं तो अगर आप मेरे साथ एक कमरा साझा करेंगे तो आप और भी मजबूत हो जाएंगे। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? लियु रुयान बोलते समय अपनी लंबी टांगों को आपस में रगड़ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, झाओ बुजियांग को कामुक और लंपट होने के लिए जाना जाता है। मेरे जैसी शक्ल और फिगर वाली औरत ही तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए काफी है। लेकिन अगले ही पल उसने झाओ बुजियांग को अपना सिर हिलाते हुए देखा। नहीं, तुम बहुत बदसूरत हो। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि मैं बदसूरत हूँ? लियु रुयान की कोमल छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसका हृदय क्रोध से भर गया। तुम मुझे मार सकते हो, आप मुझे डांट सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि मैं बदसूरत हूँ। यह मेरा अपमान है। लियु रुयान जितना क्रोधित होता गया, झाओ बुजियांग उतना ही उदासीन होता गया। आखिरकार मूल कहानी में यह महिला एक ऐसी महिला थी जो पुरुषों के साथ खेलना और उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करना पसंद करती थी। यद्यपि उसके साथ संभोग करने से पुरुष की साधना में वृद्धि हो सकती थी, लेकिन इसमें भी सीमाएं थीं। मुझे याद है कि लॉन्गजान ने कहा था कि उनके संप्रदाय की अद्वितीय आंतरिक शक्ति सच्चे यांग हृदय सूत्र के बिना, यदि आप लियु रुयान के साथ संभोग करते हैं तो आपका सार लियु रुयान द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, जिससे उसे लाभ होगा। एक अच्छा युवा मास्टर बचा हुआ खाना नहीं खाता। क्या लियु रुयान मुझे बेवकूफ समझता है? झाओ बुजियांग की आंतरिक आवाज को फिर से सुनकर लियु रुयान का आश्चर्य उसके गुस्से से अधिक हो गया। लियु रुयान को यह अजीब लगा। झाओ बुजियांग ने एक नज़र में उसकी पहचान कर ली और यहां तक कि लॉन्गजान के साथ उसके रिश्ते के बारे में भी जान लिया। अब तो यह और भी अधिक अपमानजनक हो गया। वह तो उसके ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर और सच्चे यांग हृदय सूत्र के रहस्यों को भी जानता था। लॉन्गजान ने कहा कि कनिष्ठ भाई ने झाओ बुजियांग को हमारे संप्रदाय के रहस्य क्यों बताए? क्या ऐसा हो सकता है कि लॉन्गजान ने संप्रदाय को धोखा दिया हो? जैसे ही लियु रुयान के विचार उथल पुथल में थे, उसकी जानकारी के बिना झाओ बुजियांग ने उसकी बेजान उपस्थिति को देखकर सोचा कि वह सिर्फ जिद्दी हो रही है। हालांकि मैं आपके संप्रदाय को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन आपका संप्रदाय हमेशा मेरे साथ खिलवाड़ करता रहता है। अगर मुझे आपसे कुछ लाभ नहीं मिलता तो क्या मैं अभी भी एक आदमी हूँ? झाओ बुजियांग ने लियु रुयान के मुंह से सच्चा यांग हृदय सूत्र छीनने का फैसला किया। ये सोचते हुए उसने जेल की कोठरी से एक बक्सा बाहर निकाला। यह एक प्रकार का यातना उपकरण था जिसे लकड़ी का गधा कहा जाता था। एक बार जब कोई महिला इस पर बैठ जाती तो वह तुरंत खुशी से दुख में बदल जाती। जाहिर है इसे पूर्व झाओ बुजियांग ने पीछे छोड़ दिया था। ऐसा लगता है कि मैं कामुक होने के लेबल से छुटकारा नहीं पा सकता। इसे भूल जाओ लियु रुयान, पहले तुम हम छोटे खलनायकों की शक्ति का स्वाद चख लो। झाओ बुजियांग ने लियु रुयान की ओर देखा, लेकिन वह नहीं जानता था कि लियु रुयान मरना चाहता था। यदि आप सच्चा सूत्र चाहते हैं तो बस पूछिए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इसे चाहते हैं? यद्यपि मैं आपके विचार सुन सकता हूं, परंतु मैं इसे खुलकर नहीं कह सकता, अन्यथा मुझे डर है कि मेरी मृत्यु और भी बुरी हो जाएगी। लेकिन आपने मुझसे पूछताछ किए बिना ही यातना देने वाले उपकरण बना लिए। क्या आप इस सुंदरता का सम्मान कर सकते हैं? लियु रुयान का दिल घबराहट से भर गया। प्रताड़ित होने के बजाय वह पहले झाओ बुजियांग के साथ सहयोग करने का नाटक कर सकती है। वैसे भी सच्चा यांग हॉट सूत्र प्रतिभा की अत्यधिक मांग करता है, क्या झाओ बुजियांग का मस्तिष्क इसका अभ्यास कर सकता है?
स्पष्टतः नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, लियू रुयान अचानक चिल्लाया।
होह, झाओ बुजियांग स्तब्ध रह गया, ये साली क्या कहने वाली है, मैंने तो अभी तक पूछा ही नहीं है। किसी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने और यातना देने की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, है ना? क्या इसे हमेशा ऐसे ही नहीं दर्शाया जाता है? उसके विचार सुनकर लियू रुयान कांप उठा। ये झाओ बुजियांग उतना सरल नहीं था जितना वह सतह पर दिखाई देता था, बल्कि वह एक कठिन चरित्र वाला व्यक्ति था जिसका दिमाग गहरा था और जो नियमों के अनुसार नहीं खेलता था। चूंकि आपने पहले ही जांच कर ली है, इसलिए मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। वास्तव में मेरे साथ संभोग करने से आपकी मार्शल आर्ट साधना बढ़ सकती है। बस एक महत्वपूर्ण बात है, आपको पहले सच्चे यांग हृदय सूत्र के प्रथम स्तर का अभ्यास करना होगा, तभी हम एक साथ उड़कर आनंदमय क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा इससे केवल तुम्हें ही नुकसान होगा। सच्चा यांग हृदय सूत्र मेरे अंदर है, मेरी चोली की भीतरी परत में। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप जांच कर देख सकते हैं कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। क्या हो रहा है, क्या वह मुझे इतनी आसानी से दे रही है? खलनायक को अपराध स्वीकार करने के लिए यातना का प्रयोग करना चाहिए और आपके सहायक पात्रों को मृत्यु से इनकार करना चाहिए, कथानक इसी तरह चलना चाहिए। लियू रुयान की ईमानदार आंखों को देखते हुए झाओ बुजियांग हैरान था। एक ठंडी सांस के साथ उसने लियू रुयान पर कुछ और कमजोर करने वाला पाउडर छिड़का। क्या तुम्हें इतना सावधान रहना होगा? तुम्हारी मर्दांगी कहाँ है? लियू रुयान का पूरा शरीर झुंझुनी सुन्न और गर्म हो गया था और वह खुद को गालियां बकने से नहीं रोक सकी। झाओ बुजियांग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, उन्हें ऐसा नहीं लगा कि सावधान रहना और सुरक्षित खेलना कोई समस्या थी। मनुष्यता नीचे इकट्ठी है, सावधानी हृदय में छिपी है। च झाओ बुजियांग, मैं सबसे पहले ये कहूंगा, भले ही आपको सच्चा यांग हॉट सूत्र मिल जाए, आप इसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे। सफल होने से पहले मुझे पाने के बारे में सोचना भी मत। ये पुष्टि करते हुए कि लियू रुयान में प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं है, झाओ बुजियांग ने सच्चे यांग हॉट सूत्र को खोजने के लिए लियू रुयान की छाती में हाथ डाला। मुझे यूं ही मत छूना, ये यहां नहीं है, तुम्हें पहले इसकी पट्टियां खोलनी होंगी, लियू रुयान ने डांटा। नर्म और गर्म जेड महसूस करना, झाओ बुजियांग ने टटोलना जारी रखा और पूरी और गीली वस्तुओं पर ज्यादा देर तक नहीं रुका। इसके बजाय वह उसकी जेड पीठ के चारों ओर चला गया और एक खिंचाव के साथ चोली नीचे गिर गई। झाओ बुजियांग ने चोली की परत से एक पीली धागे से बंधी प्राचीन पुस्तक निकाली। इस प्राचीन पुस्तक के कवर पर सत्य यांग हृदय सूत्र लिखा हुआ था। झाओ बुजियांग ने ट्रू यांग हॉट सूत्र को अपनी बाहों में रख लिया। उन्होंने लियू रुयान के अस्त व्यस्त कपड़े भी ठीक किए। लियू रुयान को लगा कि उसने अपनी अंतरात्मा को खोज लिया है। इन जंजीरों को ढीला मत करो, इन्हें और कसकर बांधो। मैं बाद में नौकरानी से तुम्हें नहला दूंगी और जब मैं सच्चे यांग हृदय सूत्र में निपुण हो जाऊंगी तो मैं आकर तुम्हारे ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर का आनंद लूंगी। लियू रुयान अवाक रह गया। जांच करने के बाद झाओ बुजियांग संतुष्ट होकर चला गया। अभ्यास कक्ष में लौटते हुए झाओ बुजियांग ने ट्रू यांग हॉट सूत्र खोला। उसे यकीन नहीं था कि उसमें मार्शल आर्ट के लिए कोई प्रतिभा है या नहीं, लेकिन किसी भी हालत में जीवित रहने के लिए स्वयं को मजबूत करना मौलिक था। ये सच्चा यांग हॉट सूत्र, यदि आपके पास कोई प्रतिभा नहीं है तो आप केवल कठिन अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप में प्रतिभा है, आपको अभी भी कठिन अभ्यास करना होगा। जीवित रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक ही समय पर महान जिया राजवंश के शाही शहर के शाही अध्ययन में महान जिया राजवंश के सम्राट ली जायुआन एक लकड़ी की कुर्सी पर पीछे की ओर झुके हुए थे और अपनी सातवीं बेटी ली युनरुई के प्रति अद्वितीय स्नेह प्रदर्शित करते हुए राजसी शान दिखा रहे थे। ताइवान फिक्शन वेबसाइट TWKN.COM। युनरुई, तुमने अपना मन क्यों बदल लिया? क्या तुमने पहले ही सगाई तोड़ने का निश्चय नहीं कर लिया था? उसने अपनी बेटी से पूछा। और तुमने उस लॉन्ग जान को थप्पड़ क्यों मारा? पिताजी, वह पहले व्यक्ति था जिसने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया था। स्विफ्ट कैवेलरी कैंप के एक साधारण कमांडर ने बार बार मेरा और झाओ बुजियांग का अपमान किया है। ली युनरुई ने थोड़ा मुंह बनाया और एक हल्की गुनगुनाहट सी निकाली। सभी राजकुमारों और राजकुमारियों में वह सदैव सर्वाधिक प्रिय थी। अपने पिता के सामने उसमें सम्राट का भय नहीं था, बल्कि एक बच्चे जैसा स्वेच्छाचारी रवैया अधिक दिखाई देता था। ली जायुआन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने अपनी बेटी की आवाज के लहजे पर ध्यान दिया जब उसने झाओ बुजियांग का जिक्र किया। पहले की तुलना में क्या वहां घृणा का कोई संकेत नहीं था और यहां तक कि सौम्यता का भी संकेत था? क्या तुम उस झाओ बुजियांग से सबसे ज्यादा नफरत नहीं करते थे? क्योंकि आज मुझे पता चला कि झाओ बुजियांग काफी अच्छा है। ओह, पिताजी को इसके बारे में बताओ। लियुनरुई ने अपने लाल होठों को दबाया और झाओ गुजियांग की छवि उसके दिमाग में उभरी। उसने अपने लाल होठों को थोड़ा खोला। वह अपने काम में व्यवस्थित है और उसके अपने अनूठे विचार हैं। वह उतना बेकार नहीं है जितना लोग कहते हैं। जहां तक कामुकता की बात है, मैं इसमें कुछ भी नहीं देख सकता। पिताजी, आपने उसकी आंखों में वह भाव नहीं देखा जब उसने मेरी ओर देखा। उसमें केवल सरल प्रशंसा थी, अश्लीलता का कोई निशान नहीं था। वास्तव में वह तो ये भी चाहता था कि मैं सगाई तोड़ दूं। इस बिंदु पर ली युनरुई को ली जायुआन ने टोकते हुए कहा, वह सगाई भी तोड़ना चाहता है। मेरी बेटी को वह वास्तव में नीची नजर से देखता है। पिताजी, आप उसे समझ नहीं रहे हैं, ली युनरुई ने तुरंत समझाया। उसे लगता है कि उसकी वर्तमान स्थिति मुझे देरी कर देगी। अफसोस, दुनिया की उसके बारे में गलतफहमी बहुत गहरी है। झाओ गुजियांग वह सहन कर सकता है जो आम लोग नहीं कर सकते। उसका दिमाग गहरा है और उसकी आंतरिक प्रतिभा प्रकट नहीं होती है। वह एक अच्छा आदमी है। ओह, क्या आप कह रहे हैं कि वह अपनी योग्यताएं छिपा रहा है? वह अपनी योग्यताएं क्यों छिपा रहा है और वह कब अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से प्रकट करेगा? ली जायुआन की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसके दिल में हत्या की मंशा का एक संकेत चुपचाप उभर आया। वह चाहेंगे कि झाओ गुजियांग एक अज्ञानी और औसत दर्जे का व्यक्ति बने। ली शाही परिवार हमेशा से उत्तरी राजा झाओ टिंगशियाओ से सावधान रहा है। जब ली जायुआन अभी भी युवराज थे तब वह और झाओ टिंगजियाओ भाई थे, लेकिन अब चूंकि ली जायुआन वर्तमान सम्राट है, इसलिए शासक और प्रजा के बीच उचित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। झाओ टिंगशियाओ ग्रेट जिया की उत्तरी सीमा पर तैनात है और 10 लाख सैनिकों की कमान संभाल रहा है और लोगों द्वारा उससे बहुत प्यार किया जाता है। अपने भाईचारे के अलावा ली जायुआन को कभी भी सैन्य शक्ति वापस लेने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अब झाओ टिंगशियाओ मर चुका है। हालांकि ली जायुआन भी कुछ दिनों के लिए उदास था, लेकिन उसने अधिक राहत महसूस की। कम से कम साम्राज्यवादी शक्ति स्थिर है और इस निष्ठावान भाई का इकलौता पुत्र झाओ गुजियांग। ली जायुआन झाओ गुजियांग को कामुक और लंपट बनने की अनुमति दे सकता है और कीचड़ का ढेर बन सकता है जिसे उठाया नहीं जा सकता, लेकिन वह झाओ गुजियांग को दूसरा झाओ टिंगशियाओ बनते नहीं देखना चाहता। इसीलिए उसने आज अपनी बेटी को सगाई तोड़ने की अनुमति दे दी और उसकी रक्षा के लिए लॉन्ग झान को भेज दिया, क्योंकि ली जायुआन झाओ गुजियांग को वापसी करने के लिए कोई पूंजी नहीं देना चाहता था। लेकिन अब उसकी बेटी को पता चला है कि झाओ गुजियांग अपनी क्षमताओं को छिपा रहा है। पिता, ली युनरुई ने महसूस किया कि उसके पिता का स्वर ठंडा हो गया है और उसकी भौहें सिकुड़ गई हैं। वह कोई फूलदान राजकुमारी नहीं है। वह जानती है कि उसके पिता हमेशा उत्तरी राजा से सावधान रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से उसके पिता भी झाओ गुजियांग से सावधान हो गए। तब उसे अपने पिता को यह रहस्य नहीं बताना चाहिए कि उत्तरी राजा मरा नहीं है। जब उसके पिता को यह बात पता चलती है और वह आवेग में आकर झाओ गुजियांग को मार देता है और फिर उत्तरी राजा वापस लौट आता है। ली युनरुई ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। किसी भी मामले में झाओ गुजियांग की आंतरिक आवाज से उसने जो रहस्य सीखा है उसे उजागर नहीं किया जाना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद ली युनरुई ने अपने पिता की बांह हिलाए और थोड़ी सी विनम्रता के साथ कहा, पिताजी, उत्तरी राजा तो पहले ही मर चुका है, फिर भी आप किस बात को लेकर चिंतित हैं? मेरी खातिर इस झाओ गुजियांग के साथ दयालुता से पेश क्यों नहीं आते? आखिरकार वह एक पति है और अब उसका परिवार बर्बाद हो गया है। ली जायुआन की भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। हाँ, झाओ टिंगशियाओ मर चुका है। जहां तक इस झाओ गुजियांग का सवाल है तो उस पर कुछ शाही कृपा बरसाने में कोई हर्ज नहीं होगा, ताकि अधिकारी मेरी सहनशीलता देख सकें, है ना? आधार यह है कि झाओ गुजियांग के पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई योग्यता नहीं है और अधिमानतः कुछ भी नहीं है। तो ली जायुआन ने मेज पर थपथपाया, वह झाओ गुजियांग मेरी बेटी की पत्नी बनने के योग्य होना चाहिए, झेंग हुआ। इंपीरियल स्टडी के बाहर से प्रतिक्रिया आई, ये बूढ़ा नौकर यहाँ है, झाओ गुजियांग को महल में बुलाओ। ली जायुआन ने शान से कहा और बोलना समाप्त करने के बाद ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो और कहा, लॉन्ग झान को भी ले आओ। हाँ, मुख्य नपुंसक चेन झेंगहुआ ने आदेश लिया और चले गए। पिताजी, आपने उस परेशान करने वाले लॉन्ग झान को आने के लिए क्यों कहा? ली जायुआन ने अपनी हठी बेटी को देखा और स्नेहपूर्वक मुस्कुराया। वास्तव में जब प्रतिभा की बात आती है तो ये लॉन्ग झान एक युवा प्रतिभा है, बहादुर और साधन संपन्न है और मार्शल आर्ट में अत्यधिक कुशल है। पिता ने शुरू में सोचा था कि जब तुमने झाओ गुजियांग के साथ सगाई तोड़ दी तो वह इस लॉन्ग झान को जीवन साथी के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में बढ़ावा देंगे। ली युनरुई ने असहमति जताते हुए कहा, क्या वह योग्य है? ली जायुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी जानते हैं कि आज की घटनाओं के कारण आपके मन में लॉन्ग झान के प्रति पूर्वाग्रह है, लेकिन वह केवल आदेशों का पालन कर रहा था और यदि उसने अपनी सीमाओं को थोड़ा भी लांघा तो एक क्षमा योग्य है। पिता, पिताजी की बात सुनिए, लॉन्ग झान और झाओ हुजियांग के बीच प्रतिस्पर्धा का इंतजार कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि झाओ हुजियांग कितना औसत दर्जे का है। घुड़सवार सेना कैंप कमांडर का निवास। लॉन्ग झान ने पूरी रात शराब पीकर एक ठोस बहाना बनाया और अपनी पांचवी बड़ी बहन लियू रुयान से अच्छी खबर का इंतजार करने लगा। लेकिन अब जब भोर हो चुकी थी, उसका नशा उतर चुका था, फिर भी लियू रुयान वापस नहीं आया था। झेनबेई राजा के निवास से कोई हलचल नहीं हुई। झाओ हुजियांग की मृत्यु जैसी बड़ी खबर तो दूर की बात थी। क्या पांचवीं बड़ी बहन को कुछ हो गया होगा, लॉन्ग झान ने मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह असंभव था, झाओ हुजियांग में एक क्षमता नहीं थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कमांडर, कमांडर, चीफ स्टीवर्ड चेन शाही फरमान लेकर आ गए हैं। एक ही समय पर झेनबेई राजा का निवास, शाही फरमान। झाओ हुजियांग हैरान था। बूढ़े बटलर ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया, हाँ महाराज, महाराज चाहते हैं कि आप महल में जल्दी चले जाएं। बूढ़ा सम्राट किस तरह की मुसीबत की योजना बना रहा है, मैं तो पहले से ही घर में आराम कर रहा हूँ, फिर अचानक मुझे महल में क्यों बुलाया गया। झाओ हुजियांग ने हाथ हिलाकर बूढ़े बटलर को जाने का संकेत दिया। उन्होंने पूरी रात अभ्यास किया और अंततः सच्चे यांगहॉट सूत्र के प्रथम स्तर में प्रवेश किया। उसे नहीं पता था कि यह प्रगति तेज थी या धीमी। वह लियू रुयान से फिर से पूछताछ करने ही वाला था कि उसे सम्राट का मौखिक आदेश मिला। वह शाही फरमान का विरोध नहीं कर सका। इसे भूल जाओ, मैं इसे अपने हिसाब से खेलूंगा और कम चर्चा में रहूंगा। झाओ हुजियांग ने सहजता से अपने आप को साफ किया और महल की ओर चल पड़ा। दो घंटे बाद इंपीरियल अध्ययन कक्ष के बाहर जब लॉन्ग झान ने झाओ हुजियांग को देखा तो उसका दिल बैठ गया। निश्चित रूप से पांचवीं वरिष्ठ बहन ने झाओ हुजियांग को नहीं मारा था, तो फिर पांचवी बड़ी बहन कहाँ गई। झाओ हुजियांग ने भी उसे देखा, लेकिन झाओ हुजियांग इस आदमी के साथ कोई संघर्ष नहीं करना चाहता था जिसके पास नायक का प्रभामंडल और कथानक कवच था। यदि मैं उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता तो क्या मैं उससे बच नहीं सकता। झाओ हुजियांग को अपना रास्ता बदलते देख लॉन्ग झान ने मन ही मन उपहास किया। मुझसे डरते हो, ये सही है, अगर झेनबेई राजा का समर्थन न होता और सातवीं राजकुमारी आपकी रक्षा न करती तो मैं आपको कल ही मार देता। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है महाराज, उत्तराधिकारी। लॉन्ग झान ने झाओ हुजियांग का रास्ता रोकने की पहल की। झाओ हुजियांग ने मन ही मन कोसा। जैसे ही वह बहरा होने का नाटक करके उसे बाईपास करने वाला था, दो लोग अचानक उसकी ओर बढ़े। उन्होंने उनमें से एक को राजकीय समारोह न्यायालय के मंत्री ली चेनिक्सु के रूप में पहचाना। दूसरी महिला बहुत सुंदर थी, उसकी त्वचा और हड्डियां बहुत सुंदर थी, उसके सिर पर झरने जैसे काले बाल थे, उसकी ठंडी आंखों के नीचे एक सीधी नाजुक नाक और गुलाबी पतले होंठ थे, आगे की ओर बर्फ सी सफेद गर्दन और बर्फ के रंग का चौड़ा लबादा था। वह सचमुच बर्फ सी सुंदरी थी। मैं हान सांग देश से सांस्कृतिक दूत चिबा हिजाओ हैं, ली चेनशु ने परिचय देने की पहल की और फिर पूछा, महाराज वारिस कमांडर लॉन्ग, यह क्या है। झाओ हुजियांग को मूल उपन्यास में यह बात याद थी, झेनबेई राजा ने हान सांग देश के विरुद्ध उत्तरी सीमा की रक्षा की। अब जब वे ग्रेट जिया का दौरा कर रहे थे तो वे दोनों देशों के बीच युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करना चाहते थे। झेनबेई राजा की मृत्यु से उन्हें बातचीत करने का विश्वास मिला। इस कथानक में लॉन्ग झान के चेहरे पर थप्पड़ मारने वाले कुछ दृश्य अभी भी होने चाहिए। बाद में इस बर्फीली सुंदरी चिबा हिजाओ को भी लॉन्ग झान के हरम में शामिल कर लिया गया। झाओ हुजियांग, जल्दी से अंदर आओ, इंपीरियल स्टडी के अंदर से अचानक ली युनरुई की आवाज आई। ली ज़ायुआन ने असहाय होकर कहा, कमांडर लॉन्ग, हान सांग दूत, आप भी साथ में आइए। सभी लोग एक साथ अंदर गए। ली युनरुई की नजर लगातार झाओ हुजियांग पर थी। लॉन्ग झान बहुत दुखी था। झाओ हुजियांग को यह भी याद आया कि उनकी मातृभाषा अवाक थी। इस मूल उपन्यास की नायिका हमेशा मेरी ओर क्यों देखती रहती है। अपने लॉन्ग झान को देखो, मुझमें ऐसा क्या अच्छा है, ये तो नितांत अपमानजनक है। ली युनरुई उसके आंतरिक विचारों को पढ़कर और भी अधिक प्रसन्न और प्रसन्न हो गया। उसे एक आदमी को अचानक पूरी तरह से समझने का यह एहसास बहुत अच्छा लगा। भविष्य में झाओ हुजियांग उससे कुछ भी नहीं छिपा सकेगा और वह दुनिया में झाओ हुजियांग को सबसे ज्यादा समझने वाली महिला होगी। महान जिया के सम्राट को नमस्कार, चिबा हिजाओ ने उनका अभिवादन किया, लेकिन उनके स्वर में ज्यादा सम्मान नहीं था। ग्रेट जिया और हान सांग कई महीनों से युद्ध में हैं, लेकिन कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। महामहिम हान सांग के सम्राट शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्रेट जिया के कारण हान सांग को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यदि महान जिया 1,00,000 टैल चांदी, 1,00,000 टैल सोना और 10,000 युद्ध घोड़े देने को तैयार हो, यदि इसे हान सांग के पास वापस ले जाया जाए तो हान सांग 10 साल के युद्ध विराम की गारंटी दे सकता है। हान सांग देश झेनबेई राजा की मृत्यु और ग्रेट जिया की उत्तरी सीमा में अस्थायी रूप से रीढ़ की हड्डी की कमी का लाभ उठा रहा था, जिससे सेना का मनोबल बिखर गया था। वे स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे और ग्रेट जिया के लाभों को हड़पना चाहते थे। यदि झेनबेई राजा अभी भी जीवित होते तो हान सांग जैसा छोटा द्वीप राष्ट्र निश्चित रूप से अपना दूत भेजने की हिम्मत नहीं करता। ली ज़ायुआन ने अपनी उंगलियों से मेज पर लयबद्ध तरीके से थपथपाते हुए अपनी भौहें गहरी करते हुए कहा, मंत्री लॉन्ग, मंत्री झाओ, हान सांग दूत द्वारा उल्लिखित युद्ध विराम पर आपकी क्या राय है? महामहिम को रिपोर्ट कर रहा हूँ। लॉन्ग झान ने आदरपूर्वक अपनी मुट्ठी बांध ली, उसकी आवाज ऊंची थी। युद्ध विराम संभव है, लेकिन संधि की कुछ शर्तें चर्चा के लिए खुली हैं। हमारे महान जिया को संधि में थोड़ी सी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। चिबा हिजाओ की आंखें ठंडी थीं, वह लॉन्ग झान की ओर देख रहा था। हालांकि लॉन्ग झान के शब्दों ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने महसूस किया कि यह व्यक्ति अडिग था और उसका फिगर अच्छा था। लेकिन उसके बगल में बैठा झाओ बुजियांग, जो अपना सिर नीचे झुकाए अपनी उंगलियों से खेल रहा था, बेवकूफ लग रहा था। ली ज़ायुआन ने सिर हिलाया और लॉन्ग झान के साहस और जवाब की सराहना की। वह न तो विनम्र थे और न ही अहंकारी, बल्कि साहसी और प्रभावशाली थे। मंत्री झाओ, आप क्या कहते हैं? ली ज़ायुआन धीरे से मुस्कुराया, बहुत ही सौम्य और दयालु लग रहा था। लेकिन वह ये भी जानता था कि झाओ बुजियांग में निश्चित रूप से लॉन्ग झान का साहस नहीं था। जवाब देने के बाद उनकी प्यारी बेटी को स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि झाओ बुजियांग का लॉन्ग झान से कोई मुकाबला नहीं है। झाओ बुजियांग ने ईमानदारी से कहा, इस विनम्र सेवक की कोई राय नहीं है। एक विषय के रूप में महामहिम की राय इस विनम्र सेवक की राय है। टच लॉन्ग झान ने झाओ बुजियांग की चापलूसी भरी और सिद्धांतहीन राय सुनी। वह झाओ बुजियांग इस बेकार वारिस को नीची नजर से देखने लगा। चिबा हिजाओ ने भी मन ही मन उपहास किया। मूल रूप से ये जानते हुए कि झाओ बुजियांग झेनबेई राजा का पुत्र था, वह अभी भी उसके अपने पिता के व्यवसाय को विरासत में लेने और हान सांग के खिलाफ लड़ने से सावधान थी। अब ऐसा लग रहा था कि झेनबेई राजा की प्रतिष्ठा दुनिया भर में हिल गई थी, लेकिन उसका बेटा बेकार था और उससे डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि केवल ली ज़ायुआन ने झाओ बुजियांग के शब्दों को अलग नजर से देखा। एक प्रजा के रूप में महामहिम की राय इस विनम्र सेवक की राय है। गरीबी में जन्मे पूर्व झेनबेई राजा ने हमेशा अपने बड़े भाई का अनुसरण किया। वह उनके किसी भी आदेश को सुनता और अपने कार्य में समर्पित हो जाता। उन्होंने झाओ बुजियांग में झेनबेई राजा की छाया देखी। वह वान वान जैसा दिखता है। इसके अतिरिक्त ये जानते हुए कि उसके पिता हान सांग के साथ युद्ध में मारे गए थे, झाओ बुजियांग ने दुश्मन के दूत को देखकर गुस्सा नहीं किया, ताकि वह महान जिया का आचरण दिखा सके। ये कहना ही पड़ेगा कि लॉन्ग झान की तीक्ष्णता की तुलना में झाओ बुजियांग की हरकतें और भी बेहतर थीं। कम से कम वह सम्राट को अधिक पसंद था। झाओ बुजियांग को नहीं पता था कि ली ज़ायुआन क्या सोच रहा था। मेरा जवाब काफी आलसी और सिद्धांतहीन है ना? जब तक मैं बेकार होने का नाटक करता रहूंगा, कोई भी मेरी ओर ध्यान नहीं देगा और मैं गुप्त रूप से जीवित रह सकता हूं और विकास कर सकता हूं। झाओ बुजियांग के आंतरिक विचारों ने ली युनरुई को मुस्कुराहट दबाने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें वसंत से भर गईं। वह अपने पिता को समझ गई थी। जिस तरह से उसके पिता झाओ बुजियांग को देख रहे थे, वह बहुत अधिक संतुष्ट था। मेरी राय में महान जिया राजवंश शांति वार्ता कर सकता है, लेकिन मुआवजा नहीं दे सकता। बोलते समय ली ज़ायुआन ने झाओ बुजियांग पर प्रशंसा भरी नजर डाली। TWKAN.COM चिहिरो तेरुतेरु को यह उम्मीद थी कि महान जिया राजवंश आसानी से समझौता नहीं करेगा। सम्मेलन का विषय बहुत बड़ा है। इस समय अध्ययन पुस्तकों के विद्वत्तापूर्ण वातावरण से भरा हुआ है। ऐसे सुंदर दृश्य के अंतर्गत पहले सुंदरता की बात क्यों नहीं की गई? चिहिरो तेरुतेरु ने विषय बदलते हुए आगे पीछे चलते हुए कहा, ऐसा हुआ कि मैंने कुछ दिन पहले कविता की एक पंक्ति लिखी, लेकिन मैं अगली पंक्ति के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। मैंने लंबे समय से सुना है कि ग्रेट जिया साहित्यिक दुनिया का खजाना है, जहां बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग उभर रहे हैं। झाओ बुजियांग किनारे पर उग गया था। वह जानता था कि यह मूल कथानक के तहत हो रहा है। इसके बाद चिहिरो तेरुतेरु ने उन्हें संस्कृति से दबाना चाहा, और अब समय आ गया था कि लॉन्ग झान शांत रहे। बात बस इतनी है कि मूल रचना में उस समय वह पहले ही मर चुका था और अब भी वह दृश्य में है। लेकिन यदि वह घटनास्थल पर भी है तो वह मृत होने का नाटक कर सकता है। चिहिरो तेरुतेरु ने अपने होठों को गीला किया और उन्हें हल्के से चाटा। हंसांग में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला के रूप में इस समय उसके दिल में गर्व की लहर दौड़ गई और अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा से ग्रेट जिया को दबाने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। उसने अपनी छाती को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे पहले से ही भरी हुई उसकी वक्रता और भी अधिक सीधी हो गई, और उसकी आवाज स्पष्ट और ठंडी थी जब उसने कविता की आधी पंक्ति बोली। दुनिया भर के पुण्यवान और वीर बुजुर्गों से मित्रता करो। मैं सोच रहा हूं कि क्या यहां कोई मुझे अगली पंक्ति पूरी करने में मदद कर सकता है।
जैसा कि अपेक्षित था, ये वाक्य यही है। मुझे नहीं पता कि मूल रचना लिखने वाले कुत्ते के लेखक ने इसे कहां से कॉपी किया है। मुझे याद है कि अगला वाक्य है, हमेशा धुंधली चांदनी नदियों और पहाड़ों के स्वामी बने। झाओ बुजियांग ने अपने दिल में बड़बड़ाया, अपना सिर उठाया और ली यूनरुई से आंखें मिलाईं। हम, ली यूनरुई हर समय मुझे क्यों घूर रहा है? मुझे लगता है कि यह आदमी मुझे फिर से धोखा देना चाहता है। नहीं, मुझे लाइमलाइट से बचना है।
झाओ, ली यूनरुई उसे बुलाने ही वाला था, जब उसने झाओ बुजियांग को तुरंत ली जैयुवान को सलाम करते हुए सुना।
महाराज, मुझे अचानक अस्वस्थ महसूस हो रहा है और मैं शौचालय जाना चाहता हूँ।
ली जैयुवान ने झाओ बुजियांग पर नजर डाली। झाओ बुजियांग आमतौर पर अज्ञानी और अकुशल है। यह अच्छा है कि वह यहाँ खुद को शर्मिंदा करने के लिए नहीं रुका, क्योंकि वह कविता नहीं लिख पाया।
मंजूर किया गया। झाओ बुजियांग को सिर झुकाए शाही अध्ययन कक्ष से बाहर जाते हुए देखा।
लॉन्ग झान ने अपने दिल में ठंडी सांस ली, फिर भाग गए।
हे हे, झाओ बुजियांग के कायरतापूर्ण व्यवहार ने उसे और भी अधिक घृणित बना दिया।
चेहरों तेरु तेरु के होंठ अनायास ही मुड़ गए। झेनबेई के राजकुमार का यह इकलौता बेटा जितना अधिक काय है, वह उतनी ही अधिक निश्चिंत है।
केवल ली यूनरुई ने मुंह हिलाया। उसने सुन लिया था कि झाओ बुजियांग अपने दिल में क्या सोच रहा था।
झाओ बुजियांग किसी भी तरह से सुर्खियों में नहीं आना चाहता था।
दुनिया भर के पुण्यवान और वीर बुजुर्गों से दोस्ती करो, हमेशा धुंधली चांदनी नदियों और पहाड़ों के स्वामी बनो।
क्या झाओ बुजियांग ने अभी अभी इसका आविष्कार नहीं किया है?
जैसा कि अपेक्षित था, वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी प्रतिभा को छुपाते हैं।
शांत और बहुत प्रतिभाशाली, झाओ बुजियांग अध्ययन कक्ष से बाहर निकलने के बाद एक बगीचे में टहलने चला गया।
बगीचे में सैकड़ों फूल सुंदरता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।
जंगल में खड़ा एक पेड़ हवा से नष्ट हो जाएगा, और फूल भी।
झाओ बुजियांग ने सबसे सुंदर फूल तोड़ा और धीरे से बुदबुदाया,
आप कौन हैं? आप इस शाही बगीचे में कैसे हो सकते हैं?
सवाल सुनकर झाओ बुजियांग ने अपनी नजरें घुमाकर देखा।
कुछ ही दूरी पर एक सुंदर महिला खड़ी थी। पहली नजर में वह एक युवा महिला थी, लेकिन करीब से देखने पर उसके नाजुक चेहरे पर समय के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे।
तो वह एक सुंदर जवान औरत थी।
झाओ बुजियांग, सुंदर युवती ने झाओ बुजियांग को देखा और उसे पहचान लिया।
जिस व्यक्ति ने उसके फूलों के आनंद में खलल डाला था, वह झेनबेई के दिवंगत राजकुमार का इकलौता पुत्र था।
एक अशिष्ट बदमाश, झाओ बुजियांग, एक कुख्यात प्रतिष्ठा के साथ।
सुंदर युवती ने धीरे से सिसकारी भरी,
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं फूलों की प्रशंसा करते हुए ली जायुआन की छोटी बहन ली झाओहुआ से मिल गई।
ली झाओहुआ के बारे में वास्तव में चुलबुली होने की अफवाह है।
यद्यपि इस हरम में केवल हिजड़े और महिलाएं ही हैं, फिर भी यहां मंत्री भी हैं जिन्हें सम्राट की अनुमति से कभी कभी बुलाया जाता है।
इस वेश्या ने केवल एक धुंधली स्कर्ट पहनी हुई है और मैं हल्की धुंध के माध्यम से उसकी चोली पर कमल के फूल की कढ़ाई भी देख सकता हूँ।
झाओ बुजियांग को भी याद आया कि यह युवती कौन थी। उसने धीरे से सलाम किया।
नमस्कार राजकुमारी, लेकिन ली झाओहुआ ने झाओ बुजियांग को जवाब नहीं दिया क्योंकि वह स्तब्ध थी।
झाओ बुजियांग ने केवल एक वाक्य कहा, लेकिन वह झाओ बुजियांग से इतना कुछ कैसे सुन सकती थी?
अजीब और विचित्र, वो अचानक मुझे क्यों घूर रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मुझ पर फिदा हो गई हो?
मैंने सुना है कि इस फूहड़ ने अपनी हवेली में कई पुरुष रखेलें पाली हैं।
अब तक एक भी पुरुष रखेल उसकी राजकुमारी की हवेली से जीवित बाहर नहीं निकला है।
उसका कोई पति नहीं है, उसने कभी शादी नहीं की है और वह हमेशा अपने शयन कक्ष में अकेली रहती है।
अब जब वह भेड़िए की तरह भूखी होने की उम्र में पहुंच गई है, तो वह किसी पुरुष के लिए बहुत उत्सुक होगी।
नहीं, मुझे चुपचाप चले जाना होगा, कहीं ऐसा न हो कि वह मुझ पर मोहित हो जाए।
झाओ बुजियांग ने अपनी मुठियां भींच ली। मैं राजकुमारी के हित में खलल नहीं डालूंगा, मैं अब चला जाऊंगा।
इंतजार, ली झाओहुआ तेजी से आगे बढ़ी और सीधे झाओ बुजियांग को रोक दिया। उसके चेहरे पर जानलेवा आभा थी और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी।
उसे पूरा यकीन था कि वह झाओ बुजियांग की अंतरात्मा की आवाज सुन सकती है,
लेकिन वह कारण के बारे में नहीं सोच सकी, क्योंकि झाओ बुजियांग की आंतरिक आवाज ने उसे बहुत क्रोधित कर दिया था।
तुम्हारा क्या मतलब है कि वह एक आदमी के लिए बहुत उत्सुक है?
मैं, ली झाओहुआ, एक सुंदर दिखने वाली और एक राजकुमारी हूँ।
मुझे किस तरह का आदमी नहीं मिल सकता?
तुम छोटे बच्चे, बकवास कर रहे हो।
जितना अधिक ली झाओहुआ ने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह परेशान हो गई, लेकिन उसने जो सुना वह एक आंतरिक आवाज थी, और उसके पास झाओ बुजियांग के लिए चीजों को सीधे मुश्किल बनाने के लिए कोई सबूत नहीं था।
बुजियांग, झेनबेई का राजकुमार, देश के प्रति वफादार था। उसने उत्तरी सीमा पर लड़ाई लड़ी, ली परिवार के देश की रक्षा की और कड़ी मेहनत की, लेकिन उसकी मृत्यु उत्तरी सीमा पर हुई।
इस महल को भी उस पर दया आती है।
ली झाओहुआ ने झाओ बुजियांग की कलाई पकड़ ली और एक बुजुर्ग की चिंता के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि इस दौरान झेनबेई की हवेली के राजकुमार ठीक हैं या नहीं।
आपकी चिंता के लिए धन्यवाद राजकुमारी। झेनबेई के महल का राजकुमार अच्छा है,
अच्छा चल रहा है।
हे अच्छा चल रहा है मेरी गांड। यदि ली का शाही परिवार स्वाभाविक रूप से संदिग्ध न होता तो क्या मुझे इतना सतर्क रहने की आवश्यकता होती।
बस इंतजार करो, ली ज़ायुआन को जल्द या बाद में आपके सैनिकों के गुप्त प्रशिक्षण के बारे में पता चल जाएगा, फिर तुम कुत्ते एक दूसरे को काट सकते हो।
झाओ बुजियांग ने कृतज्ञतापूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की, लेकिन ली झाओहुआ ने झाओ बुजियांग को गौर से देखा। उसका दिमाग घूम रहा था। जो रहस्य उसने इतने लंबे समय तक छुपाया था, क्या वह झाओ बुजियांग को पता था?
उसने झाओ बुजियांग की कलाई को कसकर पकड़ लिया। अब उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे,
झाओ बुजियांग को मार डालो या फिर उसे अपने इस्तेमाल के लिए ले लो।
झाओ बुजियांग को उसका रहस्य पता था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से सम्राट को नहीं बताया था।
उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी और वह जानना चाहती थी कि झाओ बुजियांग का क्या रुख है।
अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद ली झाओहुआ ने सद्भावना बढ़ाने का प्रयास किया।
बेटा, तुम्हें मुझसे यह बात छिपाने की जरूरत नहीं है। आपके पिता और मेरे शाही भाई आपस में भाई थे और आपका यून रुई के साथ विवाह समझौता है, इसलिए मुझे आपकी चाची माना जा सकता है।
ली झाओहुआ करीब आ गई। एक नाजुक खुशबू फैल रही थी और उसके आंशिक रूप से उजागर बर्फीले स्तन थोड़े चमकदार थे।
आओ, अपनी चाची से कहो, तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा होगा, है ना? क्या ये ठीक रहेगा कि मैं नौकरों से झेनबेई राजकुमार के भवन में कुछ चांदी भिजवा दूं? इसके अलावा, चूंकि आप महल में आए हैं, तो संभवतः यह महामहिम के बुलावे पर ही आया होगा।
तुम्हें स्वयं को संयमित रखना होगा और अपनी क्षमताओं को छिपाना होगा। हमारा सम्राट हमेशा दयालु और सहनशील नहीं होता, समझे?
झाओ बुजियांग ने स्पष्ट रूप से ली झाओहुआ के उसे भर्ती करने के इरादे को महसूस किया।
ये कहना कि सम्राट अच्छा नहीं है, उसे सबसे बड़ी राजकुमारी की ओर आकर्षित करना था।
अजीब बात है, क्या इस सुंदर और आकर्षक लोमड़ी के लिए मेरा कोई महत्व है?
झाओ बुजियांग शाही परिवार के युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था।
उन्होंने सलामी में अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, बड़ी राजकुमारी की चिंता के लिए धन्यवाद, महामहिम अभी भी मुझे बुला रहे हैं, मैं विदा लेता हूँ।
ली झाओहुआ ने आंखों में मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखा।
वह पहले से ही आश्वस्त थी कि झाओ बुजियांग को उसके और उसके शाही भाई के बीच चल रहे खेल के बारे में पता था, लेकिन झाओ बुजियांग की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं थी और उसे और अधिक संपर्क बनाने की आवश्यकता थी।
झाओ बुजियांग उसी रास्ते से इंपीरियल स्टडी में लौट आया। उसका मन विचारों से भरा हुआ था। मूल पुस्तक में ली झाओहुआ को ग्रेट जिया के नंबर एक उच्छृंखल व्यक्ति के रूप में जाना जाता था।
ली ज़ायुआन को उसकी खूबियों का पता था, लेकिन जब तक ली झाओहुआ व्यक्तिगत लाभ के लिए गुट नहीं बनाता था, तब तक ली ज़ायुआन को अन्य चीजों की परवाह नहीं थी।
बस ली ज़ायुआन को ये पता नहीं था, ली झाओहुआ वास्तव में गुप्त रूप से गुटों का गठन कर रहा था।
वह अक्सर ली ज़ायुआन को भ्रमित करने के लिए अनैतिक होने का नाटक करती थी और इसका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करती थी।
बाद में ली झाओहुआ को लॉन्ग जान ने पकड़ लिया।
लॉन्ग जान ने ली झाओहुआ की छिपी हुई शक्ति भी प्राप्त कर ली और अंततः ली राजवंश को उलट पुलट करने में कामयाब हो गया।
ये कहा जा सकता है कि जिसने भी ली झाओहुआ को प्राप्त किया, उसने साम्राज्य की एक तिहाई शक्ति प्राप्त कर ली।
झाओ बुजियांग इंपीरियल स्टडी में लौट आया, ये सोचकर कि लॉन्ग जान के दिखावे के लिए विशेष रूप से तैयार की गई यह टूटी हुई साजिश भी खत्म हो जानी चाहिए।
मैं सम्राट को नमस्ते कहूंगा और घर जाऊंगा,
झाओ बुजियांग ने मन ही मन सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता,
ली युनरुई सीधे दौड़कर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया।
जब वह फुसफुसाते हुए बोली तो उसका स्वर फटकारपूर्ण था,
झाओ बुजियांग, आप कविताओं का मिलान करने क्यों नहीं गए? आप स्पष्ट रूप से लॉन्ग जान और चिबा हिनाता से अधिक प्रतिभाशाली हैं, आपने इसे क्यों नहीं दिखाया?
नहीं बड़ी बहन, आपने कहाँ देखा कि मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ?
मैं एक छोटा सा खलनायक हूँ, ठीक है, एक असाधारण और अनैतिक युवा मास्टर, मुझे अपने चरित्र सेटिंग का सम्मान करने और कम प्रोफाइल रखने की आवश्यकता है।
झाओ बुजियांग सतह पर चुप रहा, खामोशी से जवाब देता रहा, ली युनरुई पर ध्यान नहीं देना चाहता था।
लेकिन ली युनरुई ने उसके आंतरिक विचार सुन लिए और अपना पैर पटक दिया।
उसे लगा कि उसका भावी पति साहित्य और युद्ध कला दोनों में अद्वितीय होना चाहिए, वह अपनी प्रतिभा को कैसे छिपा सकता है?
धन संपदा लेकर घर लौटना रात में ब्रोकेट पहनकर परेड करने जैसा है।
ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि झेनबेई राजा की मृत्यु के बाद झाओ बुजियांग ने अपनी सुरक्षा की भावना खो दी थी।
उसकी मंगेतर होने के नाते उसे प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उसका अधिक समर्थन करना चाहिए।
ये देखकर कि लॉन्ग जान बोलने ही वाला था,
ली युनरुई पहले चिल्लाए,
दूसरी पंक्ति है, अक्सर नदियों और पहाड़ों पर धुंधले चंद्रमा का स्वामी बनो।
इसका प्रतिपक्ष उत्तम था और इसमें स्वतंत्रता और साहस की भावना भी थी। लॉन्ग जान ने वे शब्द निगल लिए जो वह कहने वाला था।
अजीब, वह वाक्य अभी मेरे दिमाग में भी कौन था, सातवीं राजकुमारी ने इसे पहले क्यों कहा?
जैसी की उम्मीद थी, वह और मैं एकमत हैं, वह एक ऐसी महिला है जो मेरी होनी चाहिए, लॉन्ग जान।
लॉन्ग जान आश्चर्यचकित था और अभी भी कल्पना कर रहा था।
चिबा हिनाता ने आकर्षक सातवीं राजकुमारी को आश्चर्य से देखा।
अक्सर नदियों और पहाड़ों पर धुंधले चांद की मालकिन बनो, अच्छी 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 मेरी बेटी होने के योग्य।
लीजा युआन को सबसे अधिक सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे हमेशा से ही लेखन और स्याही का शौक था। ऐसा लग रहा था कि उनकी सबसे प्रिय बेटी को उनकी प्रतिभा विरासत में मिली है।
हम लॉन्ग जान ने अभी तक दिखावा नहीं किया है, राजकुमारी ने पहले दिखावा क्यों किया?
कथानक गलत है, जबकि झाओ बुजियांग हैरान था। अगले ही पल्ली युनरुई के शब्दों ने सभी का मूड उलट दिया।
पिताजी, झाओ बुजियांग ने मुझे सिखाया।
लानत है, मैंने तुम्हें कब पढ़ाया, मेरी इतनी प्रशंसा मत करो।
झाओ बुजियांग ने मन ही मन कोसा।
वह बिल्कुल भी सुर्खियों में नहीं आना चाहता था और उसने ली युनरुई को कब पढ़ाया था।
लॉन्ग जान हैरान रह गया, उसकी अभिव्यक्ति और भी भद्दी हो गई। राजकुमारी, इतनी विनम्र मत बनो।
लॉन्ग जान ये स्वीकार कर सकता था कि सातवीं राजकुमारी उसके साथ तालमेल बिठा रही थी, इसलिए उसने उसके सामने कविता कही, लेकिन वह ये कतई स्वीकार नहीं कर सका कि वह झाओ बुजियांग जैसे निकम्मे व्यक्ति से हार गया।
चिबा हिनाता की आंखें घूम गईं और उसने कहा,
राजकुमारी मजाक कर रही है, क्या ये ठीक रहेगा, मैं एक और पंक्ति बोलूंगा और देखूंगा कि क्या युवा मास्टर झाओ इसका मुकाबला कर सकते हैं।
लोहे के कंधों पर नैतिकता है, कृपया युवा मास्टर दूसरी पंक्ति बताएं।
झाओ बुजियांग ने कटु चिंतन का दिखावा किया, जैसे कि वह कुछ भी सोच नहीं पा रहा हो।
वह दिखावा नहीं करना चाहता था।
ली युनरुई ने प्रत्याशा से उसकी ओर देखा।
ली जैयुआन झाओ बुजियांग की जांच कर रहे थे।
ये देखकर कि झाओ बुजियांग ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इसका मुकाबला कर सकता है, वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका।
ऐसा लग रहा था कि उसकी प्यारी बेटी झाओ बुजियांग को लॉन्ग जान से पीछे नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर कहा कि झाओ बुजियांग ने उसे दूसरी पंक्ति सिखाई थी।
चिबा हिनाता ने झाओ बुजियांग को सोचने का समय दिया।
ये देखकर कि झाओ बुजियांग अभी भी आधा वाक्य भी नहीं बोल पा रही थी, उसके शब्दों में उपहास झलकने लगा।
युवा मास्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं उन्हें इसके लिए खुद को दोषी ठहराना है।
आपके पिता को हेनसांग ने पराजित किया था, इसलिए आप हेनसांग के दूध से मेरी कविता की बराबरी नहीं कर सकते।
इसे बेटे द्वारा अपने पिता का व्यवसाय विरासत में प्राप्त करने के रूप में भी देखा जा सकता है, हा हा।
चिबा हिनाता के शब्दों ने झाओ बुजियांग के दिल के सबसे कोमल हिस्से को उत्तेजित कर दिया।
एक वफादार और देशभक्त सीमा युद्ध देवता जो अपने देश की रक्षा के लिए मर गया, वह दुश्मन को अपने दरवाजे पर आकर अपनी लाश को कोड़े मारने की इजाजत कैसे दे सकता था?
दूसरी पंक्ति है, कुशल हाथ वस्तुएं बनाते हैं।
झाओ बुजियांग के शब्दों ने चिबा हिनाता की उपहासपूर्ण मुस्कान को तुरंत गायब कर दिया।
यह अच्छा, बहुत बढ़िया,
ली युनरुई प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ा, झाओ बुजियांग की बांह पकड़ ली, चिबा हिनाता को घूरा और ली जायुआन को देखा।
पिताजी, मैंने कहा था कि झाओ बुजियांग बहुत प्रतिभाशाली है ना?
ली जायुआन ने भी संतुष्टि में सिर हिलाया।
असंभव, तुम,
चिबा हिनाता अभी भी बहस करना चाहता था,
लेकिन चून की झाओ बुजियांग ने जवाबी हमला करने का इरादा किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से पहल करेगा, उसने ठंडे स्वर में कहा।
यदि हिनसांग दूत आश्वस्त न हो तो मुझसे कुछ वाक्य ले लें।
चिबा हिनाता को मना करने का मौका दिए बिना,
पीली नदी का पानी आकाश से आता है, समुद्र में चला जाता है और कभी वापस नहीं आता।
बोधि जल की कुछ दयनीय बूंदें लाल कमल की दो पंखुड़ियों में डाली गईं।
सुनहरी सुइयां आड़ू के स्त्री के सर को छेदती हैं, पर जोर से कराहने की हिम्मत नहीं करती।
मंदारिन एक डबल रात के लिए रजाई में डूब जाता है, एक नाशपाती का फूल क्रैबएप्पल को दबाता है।
हाँ, तुम सही हो, तुम सही हो,
झाओ बुजियांग ने कई चालें चली।
चिबा हिनाता को लगा कि कविता की ये कुछ पंक्तियां, सबसे पहले उनमें पहाड़ों और नदियों को निगलने की शक्ति थी, फिर वहां पुरुषों और महिलाओं के एक साथ सोने का रोमांटिक मामला था जो झाओ बुजियांग की अफवाहों के अनुरूप था।
हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कविता प्रतिभा से भरी थी और झाओ बुजियांग इतना रोमांटिक लेकिन भद्दा व्यक्ति नहीं था।
वह अवाक थी, एक क्षण के लिए तो वह कोई संतोषजनक दूसरी पंक्ति ही नहीं सोच सकी।
चिबा हिनाता, इस हेनसांग दूत की उदास उपस्थिति सभी द्वारा देखी गई थी।
ली जैयुआन प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके।
अच्छा, मंत्री झाओ काफी प्रतिभाशाली हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
लॉन्ग जान का दिल और अधिक उदास हो गया।
इस बच्चे को इतनी प्रतिभा कहाँ से मिली? क्या उसने इसे पहले से याद कर लिया था, या सातवीं राजकुमारी ने उसे सिखाया था?
किसी भी मामले में झाओ गुजियांग कोर्ट पर हावी होने की उनकी महत्वाकांक्षा के लिए बहुत बड़ी बाधा है और उसे समाप्त किया जाना चाहिए। चूंकि हान सांग के दूत के पास प्रतिभा की कमी है, इसलिए आइए शांति वार्ता के बारे में बात करें। अबचिबा हिनाता को झाओ गुजियांग द्वारा दबा दिया गया था। ली ज़ायुआन ने इस अवसर का उपयोग संधि को पुनः वार्ता के लिए लाने तथा शर्तों को कम करने के लिए किया। चिबा हिनाता ने भौहें सिकोड़ी। उसकी गर्वित प्रतिभा झाओ गुजियांग के सामने दब गई और वह अब शाही अध्ययन कक्ष में नहीं रहना चाहती थी। महाराज, क्या मैं पहले माफी मांग सकता हूं और कल जवाब दे सकता हूं? ली ज़ायुआन ने एक राजसी उपस्थिति के साथ सहजता से अपना हाथ हिलाया। चिबा हिनाता ने अपनी लंबी आस्तीन को हल्के से झटका, उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे। जाने से पहले उसने झाओ गुजियांग पर गहरी नजर डाली। इस चेहरे को, जिसकी उसने पहले कभी परवाह नहीं की थी, अपने मन में गहराई से अंकित कर लिया। हान सांग के दूत चिबा हिनाता के चले जाने के बाद ली ज़ायुआन ने एक पल के लिए सोचा और झाओ गुजियांग को देखा। वे सभी कहते हैं कि आप अशिक्षित और अप्रेरित हैं, आपके पास ऐसी प्रतिभा कब आई? ली ज़ायुआन को अपनी बेटी से पता चला कि झाओ गुजियांग अपनी क्षमताओं को छुपा रहा था। शुरू में तो उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन अभी झाओ गुजियांग ने उत्कृष्ट कलात्मक अवधारणा के साथ कविता की कई पंक्तियां लिखीं। इससे वह झाओ गुजियांग से और अधिक सतर्क हो गया। मुझे पता था कि बूढ़ा सम्राट ये पूछेगा। झाओ गुजियांग ने अपनी आंखें नीची कर लीं और सिर हिला दिया। वास्तव में उसे अभी अभी इसका पछतावा हुआ था, क्योंकि द्वीप देश नियंत्रण से बाहर हो रहा था और उसके पिता का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए उसने अभी भी पीछे नहीं हटना चाहा। उसने आंखें घुमाई और उस खूबसूरत युवती के बारे में सोचा जिसने अभी अभी उसके प्रति सद्भावना दिखाई थी। एक उपकार क्यों न किया जाए? महाराज, यह विनम्र मंत्री ही प्रतिभाशाली नहीं है। अभी अभी जब मैं मेज से उठ रहा था, मुझे महारानी ज्येष्ठ राजकुमारी से मिलने का सम्मान प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी राजकुमारी ने देखा कि मैं उदास हूं, तो उसने मुझसे इसका कारण पूछा। मैंने देखा कि हान सांग दूत आक्रामक रूप से आ रहा था, कविता और संस्कृति के साथ हमारे महान जिया को दबाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने महारानी सबसे बड़ी राजकुमारी से मदद मांगी। महारानी ज्येष्ठ राजकुमारी को पता चला कि हान सांग दूत का इरादा बुरा था, तो उसने मुझे कुछ पंक्तियां सिखाई। तो ये झाओ हुआ है। ली ज़ायुआन की थोड़ी सिकुड़ी हुई भौं धीरे धीरे ढीली पड़ गई। ये पता चला कि झाओ गुजियांग सिर्फ एक संदेशवाहक था। वह जानता था कि उसकी छोटी बहन को पढ़ना पसंद है। हालांकि अतीत में उसने अपनी छोटी बहन को केवल फिजूल खर्ची और आनंद में लिप्त देखा था, जिससे ली शाही परिवार का अपमान होता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह महान जिया के सम्मान और अपमान के बारे में चिंतित होगी। मेरा आदेश सुनाओ, खजाना मंडप में जाओ और सबसे बड़ी राजकुमारी के लिए उपयुक्त खजाने का चयन करो और उन्हें झाओहे महल भेज दो। घर के बाहर से मुख्य खोजे की ओर से सम्मानजनक उत्तर आया। ली ज़ायुआन ने फिर से लॉन्ग जान की ओर देखा। आज आपका प्रदर्शन भी अच्छा था। आपने ग्रेट जिया की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को अपमानित नहीं किया। इसके अलावा जाओ और अपना पुरस्कार प्राप्त करो। धन्यवाद महाराज। लॉन्ग जान ने अपनी मुठियां बंद की और चला गया, लेकिन उसका दिल अनिच्छा से भरा था। आज का परिणाम उनकी अपेक्षा से बहुत अलग था। जिसे सुर्खियों में होना चाहिए था, वह स्पष्ट रूप से वह स्वयं थे। सम्राट का मतलब भी बहुत स्पष्ट था। वह चाहता था कि वह सातवीं राजकुमारी और हान सांग दूत के सामने दिखावा करे। उसने हान सांग दूत की सुंदर आकृति भी देखी और सोच रहा था कि क्या वह उसे अपने शयन कक्ष में ले जा सकता है और फिर सातवीं राजकुमारी के साथ मिलकर उसकी सेवा कर सकता है। दोनों महिलाएं मिलकर बारिश और बादलों का आनंद ले सकती हैं। लेकिन ये सब उस कमीने झाओ गुजियांग ने बर्बाद कर दिया। धत्तेरी की, झाओ गुजियांग, तुम मेरा इंतजार करो। जाने से पहले लॉन्ग जान को नाराजगी भरी नजर से देखते हुए झाओ गुजियांग ने अपने दिल में आह भरी। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था। ये ली युनरुई ही था जिसने जोर देकर कहा कि मैं दिखावा करूं। भाग्य का ये नायक शायद अब मुझे डसकर मार डालना चाहता है। झाओ गुजियांग, ली ज़ायुआन की नजरें आखिरकार झाओ गुजियांग पर केंद्रित हो गईं। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल हो गई। आपका प्रदर्शन भी बुरा नहीं था, नीचे जाओ। ली युनरुई ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। पिता बहुत अन्यायी है। लॉन्ग जान, जो बेकार था, को पुरस्कृत किया गया। झाओ गुजियांग क्यों नहीं था? झाओ गुजियांग इस बारे में कैसे नहीं सोच सकता था? यह अनुमान लगाया जाता है कि सम्राट अभी भी उसे पसंद नहीं करता है। जाने से पहले वह शांत और सम्मानजनक बने रहे। झाओ गुजियांग के चले जाने के बाद ली युनरुई यह कहने से खुद को रोक नहीं सके। पिताजी, झाओ गुजियांग ने योगदान दिया है। वह आपके प्रति वफादार, पुत्रवत और विनम्र है। ली ज़ायुआन ने अपना माथा रगड़ा, ये देखकर कि उसकी बेटी झाओ गुजियांग की ओर बहुत झुकाव रखती थी। सच कहें तो वह आज झाओ गुजियांग के प्रदर्शन से भी बहुत संतुष्ट थे। लेकिन यदि झाओ गुजियांग वास्तव में एक राजकुमार बन गया तो क्या होगा यदि उसने प्रमुखता हासिल करने का अवसर लिया और दूसरा झेनबेई राजा बन गया जो इतना शक्तिशाली था कि उसने सम्राट को पीछे छोड़ दिया। कुछ चीजों को शुरू में ही रोक देना सबसे अच्छा होता है। दूसरी ओर झाओ गुजियांग ने अभी झेनबेई राजा के भवन में आधा कदम ही रखा था कि बूढ़ा बटले उसका स्वागत करने के लिए दौड़ता हुआ आया। महाराज, सबसे बड़ी राजकुमारी के महल से आपके लिए कुछ सोना, चांदी, जवाहरात और सुंदर गहने आए हैं और वे आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। नमस्कार युवा मास्टर, हॉल में चुपचाप बैठी एक नाजुक शख्सियत खड़ी हुई और झाओ गुजियांग की तरफ थोड़ा सा सिर हिलाया। वह ज़ियाओलान थी, जो सबसे बड़ी राजकुमारी की विश्वासपात्र थी, लगभग 16 वर्ष की, सुंदर और प्यारी थी। मेरे गुरु ने ज़ियाओलान को एक संदेश देने का निर्देश दिया जिसमें कहा गया था कि अब से तुम हम में से एक हो, हमारे अपने लोग। झाओ गुजियांग की आंखें सिकुड़ गईं। सबसे बड़ी राजकुमारी ली झाओ हुआ कभी भी दरबार में किसी से मेलजोल नहीं रखती थी ताकि वह ली ज़ायुआन द्वारा गुट बनाने के आरोप में पकड़ी न जाए। मूल कहानी में मैं इस समय तक मर चुका था और ली झाओ हुआ से संबंधित कोई कथानक नहीं था। इसके अलावा अगर मैं सचमुच ली झाओ हुआ के साथ शामिल हो गया, चाहे वह लॉन्ग जान हो या ली ज़ायुआन, वे दोनों उस पर नजर रख रहे हैं। मैं इसके बारे में चाहे जैसे भी सोचूं, यह एक परेशानी है। मैं आपके विचार की सराहना करता हूं, लेकिन बहन ज़ियाओलान, कृपया जल्दी वापस आकर रिपोर्ट करें। ज़ियाओलान अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। आप विचार की सराहना करते हैं, लेकिन आइटम, वह वस्तु वापस ले लो और मेरी बातें बड़ी राजकुमारी तक पहुंचा दो। झाओ गुजियांग ने उदासीनता से कहा, पहले से ही बेदखली का आदेश जारी कर दिया गया था। लियुरियान को खोजने के लिए मुड़ा। उसके पीछे खड़ा बूढ़ा बटलर हैरान था। इस ज़ियाओलान का फिगर अच्छा है और वह जवान और सुंदर है। युवा स्वामी के पिछले व्यक्तित्व के अनुसार क्या वह उसका हाथ नहीं छुएगा, उसकी कमर को नहीं पकड़ेगा और उसका फायदा नहीं उठाएगा। लेकिन अब तो उसने उसे सीधे ही भगा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़े मालिक के गुजर जाने के बाद युवा मालिक सचमुच बड़ा हो गया हो? इस तरह से सोचने पर बूढ़े मालिक की मृत्यु कोई बुरी बात नहीं है। बूढ़े बटले को राहत मिली और उसने ज़ियाओलान को बाहर भेज दिया। दरवाजे के बाहर ज़ियाओलान को समझ में नहीं आया और उसने संकोच से कहा, आपके युवा स्वामी के विचारों का अनुमान लगाना मेरे लिए वास्तव में कठिन है। हमारी सबसे बड़ी राजकुमारी उनसे दोस्ती करने की सच्ची इच्छा रखती है। हे आंटी, आपने यंग मास्टर को गलत समझा। यंग मास्टर अब हर किसी के हमलों का लक्ष्य है, यहाँ तक कि, बूढ़े बटले ने अपनी मुट्ठी भींच ली, यहाँ तक कि वर्तमान सम्राट भी युवा मास्टर को देख रहा है। अगर वह इस उपहार को स्वीकार करता है तो क्या इससे सबसे बड़ी राजकुमारी को नुकसान नहीं होगा? ये सुनकर ज़ियाओलान की आंखें चमक उठी। तो यह ऐसा है, उसने सोचा कि झाओ गुजियांग सबसे बड़ी राजकुमारी के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उसने उसे बाहर निकाल दिया। ऐसा लगता है कि वह बहुत भोली थी। मैं निश्चित रूप से सबसे बड़ी राजकुमारी को ये ठीक से समझाऊंगा। झाओ शिजी के साथ दोस्ती करना उचित है। बूढ़ा बटल गर्व से भर गया। अगर उसने यह बात न बताई होती तो ये लोग उसके युवा मालिक को फिर से गलत समझ लेते। फिर तो मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा चाची। अल्पविराम, जेल का कमरा, ली झाओ हुआ के लोगों को भगाना सही था। मैं इन दरबारी दबंगों के साथ जितना कम उलझूंगा, मेरा जीवन उतना ही सुरक्षित रहेगा। झाओ गुजियांग के विचार सुनकर लियुरियान, जो अभी भी गहरी नींद में था, अचानक चौंक कर जाग गया। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने देखा कि झाओ गुजियांग ने उसके भरे हुए मोटे और सुडौल शरीर पर थप्पड़ मारा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ छुट्टियां मनाने आए हो और मेरे इलाके में सो रहे हो? लियुरियान की आंखों में जानलेवा आभा थी। घृणित खलनायक, कामुक बदमाश, सच्चा यांग हृदय सूत्र, मैंने इसका अभ्यास किया है, झाओ गुजियांग ने शांति से कहा। ये सुनकर लियुरियान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो क्या हुआ अगर तुमने इसका अभ्यास किया है? क्या आप सफल भी हो सकते हैं? मुझे डर है कि आप प्रवेश का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना? झाओ गुजियांग ने अपनी नाक को छुआ, क्या इस चीज का अभ्यास करना बहुत कठिन है? लियुरियान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बकवास, यहां तक कि मेरा अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली कनिष्ठ भाई भी 7 दिनों तक लगन से अभ्यास भी किया, पहले स्तर पर कदम रखने से पहले। अन्य लोग जिन्होंने 7 दिन तो दूर, यहां तक कि 49 दिन में भी कुंजी नहीं समझी है, उनके लिए पहले स्तर पर कदम रखना बहुत कठिन होगा। सच्चा यांग हृदय सूत्र उग्र और प्रभावशाली है तथा प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देता है। 7 दिन, लांग जान ने पहले स्तर में प्रवेश करने से पहले 7 दिनों तक अभ्यास किया। यह अजीब है, मैं एक रात में पहले स्तर में कैसे प्रवेश कर गया? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने इसका अभ्यास गलत किया, या मेरी प्रतिभा लॉन्ग जान से भी अधिक है? मूल कहानी के अनुसार झाओ गुजियांग की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई और उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का मौका नहीं मिला। हो सकता है कि मूल कुत्ते के लेखक ने उसकी प्रतिभा का गुण भी निर्धारित नहीं किया हो। तो क्या उसकी विशेषताएं अधिकतम पर निर्धारित हैं? जबकि झाओ बुजियांग मन ही मन प्रसन्न था। लियू रुयान, जिसने झाओ बुजियांग के विचार सुने, पहले से ही हैरान था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि झाओ बुजियांग ने एक रात के अभ्यास के बाद सच्चे यांगहॉट सूत्र के पहले स्तर में कदम रख दिया था। ये कैसी डरावनी प्रतिभा है! लॉन्ग जान पहले से ही एक प्रतिभा है जो 100 साल में एक बार दिखाई देती है। क्या ये झाओ बुजियांग शायद एक मार्शल भगवान का पुनर्जन्म है? आपके लिए पहले स्तर पर कदम रखना असंभव है। लियू रुयान का दिल धड़क रहा था और वह चिल्ला उठी, अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पहले स्तर पर पहुंच गया हूं? झाओ बुजियांग ने असमंजस में पूछा। लियू रुयान की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे इस चोर को कभी यह पता नहीं चलने देना चाहिए कि मैं उसके विचार सुन सकता हूं। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, लियू रुयान ने हठपूर्वक कहा। अभी भी गुस्सा है? झाओ बुजियांग की नज़र उस पर पड़ी। लियू रुयान को लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया था। बैंगनी रंग की जालीदार पोशाक 2 दिनों से जमीन पर रगड़ खा रही थी और थोड़ी फटी हुई थी, जिससे गोरी त्वचा दिख रही थी। विशेषकर उसकी 2 लंबी टांगें, जिनके बीच में कपड़े के कुछ टुकड़े कसकर नहीं लपेटे गए थे, जिससे पुरुष उन्हें देखकर अपनी नाक से खून बहने से नहीं रोक पाते थे। क्या तुम जानते हो कि सच्चे यांग हृदय सूत्र का प्रथम स्तर तक अभ्यास करने के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ? लियू रुयान ने दांत पीस लिए। बेशक वह जानती थी कि इसका मतलब यह है कि झाओ बुजियांग लॉन्ग जान की तरह उसके ड्रैगन पौष्टिक पवित्र शरीर का आनंद ले सकता है, हालांकि वह ऐसा होने नहीं देगी। झाओ बुजियांग, बेहतर होगा कि आप अपने छोटे विचारों पर संयम रखें। अगर मेरे संप्रदाय को पता चल गया तो तुम मर जाओगे। चिंता मत करो, उन्हें पता नहीं चलेगा। मेरे लोगों पर हर दिन बाहर कड़ी निगरानी रखी जाती है, वे अंदर नहीं आ सकते, झाओ बुजियांग ने उदासीनता से कहा। अगर वे अंदर आए तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा, फिर बिना कोई सबूत छोड़े तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। लियू रुयान का दिल ठंडा हो गया। कैसा निर्दयी आदमी है! लेकिन इस समय झाओ बुजियांग ने पहले ही अपनी बेल्ट खोलना शुरू कर दिया था। रुको, क्या तुम सचमुच पहले स्तर पर पहुंच गए हो? अगर नहीं पहुंचे हो तो तुम्हें कड़ी फटकार पड़ेगी। लियू रुयान की आवाज पहले से ही पूरी तरह से दया की भीख मांग रही थी। उसने अंततः पुष्टि की कि झाओ बुजियांग दींग नहीं मार रहा था। क्या बकवास है, वह इतना तेज कैसे हो सकता है? झाओ बुजियांग, मैं गलत था। मुझे पता है कि मैं गलत था। लियू रुयान के नाजुक चेहरे पर आंसू छलक आए। आप मुझे जाने दीजिए, मैं भविष्य में आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं पहले तो तुमसे बचना चाहता था, लेकिन तुम मुझे मारने के लिए आधी रात को मेरे दरवाजे पर आ गए। क्या यह उचित नहीं होगा कि मैं तुमसे कुछ दिलचस्पी लूं? आप, लियू रुयान अभी भी विरोध करना चाहती थी, लेकिन झाओ बुजियांग ने उसे दवा की कुछ और खुराकें खिला दी। क्या ये फिर से सॉफ्ट बोन पाउडर है? नहीं, इस बार मैंने कुछ सामग्री मिलाई है। मुझे आशा है कि आपका ड्रैगन नरिशिंग होली बॉडी मुझे निराश नहीं करेगा। झाओ बुजियांग मुस्कुराए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लियू रुयान को अचानक अपनी त्वचा में जलन महसूस हुई और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। एक ही समय पर मोहरा घुड़सवार सेना के मार्शल का निवास। लॉन्ग जान का चेहरा उदास था। आज झाओ बुजियांग की छाया में रहने से वह बहुत दुखी हो गया। उसी समय पांचवी बहन ने कहा कि वह उसके लिए झाओ बुजियांग से छुटकारा पा लेगी। लेकिन अब झाओ बुजियांग जीवित और सक्रिय है और लियू रुयान कहीं नहीं मिल रहा है। पांचवी बहन के बिना मैं अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी आग कैसे निकाल सकता हूँ? जैसे ही लॉन्ग जान निराश महसूस कर रहा था, घर के बाहर एक सुंदर बैंगनी रंग की आकृति अंदर आई, जो दिखने में सुंदर और आकर्षक थी। वह लियू रुयान थी। पांचवी बहन, तुम कहाँ थी? लॉन्ग जान जल्दी से उसका अभिवादन करने गया। वह पहले लियू रुयान को गले लगाना चाहता था और उसके कोमल और सुगंधित शरीर का आनंद लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही लॉन्ग जान ने अपना हाथ बढ़ाया, लियू रुयान ने अचानक अपनी हथेली से हल्का सा प्रहार किया। धीमी गति से चलने वाला यह विमान एक पल में ही आ गया। लॉन्ग जान समय रहते बच नहीं सका और सीधा उड़कर सीढ़ियों से जा टकराया। पांचवी बहन, आप! लॉन्ग जान की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं और उसकी आंखें अचानक कांपने लगीं। उसने लियू रुयान का रूप बदलते हुए, उसे एक दूसरी महिला में बदलते हुए देखा। जल नीले रंग की पोशाक पहने हुए, वह अमर के समान पवित्र और शीतल थी। लियू रुयान के आकर्षण और सम्मोहन से पूरी तरह अलग यह महिला सांसारिक मामलों से ऊपर थी, किसी भी पुरुष को अपनी नजरों में नहीं रखती थी। जूनियर भाई, आपकी मार्शल आर्ट ढीली हो गई है, औरत ने ठंडे स्वर में कहा। तभी लॉन्ग जान को इस आकृति परिवर्तन की तकनीक का पता चला। यह संप्रदाय के अद्वितीय कौशलों में से एक था, दर्पण पुष्प जल चंद्रमा। और उसके सामने खड़ी महिला लियू रुयान नहीं थी, बल्कि उसकी चौथी बहन लिंग किंगक्सु थी। नमस्कार चौथी बहन, लॉन्ग जान ने तुरंत झुककर सलाम किया। उसने लिंग किंगक्सु पर भी एक नजर डाली। ये वरिष्ठ बहन अभी भी कुंवारी थी, शुद्ध और बेदाग, लियुरियान से भी अधिक आकर्षक। बात बस इतनी थी कि लिंग किंगक्सू ने हमेशा उसे नीची नजर से देखा था, इसलिए लॉन्ग जान केवल इंतजार कर सकता था, तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि वह एक दिन उसे जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। रुयान कहाँ है? लिंग किंगक्सू शान से तैरता हुआ मुख्य सीट पर बैठ गया। लॉन्ग जान ने पूरी कहानी बता दी, बेशक कुछ संशोधनों के साथ जो उसके लिए अनुकूल थे। लापता, तुम एक बेकार वारिस के साथ भी व्यवहार नहीं कर सकते। लिंग किंगक्सू का चेहरा जानलेवा इरादे से भर गया और भी ठंडा हो गया। मुझे पता है कि तुम दोनों ड्रैगन नर्चरिंग से क्रेट बॉडी के साथ अभ्यास करते हो, दिन भर एक दूसरे से उलझे रहते हो, लेकिन यह अंततः सहायक है। आपको अभी भी अपनी मार्शल आर्ट का लगन से अभ्यास करने की जरूरत है, अन्यथा आप झाओ गुजियांग को भी संभालने में असमर्थ होंगे। लॉन्ग जान ने अपनी आंखें नीची कर ली और अपने हाथों को कपड़े की तरह बनाते हुए कहा, वरिष्ठ बहन बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अब झाओ गुजियांग सातवीं राजकुमारी द्वारा संरक्षित है। अगर मैं उसके खिलाफ कदम उठाऊंगी तो यह आसानी से शाही परिवार के असंतोष को भड़का देगा। लिंग किंगक्सू ने लॉन्ग जान की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, झाओ गुजियांग इस लायक नहीं है कि हम व्यक्तिगत रूप से उस पर कार्रवाई करें। लॉन्ग जान ने सोचा, वरिष्ठ बहन का क्या मतलब है? लिंग किंगक्सू ने सब कुछ नीचे देखा और ठंडे स्वर में कहा, मेरे आने से पहले मुझे पता चला था कि हानसांग साम्राज्य से कोई व्यक्ति झेनबेई राजकुमार के भवन में गया था, शायद किसी मामले के लिए, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब समय आएगा तो आप घटनास्थल पर सेना लेकर जाएंगे और सीधे झाओ गुजियांग पर हानसांग के साथ मिलीभगत करने और देश को धोखा देने का आरोप लगाएंगे। उस समय वह अपना बचाव नहीं कर सकेगा। सम्राट को पहले से ही झेनबेई राजकुमार के भवन पर संदेह है और स्वाभाविक रूप से वह उसे कैद कर लेगा। उस समय आपके आधिकारिक पद के कारण जेल में उससे निपटना आसान होगा। लॉन्ग जान की आंखें चमक उठी। क्या शानदार योजना है। चौथी बहन को राजधानी पहुंचते ही ऐसी जानकारी मिल गई थी, उसकी क्षमताएं वास्तव में पांचवी बहन से कहीं अधिक थी। अगर मैं उसे जीत सकता हूं तो क्या मेरी लॉन्ग जान में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आएगा? जूनियर भाई तुरंत कार्रवाई करेंगे। जल्द ही मोहरा घुड़सवार सेना की एक टीम रवाना हो गई। अल्पविराम, झेनबेई प्रिंस की हवेली, कालकोठरी। लियुरियान ने अपनी फटी हुई पोशाक को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर दुख और आक्रोश था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। अपने सामने झाओ गुजियांग को देख रही थी। वह पहले से ही वहां पैर पर पैर रखकर ध्यान कर रहा था। लियुरियान ने झाओ गुजियांग की आंतरिक शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस किया, जो अधिक से अधिक शक्तिशाली और दबंग होती जा रही थी। इस व्यक्ति ने वास्तव में अपने ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर का उपयोग किया और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। कितना नुकसान। झाओ गुजियांग, आज तुमने मुझे जो अपमान दिया है मैं उसका दोगुना बदला अवश्य चुकाऊंगा। झाओ गुजियांग ने अपने शरीर में प्रचुर शक्ति महसूस की और मुस्कुराया, ठीक है तो मैं अब आपको फिर से अपमानित करूंगा। रुको, तुम अभी नहीं आए। लेकिन झाओ गुजियांग को उसकी दया की भीख की परवाह नहीं थी। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर का उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। एक ही समय पर जेल की कोठरी के बाहर बूढ़े बटलर झाओ मनफू की रिपोर्ट आई। महाराज, हानसांग के दूत आपसे मुलाकात का अनुरोध कर रहे हैं और वे पहले ही हमारे भवन के बाहर आ चुके हैं। क्या ने रिहुआ इस समय यहाँ क्या कर रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने आज उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और वह परेशानी खड़ी करने आई? ये सुनकर कि कोई झाओ गुजियांग को ढूंढ रहा है, लियुरियान को एक उद्धारकर्ता दिखाई दिया। झाओ गुजियांग, तुम आगे बढ़ो और काम में लग जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं भागूंगा नहीं। लेकिन झाओ गुजियांग ने जेल की कोठरी के बाहर चिल्लाकर कहा, मैं व्यस्त हूं, उनसे कहो कि चले जाएं। अल्पविराम, झेनबेई राजकुमार की हवेली के बाहर। क्या ने रिहुआ पालकी में बैठी, पर्दा उठाया और भौहें सिकोड़ ली। जब उसने अभी भी बंद गेट देखा तो उसकी भौहें और भी ठंडी हो गईं। प्रभु कियाने, झाओ गुजियांग आपसे मिलने के लिए बहुत काय नहीं होगा, है ना? कोचवान हानसांग दूत का द्वितीय पदस्थ अधिकारी था तथा हानसांग साम्राज्य के अधिकांश लोगों की तरह वह भी छोटे कद का था। ऐसा नहीं होगा, भले ही इस काय में मुझे देखने की हिम्मत न हो, लेकिन वह मुझे न देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। कियाने रिहुआ ने आत्मविश्वास से भरी अपनी पतली उंगलियों से अपने खूबसूरत बालों को कंघी किया। झेनबेई राजकुमार मर चुका है और झेनबेई राजकुमार का भवन भी जर्जर हो चुका है। दक्षिया में एक प्राचीन कहावत है, बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। झाओ गुजियांग दिखावा करने और हमसे मिलने से इनकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। देखो, वह आ रहा है। गेट खुलने की आवाज आए और वह बाहर निकलने के लिए गाड़ी का पर्दा उठा दिया, लेकिन गेट केवल एक दरार खुला। मेहमानों का स्वागत करने का कोई इरादा नहीं था। बूढ़े बटलर ने जोर से कहा, मेरे स्वामी, वारिस ने आपसे कहा है कि चले जाओ। क्या ने रिहुआ की हरकतें ठिठक गईं। उसने अविश्वास से बूढ़े बटले की ओर देखा। एक क्षण के लिए उसे संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है। झेनबेई राजकुमार का भवन अब गिर चुका है। झाओबुजियांग को उसे अपमानित करने का साहस कहां से मिला? यागा, क्या ने रिहुआ का चेहरा गुस्से से भर गया। कोचवान ने उसकी ओर देखा लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन कियाने रिहुआ जानती थी कि उसने अभी अभी विश्वास के साथ कहा था कि झाओबुजियांग उसे देखे बिना हिम्मत नहीं करेगा। अब उसके चेहरे पर तमाचा मारा गया था। ये छोटे बच्चे मन ही मन उस पर हंस रहे होंगे। वह इतनी क्रोधित थी कि उसकी छाती धड़क उठी। चौड़ा लबादा अब उसके उभरे हुए उभारों को छिपा नहीं सकता था। उसने अपनी आंखें घुमाई और जानबूझकर कहा, तुम झाओ शिजी से फिर से कहो, क्या तुम झेनबेई राजकुमार के अवशेष लेने की योजना नहीं बना रहे हो? बूढ़ा बटलर दंग रह गया। बूढ़े स्वामी की उत्तरी सीमा पर लड़ाई में मृत्यु हो गई और वास्तव में उनके अवशेष वापस नहीं आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे हान सांग डाकुओं के हाथों में पड़ गए हों? वह जानता था कि स्थिति गंभीर है। वह तुरंत पूछने के लिए तहखाने में गया। कुछ ही देर में बूढ़ा बटलर वापस आ गया। कियाने रिहुआ ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि झाओबुजियांग को पहले से ही पता है कि उसके पिता के अवशेष हमारे हाथों में हैं। जल्दी से दरवाजा खोलो। लेकिन बूढ़े बटलर ने दरवाजा भी नहीं खोला, केवल अपना सिर बाहर निकाला। मेरे स्वामी ने कहा, बस उसके लिए अवशेष जला दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राख कहाँ बिखरी है। इन्हें दक्षिया में बिखेरना अपने वतन में वापसी माना जाता है। उन्हें हान सांग में फैलाना छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन है। बूढ़े बटलर ने झाओबुजियांग का संदेश सुनाने के बाद गेट फिर से बंद कर दिया। नानी, चिबा रिझाओ के पतले हाथ कांप रहे थे। वह पूरी तरह से अचंभित थी। वह उत्तर के राजा के अवशेषों का उपयोग झाओबुजियांग को धमकाने के लिए करना चाहती थी ताकि वह दोनों देशों के बीच संधि के बारे में कुछ अच्छे शब्द कह सके। लेकिन अब उसने झाओबुजियांग का चेहरा भी नहीं देखा था। झाओबुजियांग, आप में कुछ क्षमता है। चिबा रिझाओ अभी भी कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था। अचानक सैनिकों का एक समूह घेरा बनाकर उत्तर के राजा के भवन के पास पहुंचा। एक भी भागने न पाए। इसके तुरंत बाद एक कठोर और डरावनी आवाज आई। लॉन्ग जहान एक ऊंचे घोड़े पर सवार होकर सरपट दौड़ता हुआ आया और आते हुए जोर से चिल्लाया, झाओबुजियांग ने हिंसांग के साथ मिलकर देश को धोखा दिया है। ऐसा गद्दार, हर किसी को उसे मारने का अधिकार है। लॉन्ग जहान ने अपना घोड़ा हवेली के गेट के सामने रोक दिया। हिंसांग काफिले को देखकर उन्होंने तुरंत पुष्टि कर ली कि उनकी चौथी बहन की जानकारी सही थी। लेकिन जब उसने बंद गेट देखा तो वह दंग रह गया। क्या इस काय झाओबुजियांग ने वास्तव में हिंसांग प्रतिनिधिमंडल से मिलने की हिम्मत नहीं की? या फिर ऐसा था कि वह बहुत जल्दी आ गया था? यदि झाओबुजियांग बाहर नहीं आता तो वह उसे इस कृत्य में कैसे पकड़ सकता था? उसकी नजरें इधर उधर घूमी और लॉन्ग जान ने तुरंत कहा, ऐसा लगता है कि आप अभी अभी उत्तर के राजा के महल से बाहर आए हैं। उसने शियाओ की कैंप की सेना को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके पास राजधानी की सुरक्षा के लिए गश्त करने की शक्ति थी। अब जब उसने इस जगह को घेर लिया था तो सब कुछ उसके हाथ में था। अगर उन्होंने कहा कि झाओबुजियांग ने हानसांग के साथ मिलीभगत की है तो झाओबुजियांग ने मिलीभगत की थी। हवेली का दरवाजा तोड़ो और गद्दार झाओबुजियांग को पकड़ो। लॉन्ग जहान ने अपना हाथ हिलाते हुए गहरी आवाज में चिल्लाया। उसके पीछे के सैनिक आगे बढ़े, पूरे हिंसांग प्रतिनिधिमंडल को घेर लिया और मार डाला। चिबा रिझाओ वहीं अचंभित खड़ा ये सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने झाओबुजियांग के साथ कब मिलीभगत की थी? उसने स्पष्टतः अभी तक ऐसा नहीं किया था। महान जिया के अधिकारियों, ऐसे घृणित तरीके। जैसे ही चिबा रिझाओ भागने वाला था, रुकना, एक और हल्की और फुर्तीली महिला की आवाज गूंजी। लॉन्ग जहान ने नजर घुमाए और पाया कि यह सातवीं राजकुमारी ली युनरुई की गाड़ी थी। ली युनरुई भी क्यों आए थे? क्या यह महिला झाओबुजियांग के साथ गुप्त मुलाकात के लिए यहां आई है? धत्तेरी की, लॉन्ग जहान ने सही कहा। महाराज, यह अधीनस्थ एक गद्दार को पकड़ रहा है। महामहिम को बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये गद्दार हताश होकर राजकुमारी को नुकसान पहुंचा सकता है। शेष जियाओ की शिविर के सैनिकों ने ली युनरुई की गाड़ी को रोक दिया। इस बीच शियाओ की कैंप के सैनिक, जो गेट तोड़ रहे थे, ने उसे सफलतापूर्वक तोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, क्रॉसबो बोल्टों की बौछार ने उन्हें घबराकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक ही पल में जियाओ की शिविर के कई सदस्य मर गए। लॉन्ग जहान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तो झाओबुजियांग तैयार था। उत्तर के राजा के कुलीन सैनिक, हाथ में क्रॉसबो लिए, पंक्तिबद्ध हो गए और उन्होंने अपने क्रॉसबो को शियाओ की शिविर और हानसांग प्रतिनिधिमंडल पर निशाना साधा। जब हवेली के सैनिक दोनों तरफ से अलग हो गए तो झाओबुजियांग अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर शांति से बाहर चला गया। झाओबुजियांग, आप, लॉन्ग जहान बोलने ही वाला था, लेकिन झाओबुजियांग और भी तेजी से बोलने लगा। कमांडर लॉन्ग ने हिंसांग के साथ मिलकर रात में मेरे उत्तर के राजा के महल को घेर लिया है। सारे सबूत यहां मौजूद हैं। सातवीं राजकुमारी, जल्दी से उसे नीचे गिराने में मेरी मदद करो। मैं, लॉन्ग जान क्षण भर के लिए अवाक रह गया। ली यूनरुई ने डांटा, लॉन्ग जान, मैं निश्चित रूप से आज की घटनाओं की रिपोर्ट पिता सम्राट को दूंगा और आपको जियाओ की कैंप के कमांडर के पद से हटा दूंगा। ये देखकर कि ली यूनरुई अभी भी झाओ बुजियांग की मदद कर रहा था, लॉन्ग जान और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने अभी भी अपनी तलवार को कसकर पकड़ रखा था। झाओ बुजियांग मुझे फंसा रहा है। पुरुषों, सभी हानसांग लोगों को नीचे ले जाओ और उन्हें निर्णय के लिए महामहिम को सौंप दो। वह, लॉन्ग जान, इस कड़वी गोली को निगलने का जोखिम नहीं उठा सकता था। चिबा रिझाओ और अन्य लोग निर्दोष दिख रहे थे, लेकिन लॉन्ग जान ने उन्हें बहस करने का मौका नहीं दिया और उन सभी को पकड़वा दिया। जल्द ही ली ज़ायुआन सभी से मिला। यूनरुई, क्या तुम ये कह रही हो कि लॉन्ग जान ने हानसांग के साथ मिलकर उत्तर के राजा के महल को घेर लिया और सशस्त्र संघर्ष में शामिल हो गया? हाँ पिता सम्राट, मैं आपसे झाओ बुजियांग के लिए खड़े होने की विनती करता हूँ। यूनरुई आ, ली ज़ायुआन ने अपना सिर हिलाया। पिता सम्राट, जानते हैं कि आपके मन में लॉन्ग जान के प्रति पूर्वाग्रह है, लेकिन पिता सम्राट, लॉन्ग जान के चरित्र के बारे में स्पष्ट हैं, वह कभी भी हानसांग के साथ सांठ गांठ नहीं करेंगे। ली यूनरुई ने चिल्लाते हुए कहा, झाओ बुजियांग संभवतः हिंसांग के साथ भी मिली भगत नहीं कर सकता। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। ली ज़ायुआन की आंखें चमक उठी। किसी भी गलतफहमी के बावजूद इस मामले की घटना का उपयोग हिंसांग प्रतिनिधिमंडल को नीचे गिराने के लिए किया जा सकता है, जिससे ग्रेट जिया को अपनी शक्ति स्थापित करने की अनुमति मिल सके। अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद वह दोनों देशों के बीच युद्ध विराम संधि की शर्तों में ऐसे परिवर्तन करवा सकता था जो ग्रेट जिया के प्रतिकूल थे। पिता सम्राट, ली यूनरुई अभी भी झाओ बुजियांग के लिए बोलना चाहता था। इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मेरा आदेश जारी करें। हानसांग प्रतिनिधिमंडल ने बिना बताए होंगलू मंदिर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़ दिया। उनकी हरकतें संदिग्ध हैं, जिससे दो वफादार लोगों में संदेह पैदा हो रहा है। इस दिन के बाद हानसांग प्रतिनिधिमंडल को होंगलू मंदिर से आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सच्चाई का पता लगाने के लिए दूत चिबा रिझाओ से झाओ बुजियांग द्वारा पूछताछ की जाएगी। लॉन्ग जान ने भौहें सिकोड़ी। सम्राट स्पष्ट रूप से उसकी मदद कर रहा था, न केवल झाओ बुजियांग के झूठे आरोपों को सुलझा रहा था, बल्कि झाओ बुजियांग को चिबा रिझाओ का हॉट पोर्ट्रेटो भी दे रहा था। यदि चिबा रिझाओ को कुछ हो गया तो झाओ बुजियांग शाश्वत पापी हो सकता है, जिसने ग्रेट जिया और हिंसांग के बीच एक और युद्ध शुरू कर दिया। महाराज समझदार हैं, यह अधीनस्थ अब राजधानी में गश्त बढ़ाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिंसांग का कोई अवशेष शेष न बचे। लॉन्ग जान ने अपने हाथों को जोड़कर उनका धन्यवाद किया और झाओ बुजियांग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। दूत चिबा को झाओ शिजी को सौंप दिया जाना चाहिए। महामहिम झाओ शिजी पर भरोसा करते हैं, शिजी को महामहिम को निराश नहीं करना चाहिए। झाओ बुजियांग का चेहरा उदास था। ये कहना अच्छा लगता है कि सम्राट मुझ पर भरोसा करता है, लेकिन वास्तव में वह मुझे बलि का बकरा बना रहा है। ऐसा लगता है कि यह बूढ़ा सम्राट नहीं चाहता कि मुझे कोई शांति मिले। झाओ बुजियांग ने अलविदा कहा और चले गए। ली यूनरुई उसके आंतरिक विचारों को सुनकर और उसके गिरते हुए शरीर को देखकर अत्यंत व्यथित महसूस कर रहा था। यूनरुई, पिता सम्राट के पास अभी भी पढ़ने के लिए स्मारक हैं। जाओ पिता सम्राट को तरोताजा करने के लिए एक कप चाय बनाओ। ली ज़ायुआन को ली यूनरुई द्वारा बनाई गई ताज़ा चाय सबसे अधिक पसंद थी, लेकिन इस बार ली यूनरुई ठंडे चेहरे के साथ चले गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पिता सम्राट इसे खुद बना सकते हैं। अल्पविराम, उत्तर के राजा का भवन। ली यूरुआन की पोल खुलने से रोकने के लिए झाओ बुजियांग को चिबा रिझाओ को दूसरे कमरे में बंद करना पड़ा। लोहे की जंजीरें, मांसपेशियों को कमजोर करने वाला पाउडर, टेन फ्रेग्रेंस टैंडन सॉफ्टनिंग पाउडर और स्किल डिसॉल्विंग पाउडर सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए गए थे। दरवाजे के बाहर बटलर ने उसकी निगरानी के लिए भारी हथियारों से लैस गार्ड भी भेजे थे। झाओ बुजियांग, तुमने आज मुझे देखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए यह पता चला कि तुम मुझसे डरते हो। मैं तो सिर्फ एक औरत हूँ, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? काय, बर्फ सी सफेद हल्की धुंधली चादर पहने चिबा रिझाओ ने लोहे की जंजीरों के नीचे एक सुंदर आकृति की रूपरेखा बनाए और उपहास किया। झाओ बुजियांग चुप रहा, अभी भी सोच रहा था कि इस गर्म आलू से कैसे निपटा जाए। इंपीरियल स्टडी में आपने जो कविता की कुछ पंक्तियां प्रस्तावित की थी, मैंने उनका दूसरा भाग भी सोच लिया है। क्या आप उनसे मेल खाने की हिम्मत रखते हैं? झाओ बुजियांग अपने दिल में हंसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या इस महिला का दिमाग एक ही दिशा में काम करता है? अभी कितना समय हुआ है और वह अभी भी कविता के बारे में सोच रही है। क्या वह नहीं जानती कि बाहर जो लोग मुझे मरवाना चाहते हैं, वे उसे भी मरवाना चाहते हैं? जब तक वह मरती रहेगी, मैं दोनों देशों के बीच युद्ध भड़काने वाला अपराधी रहूंगा और उसके हिंसांग परिवार को बदनामी सहनी पड़ेगी। चिबा रिझाओ ने अत्यंत आश्चर्यचकित होकर अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। झाओ बुजियांग ने अपना मुंह नहीं खोला, वह कैसे सुन सकती थी कि झाओ बुजियांग ने क्या कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि ये शब्द बोले नहीं गए थे बल्कि उनके हृदय में विचार थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह यहाँ फंस गई थी और हानसांग साम्राज्य के देवताओं ने इसे महसूस किया और उसे झाओ बुजियांग के आंतरिक विचारों को सुनने की शक्ति प्रदान की। चिबा रिझाओ की आंखें और अधिक चमकीली हो गईं। यदि ऐसा है तो वह झाओ बुजियांग को धीरे धीरे नीचे गिराने के लिए उसके आंतरिक विचारों का उपयोग कर सकती है और उत्तरी गैरीसन सेना के बारे में अधिक रहस्य प्राप्त करें। चिबा रिझाओ ने अचानक अपने शरीर को थोड़ा घुमाया, उसका छोटा मुंह थोड़ा खुला और उसकी जीभ की नोक ने उसके गुलाबी होंठों को चाटा। झाओ बुजियांग, जब तक आप मेरे साथ सहयोग करते हैं मैं आपकी किसी भी शर्त को पूरा कर सकता हूँ। ग्रेट जिया राजधानी के सभी लोगों ने कहा कि झाओ बुजियांग एक कामुक और अनैतिक व्यक्ति था, इसलिए चिबा हिनाता को यकीन था कि जब तक वह अपनी सुंदरता के साथ थोड़ा सा भी कदम उठाएगी झाओ बुजियांग कैसे विरोध कर सकता है। क्या वारिस कविता नहीं सुनाना चाहता? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे और भी अधिक अपवित्र करना चाहते हो? तुम सुनाओ। मैं कैसे सुनाऊं? तुम बहुत परेशान कर रहे हो। जैसे ही वह बोल रही थी चिबा हिनाता ने जानबूझकर संघर्ष किया। बर्फ सफेद धुंध और लोहे की जंजीरें एक साथ झूल रही थी जिससे उसकी पहले से ही भरी हुई और सुंदर आकृति और भी अधिक कस गई, जिससे वह और भी अधिक आकर्षक लगने लगी। उसने अपने नितंबों को हिलाया, उसके लाल होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे। थोड़ी शर्म के साथ, वारिस मुझे यहाँ अपवित्र कर सकता है। उच्च श्रेणी के शिकारी अक्सर शिकार के रूप में सामने आते हैं। उसे अपनी सुंदरता पर पूरा भरोसा था। हालांकि वह हानसांग में बहुत ऊपर थी, वह जानती थी कि कई पुरुषों ने उसके बारे में कल्पना की थी, लेकिन उसने कभी उन कुत्ते पुरुषों को सफल नहीं होने दिया। लेकिन अगले ही पल, चले जाओ, झाओ बुजियांग ने उदासीनता से एक शब्द कहा। वारिस, इसका क्या मतलब है? नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? तुम जो योनि को सिकोड़ने वाली निंजुत्सु का अभ्यास करते हो उससे तुम उस जगह को जल्दी से कस सकते हो और यहां तक कि मेरी जीवन रेखा भी काट सकते हो। चिबा हिनाता का दिमाग तब चकरा गया जब अचानक उसकी पोल खुल गई। ये निंजुत्सु उसे उसकी माँ ने बचपन से ही गुप्त रूप से सिखाया था क्योंकि उसे डर था कि पुरुष उसका फायदा उठाएंगे। झाओ बुजियांग को कैसे पता चला? ये द्वीप देश की फुहड़। सौभाग्य से मुझे किताब से उसका विवरण याद है, अन्यथा मैं उसके द्वारा जकड़ लिया गया होता। झाओ बुजियांग के आंतरिक विचारों ने तुरंत चिबा हिनाता की सांसें तेज कर दी। किताब? क्या ऐसा हो सकता है कि महान जिया के पास खुफिया किताबें हों जो उसके हानसांग के रहस्यों को जानती हों? जब वह वास्तव में मेरे सामने झुक जाएगी तो उसे बिस्तर पर लिटाने में बहुत देर नहीं होगी। मेरे हाथों में पहले से ही जो मोटा मांस है उसे न खाने का कोई कारण नहीं है। चिबा हिनाता का चेहरा उदास हो गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके समक्ष समर्पण कर दूं? आप तो मेरी असली पहचान भी नहीं जानते और आप चाहते हैं कि मैं आपके अधीन हो जाऊं? एक साधारण और आत्मविश्वासी ग्रेट जिया आदमी, हे। जबकि चिबा हिनाता अपने दिल में उससे घृणा कर रही थी। हालांकि मुझे अभी भी उसके पहचान का उपयोग उपद्रव करने के लिए करना चाहिए। आखिरकार मूल पुस्तक में कहा गया था कि वह हानसांग सम्राट की एकमात्र बेटी है और इस बार वह वेश बदलकर शांति वार्ता करने के लिए ग्रेट जिया में आने के लिए स्वेच्छा से आई थी ताकि एक स्वर्णिम प्रतिष्ठा के साथ वापस लौट सके, ताकि वह सही मायने में सम्राट की उत्तराधिकारी बन सके। इस आंतरिक आवाज को सुनकर चिबा हिनाता की झाओ बुजियांग के प्रति निगाहें काफी बदल गईं। वह अचंभित थी, वह डर गई। झाओ बुजियांग को मेरी पहचान कैसे पता चली? इस बार वह गुप्त रूप से एक दूत और एक प्रतिभाशाली महिला के रूप में ग्रेट जिया के पास आई थी। यहां तक कि हानसांग में भी केवल सम्राट और महारानी ही जानते थे। असंभव, झाओ बुजियांग को ये पता ही नहीं चल सकता। क्या होगा अगर यह आदमी मेरी पहचान का उपयोग हानसांग को धमकाने के लिए करे? शर्तों की मांग करने का अवसर लेना हानसांग के लिए हानिकारक होगा। वारिस, चलो अच्छे से बात करें। वह दया की भीख मांगना चाहती थी लेकिन झाओ बुजियांग इतना आलसी था कि सुनने को तैयार ही नहीं था। मेरी बात पर अडिग रहो, मुझे बहकाने के बारे में मत सोचो, ईमानदारी से अपने स्थान पर रहो। वह नहीं जानती थी कि झाओ बुजियांग उसकी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। एक बार जब अन्य लोगों को पता चला कि चिबा हिनाता हानसांग राजकुमारी थी तो वह और भी तेजी से मर जाएगी। वह और चिबा हिनाता पहले से ही सम्राट की चालों के तहत एक ही रस्सी पर लटके हुए टिड्डे थे। यदि चिबा हिनाता की यहाँ मृत्यु हो जाती और हानसांग सम्राट पागल हो जाता और जिया पर हमला कर देता तो उसे इसका दोष सहना पड़ता। कोई व्यक्ति, झाओ बुजियांग बाहर गया और गहरी आवाज में कहा, मेरे लिए उस पर कड़ी नजर रखना। मेरे अलावा किसी को भी उसके पास आने की इजाजत नहीं है, एक मक्खी को भी नहीं। हाँ, श्रेष्ठ सैनिकों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। झाओ बुजियांग अपने कमरे में लौट आया। अब चूंकि उसने अभ्यास शुरू कर दिया है इसलिए वह कभी आलसी नहीं होगा। केवल लगातार मजबूत बनकर ही वह खतरे से बेहतर तरीके से निपट सकता था। आखिरकार अभी भी एक चुना हुआ व्यक्ति था जो उसे अपने पक्ष में एक कांटा मानता था। मार्शल आर्ट क्षेत्र कमजोर से मजबूत तक 9वीं रैंक से पहली रैंक मार्शल आर्टिस्ट में विभाजित है। पहली रैंक से ऊपर ग्रैंड मास्टर और ग्रेट ग्रैंड मास्टर क्षेत्र भी हैं। मूल पुस्तक के अनुसार ग्रेट जिया में 3 ग्रैंड मास्टर हैं, जिनमें से एक उसका सस्ता बुरा आदमी झेनबेई राजा है, और केवल एक ही महान ग्रैंड मास्टर है जो ड्रैगन सिंहासन पर बैठा है। मूल पुस्तक के अंत में लोंगझान ने ग्रेट ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में कदम रखने के बाद सबसे बड़ी राजकुमारी की मदद से शहर पर हमला करने के लिए 100,000 कुलीन सैनिकों का नेतृत्व किया। तभी वह ली ज़ायुआन को मारने और उसकी जगह लेने में सक्षम था। इसके अलावा ये वह समय था जब ली ज़ायुआन की उम्र बढ़ रही थी। आखिरकार एक महान ग्रैंड मास्टर भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता कि मैं ग्रेट ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में कदम रख सकता हूं या नहीं, लेकिन कम से कम मैं लोंगझान से धीमा नहीं हो सकता। अगर वह पहले ग्रेट ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में कदम रखता है तो वह मुझे आसानी से मार सकता है। झाओ बुजियांग को भारी दबाव महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने लियू रुयान की ड्रैगन नर्चरिंग सेंट फिजिक का आनंद लिया। सच्चे यांग हृदय सूत्र की सहायता से वह पहले ही 9वें रैंक मार्शल क्षेत्र में कदम रख चुका था और लोंगझान वर्तमान में 7वें रैंक पर है। साथ ही उसके पीछे दाओ संप्रदाय द्वारा उसे दिए गए गहन मार्शल आर्ट रहस्यों के कारण उसके पास 6ठे रैंक से लड़ने की शक्ति है। लेकिन ये सामान्य ज्ञान है। कौन सा उपन्यास नायक अपने स्तर से ऊपर के विरोधियों को चुनौती नहीं दे सकता? झाओ बुजियांग ने पूरी रात कड़ी मेहनत की। इस बात के हल्के संकेत थे कि सच्चा यांग हृदय सूत्र दूसरे स्तर पर प्रवेश कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा ही पीछे था। सच्चे यांग हॉट सूत्र में शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। अगर वह दूसरे स्तर को तोड़ सकता है तो उसके पास एक पूर्वाभास है कि उसकी शक्ति 8वें रैंक में कदम रख सकती है। अभी भी ये थोड़ा छोटा लगता है। क्या मुझे फिर से लियू रुयान को ढूंढना चाहिए? झाओ बुजियांग ने सोचा, लेकिन पिछली बार लियू रुयान के साथ कोशिश करने के बाद उन्होंने पाया कि हालांकि ड्रैगन नर्चरिंग सेंट फिजिक उनकी शक्ति को बढ़ा सकता है, फिर भी यह सीमित है। वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके डेंटियन को आराम की जरूरत है। महाराज, कुछ बुरा हुआ है। जैसे ही आसमान में हल्की रोशनी हुई, बूढ़े बटलर झाओ मनफू ने दरवाजा खटखटाया। यह क्या है? झाओ बुजियांग ने घर के बाहर की आवाज को और भी ज्यादा शोरगुल भरा सुना। 9वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट में कदम रखने के बाद उसके कान ज्यादा संवेदनशील हो गए। उसने कवच के टकराने की आवाज भी सुनी। बूढ़े बटलर का स्वर थोड़ा चिंतित था। महाराज, शियाओ की शिविर फिर से आ गया है। इस बार जिंगझाओ के भगवान यिन भी आ गए हैं। जिंगझाओ का यिन यहाँ क्या कर रहा है? जिंगझाओ प्रांत राजधानी की सुरक्षा को नियंत्रित करता है और आधुनिक पुलिस स्टेशन के समकक्ष ग्रेट जिया के कानूनों को लागू करता है। पुलिस थाने के निदेशक का सुबह सुबह दरवाजे पर आना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। झाओ बुजियांग ने भौहें सिकुड़ी और अपना अभ्यास समाप्त कर दिया। वह बूढ़े बटलर के साथ बाहर चला गया। चलते समय बूढ़े बटलर ने झाओ बुजियांग को समझाया, कल जब आसमान में अंधेरा छाने लगा था, राजधानी शहर के पूर्वी हिस्से में तियानशुई वार्ड में 7वीं रैंक के एक अधिकारी के छोटे से घर में एक बड़ी हत्या हुई। घर में मौजूद सभी लोग सिर्फ एक जीवित व्यक्ति को छोड़कर मारे गए, और उस 7वें रैंक के अधिकारी का उपनाम काओ था और एकमात्र जीवित व्यक्ति काओ शियाओलान था, जो कल अपने परिवार से मिलने घर लौटी थी। काओ जियाओलान, झाओ बुजियांग ने अपनी भौहें उठाई, क्या काओ शियाओलान सबसे बड़ी राजकुमारी ली युनरुई की करीबी विश्वासपात्र नहीं है? बूढ़े बटलर ने बार बार सिर हिलाया। झाओ बुजियांग पहले से ही समझ गया। जिंगझाओ और जियाओ की कैंप के यिन उसकी हवेली के बाहर एक साथ दिखाई दिए। बिना सोचे समझे हत्यारा उससे संबंधित होना चाहिए, कम से कम सतह पर तो। जैसी की उम्मीद थी, बूढ़े बटलर ने अपनी भौहें नीची करके दरवाजा खोला तो जियाओ की गार्ड्स और जिंगझाओ प्रांत के यमन सैनिकों का एक बड़ा समूह चाकू पकड़े हुए हवेली के बाहर खड़ा था। उनकी गति बढ़ती जा रही थी, झाओ बुजियांग की ओर बढ़ रही थी। नमस्कार वारिस। जिंगझाओ का यिन एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद थे। उसका हाथ अपनी बेल्ट पर दबा हुआ था और वह ठंडी आवाज में बोल रहा था। उन्होंने कहा कि वह सलामी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने झुककर या सिर हिलाकर अभिवादन नहीं किया। राजधानी के मूल अधिकारी के रूप में उनमें आपत्तिजनक गणमान्य व्यक्तियों का सामना करने का पर्याप्त आत्मविश्वास था। इसके अलावा यह एक ऐसा गणमान्य व्यक्ति था जो पहले ही सत्ता खो चुका था। वारिस आराम से सो रहा है, क्या उसे पता है कि उसने कोई बेवकूफी भरी हरकत की है? लोंगझान ने झाओ बुजियांग पर नजर डाली, ठंडी सांस ली, अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक चित्र बाहर फेंक दिया। झाओ बुजियांग, आपने इस व्यक्ति को हत्या करने और राजधानी में तबाही मचाने के लिए रिहा किया, आपकी सजा क्या होनी चाहिए? झाओ बुजियांग ने करीब से देखा। चित्र में जो व्यक्ति था वह चिबाहिनाता था। कल रात लॉर्ड काओ की दुखद हत्या कर दी गई। जिंगझाओ के यिन ने अपना हाथ उठाया और लहराया और डंडे पकड़े हुए यामिन सैनिक आगे बढ़े और कुछ लोगों ने जंजीरें निकाल ली जो झाओ बुजियांग को कैद करना चाहते थे। जिंगझाओ की आवाज सूखी और क्रोध से भरी हुई थी। एकमात्र जीवित बची काओ शियाओलान ने हत्यारे को अपनी आंखों से देखा जो हान सांग का दूत चिबा हिनाता है, जिस पर वारिस को नजर रखने का आदेश दिया गया था। वारिस, अपने कर्तव्य की उपेक्षा के कारण आपने मेरे महान जिया के एक अधिकारी के पूरे परिवार को मार डाला है। आओ, उसे नीचे ले जाओ। बूढ़ा बटला आगे बढ़ा और झाओ बुजियांग को रोकते हुए बोला, तुम उसे फंसा रहे हो, जो कोई भी हमारे वारिस को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा मैं उसके साथ मौत तक लड़ूंगा। हवेली के सैनिक तुरंत वहां पहुंच गए और दोनों पक्ष संघर्ष के कगार पर पहुंच गए। चिबा हिनाता ने सातवें रैंक के अधिकारी झाओ बुजियांग के पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिया। आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। लांग जान ने अपनी लंबी तलवार निकाली और उसे बूढ़े बटले की ओर तान दिया। झाओ बुजियांग को डर था कि वह एक तलवार से बूढ़े बटले को मार देगा, कुछ दिन पहले की साजिश को फिर से रचेगा, इसलिए उसने बूढ़े बटले को धक्का दिया और ठंडे स्वर में कहा, काओ जियाओलान कहाँ है? झाओ बुजियांग, क्या तुम अब भी किसी को चुप कराने के लिए उसे मारना चाहते हो? कमांडर लॉन्ग, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? यदि आप मुझे कर्तव्य की उपेक्षा का दोषी ठहराना चाहते हैं तो कम से कम मुझे उससे भिड़ने दें और चीजों को स्पष्ट रूप से समझाएं, है ना? ये कहने के बाद झाओ बुजियांग ने जिंगझाओ की यिन पर अपनी भौहें उठाई। आप क्या कहते हैं? जिंगझाओ के यिन ने अपना हाथ उठाया और उसके पीछे की भीड़ अलग हो गई, जिससे काओ शियाओलान का आकार प्रकट हुआ। काओ जियाओलान की आंखें सूजी हुई और लाल थीं और उसके गालों पर अभी भी आंसू के धब्बे थे। उसने मुट्ठी भर आंसू पोंछे, जल्दी से चली गई। उसका चेहरा आक्रोश और क्रोध से भरा हुआ था और उसने सिसकते हुए कहा, वारिस, ये वास्तव में चिबा हिनाता था जिसने मेरे पूरे काओ परिवार का वध किया था। झाओ बुजियांग, अब तुम्हें और क्या कहना है? लांग जान ने धार्मिक आक्रोश के साथ जिंगझाओ प्रांत के यामिन सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, सभी लोग मेरे शियाओ की कैंप का अनुसरण करें और झाओ बुजियांग को हरा दें। झाओ बुजियांग ने एक यमन सैनिक को लात मारकर भगा दिया जो एक अच्छा काम करने के लिए उत्सुक था और ठंडे स्वर में कहा, ये तो अजीब बात है। चिबा रिझाओ को मेरे वांगफू में भारी जंजीरों से बांध कर रखा गया है और वह कभी बाहर नहीं निकला। बहस करने की कोशिश बंद करो। जिंग झाओ इनकी आंखें सिकुड़ गईं। काओ जियाओलान पीड़ित है, वह झूठ कैसे बोल सकती है? मुझे लगता है कि आप गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, कमांडर लांग। लॉन्ग जान आगे बढ़ने ही वाला था लेकिन झेनबेई वांगफू के गार्डों ने झाओ बुजियांग को रोकने के लिए लाइन लगा दी। किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है। झाओ बुजियांग ने अपना हाथ उठाया, मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी मत करो। चिबा रिझाओ हवेली में है और कभी बाहर नहीं गया। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बेझिझक अंदर आओ और देखो। सावधान रहो, यह एक जाल हो सकता है। लॉन्ग जान ने सीधे जिंग झाओइन और काओ शियाओलान को रोक दिया। जिंग झाओइन, जिसका नाम सन शियुफू था, ने लॉन्ग जान के बाधा डालने वाले हाथ को धीरे से हटा दिया। उसकी आवाज धीमी थी, यह अधिकारी एक मामले को देख रहा है और किसी भी दुष्ट व्यक्ति को परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं है, नहीं वे ऐसा करने का साहस करेंगे। कमांडर लॉन्ग, निश्चिंत रहें, मैं सिर्फ सुरागों की जांच करने जा रहा हूं। मेरा मानना है कि उत्तराधिकारी को भी पता है कि क्या है। सन शियुफू ने इशारा किया और काओ जियाओलान को साथ आने के लिए आमंत्रित किया। वह और काओ शियाओलान लॉन्ग जान से गुजरे, झाओ बुजियांग से गुजरे और सीधे वांगफू में चले गए। ये देखकर कि वह उन्हें रोक नहीं सकता, लॉन्ग जान की आंखें चमक उठी और वह भी सुन शियाओफू और काओ शियाओलान के साथ चला गया। झाओ बुजियांग शांति से घूम गया। अभिजात हवेली के सैनिकों ने क्रॉसबो पकड़कर हवेली के बाहर जियाओ की शिविर के सैनिकों और जिंग झाओ इनके सैनिकों पर निशाना साधा। जैसे ही जंजीरें जमीन पर गिरी, बंद दरवाजा खुल गया। तेज धारदार हथियार लिए हवेली के सैनिकों ने दरवाजा खोल दिया, जिससे झाओ बुजियांग और अन्य लोगों को अंदर की सारी चीजें दिख गईं। कमरे के अंदर चिबा रिझाओ के बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा थका हुआ था और उसके हाथ पैर भारी जंजीरों से बंधे हुए थे। जंजीरें बहुत भारी और लंबी थीं, जिससे चिबा रिझाओ को कमरे में मुश्किल से ही घूमने की अनुमति मिल रही थी। ये देखकर कि चिबा रिझाओ वास्तव में वांगफू में कैद था, जिंग झाओ ने भौहें सिकोड़ ली और महसूस किया कि यह मामला अधिक से अधिक अजीब था। लेकिन अचानक, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आह, अपने पूरे परिवार को मारने वाले दुश्मन को देखकर काओ जियाओलान के गाल आंसुओं से भर गए और वह चिबा रिझाओ की ओर दौड़ी। उसकी आस्तीन से एक नुकीला हेयरपिन निकला और चिबा रिझाओ के दिल में घुस गया। अरे, वह मर नहीं सकती। झाओ बुजियांग बहुत ही चतुर था और उसने काओ शियाओलान को पकड़ लिया, हेयरपिन छीन लिया और काओ शियाओलान को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मैं उसे मारना चाहता हूँ। काओ शियाओलान फूट फूट कर रोने लगा, चिल्लाने लगा और संघर्ष करने लगा। दादी, अगर आपने उसे मार दिया तो मैं पीली नदी में कूदकर भी अपना नाम साफ नहीं कर पाऊंगा। झाओ बुजियांग ने काओ शियाओलान को कसकर पकड़ते हुए अपने दिल में आह भरी। ये देखकर कि काओ शियाओलान पास नहीं हो सका, चेबारे झाओ ने राहत की सांस ली। झाओ बुजियांग के आंतरिक विचारों को सुनकर उसका दिल गर्म हो गया। इस समय झाओ बुजियांग ही उसका एकमात्र उद्धार था। सुन ज़ियुफू की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, उत्तराधिकारी चिबा रिझाओ अब आपके महल में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने उसे कल रात जाने नहीं दिया। लॉन्ग जान ने बिना कुछ बोले सब कुछ ठंडेपन से देखा। झाओ बुजियांग को पता था कि यह कमीना शायद फिर से इसके पीछे था। जब तक प्रभु स्पष्ट रूप से जांच करते हैं, यह अधिकारी स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से जांच करेगा। जिंग झाओइन ने जंजीरों की जांच करने के लिए नीचे बैठकर चिबा रिझाओ के चेहरे के भावों को ध्यान से देखा। वह धीरे से खड़ा हुआ। यह मामला उत्तराधिकारी और हिंसांग दूत से संबंधित है, यह अधिकारी सबसे पहले पवित्र को रिपोर्ट करेगा। उत्तराधिकारी कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। लॉन्ग जान ने मन ही मन उपहास किया। वर्तमान सम्राट लंबे समय से झाओ बुजियांग से छुटकारा पाना चाहता था। सम्राट को रिपोर्ट करना झाओ बुजियांग के लिए सबसे घातक खबर है। उस पर कड़ी नजर रखो, कहीं उत्तराधिकारी अचानक भाग न जाए। लॉन्ग जान के शब्दों में निहितार्थ सुनकर झाओ बुजियांग जल्दी में नहीं था। उसने केवल महसूस किया कि काओ शियाओलन, जो कर्कश स्वर में रो रही थी, वास्तव में दुखी थी। आधे घंटे बाद जिंग झाओइन एक शाही फरमान लेकर आए। पवित्र व्यक्ति आपको आदेश देता है, उत्तराधिकारी 3 दिनों के भीतर हत्यारे को ढूंढो, अन्यथा आपका और डेरेन के परिवार की मौत इस अपराध के लिए जिम्मेदार होंगे। झाओ बुजियांग ने डिक्री प्राप्त करने के लिए सिर हिलाया। अरे कुत्ते सम्राट, इस मामले की जांच का मुझसे, उत्तराधिकारी से क्या लेना देना है? मुझे हर चीज का दोष लेना पड़ता है। इसके अलावा, जिंग झाओइन ने फिर कहा, सातवीं राजकुमारी ने मुझे आपसे ये कहने के लिए कहा कि वह हमेशा आप पर विश्वास करती है। झाओ बुजियांग ली युनरुई के प्रस्तावों का थोड़ा अभ्यस्त था। वह बस इसी बात को लेकर चिंतित था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। इसके विपरीत उसके बगल में बैठे लॉन्ग जान का चेहरा उदास था, मानो वह प्यार उसका होना चाहिए था। उत्तराधिकारी जल्दी करो, लॉन्ग जान ने ठंडी सांस ली और जाने के लिए मुड़ा। हवेली में वापस आकर लॉन्ग जान अच्छे मूड में था। सम्राट ने झाओ बुजियांग को 3 दिनों के भीतर हत्यारे को खोजने का आदेश दिया। झाओ बुजियांग उसे कैसे ढूंढ सकता था? असली हत्यारा यही है उसके साथ। हॉल में ऊंची सीट पर बिल्कुल चिबा रिझाओ जैसी एक महिला बैठी थी। कैसे चल रहा है? लॉन्ग जान ने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, वरिष्ठ बहन की मदद से झाओ बुजियांग के पास जीने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। वरिष्ठ बहन की मृगतृष्णा को पहचानना वाकई मुश्किल है। चिबा रिझाओ का चेहरा बदल गया और वह वापस लिंग किंगसू के ठंडे और अमर रूप में आ गया। चौथी वरिष्ठ बहन, इस बार सबसे बड़ी राजकुमारी के विश्वासपात्र के पूरे परिवार को मारने से न केवल झाओ बुजियांग को नुकसान होगा, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी राजकुमारी को झाओ बुजियांग के खिलाफ कर दिया, जिससे झाओ बुजियांग के लिए यह अधिक से अधिक मुश्किल हो गया। ये दोधारी तलवार आपकी बदौलत है वरिष्ठ बहन, यह एक तीनधारी तलवार है, लिंग किंगसू ने सुधार किया। झाओ बुजियांग और सबसे बड़ी राजकुमारी दुश्मन बन जाते हैं। बाद में जब आप झाओ बुजियांग से छुटकारा पा लेंगे तो ये सबसे बड़ी राजकुमारी से बदला लेने के लिए होगा, उसे यह एहसान बेचकर, और फिर आप उसकी शक्ति पर कब्जा कर सकते हैं। कृपया मुझे समझाए वरिष्ठ बहन। लॉन्ग जान हैरान था, सबसे बड़ी राजकुमारी के पास क्या शक्ति है? हालांकि चौथी वरिष्ठ बहन भेष बदलने और जानकारी इकट्ठा करने में सबसे अच्छी है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ ऐसा पता चल गया है जो उसे नहीं पता, लिंग किंगसू ने विस्तार से समझाया। बड़ी राजकुमारी उतनी असहनीय नहीं है जितनी वह बाहर से दिखती है। उसकी निजी सेनाएं हर जगह हैं। वह अपनी ताकत छिपाती रही है। नागरिक और सैन्य अधिकारियों में लोग हैं। क्योटो से 10 मील बाहर एक गांव ग्रामीणों से नहीं बना है, बल्कि उसकी सेना है। लॉन्ग जान आश्चर्यचकित था। ये पता चला कि सबसे बड़ी राजकुमारी बहुत शक्तिशाली है। यदि उसे सबसे बड़ी राजकुमारी की शक्ति मिल जाए तो वह तेजी से ऊपर उठ सकेगा, आसमान तक उड़ सकेगा और फिर सत्ता पर कब्जा कर सकेगा। ये किसी थैले से कुछ निकालने जैसा होगा। झेनबेई वांगफू, यद्यपि कुछ समय के लिए शांति बहाल हो गई है, लेकिन तूफान से पहले संकट की स्थिति और भी अधिक गंभीर है। मैं इतना बड़ा दोष कैसे ले सकता हूँ? जैसे ही झाओ बुजियांग परेशान हुआ, काओ शियाओलान एक घूंघट वाली महिला को वांगफू में ले गया। झाओ बुजियांग ने घूंघट वाली महिला को देखा, उसका फिगर वाकई अच्छा सुडौल था और कपड़े उसे छिपा नहीं पा रहे थे, उसकी चाल में बड़प्पन की झलक थी। जैसे ही घूंघट वाली महिला उसके पास आए, उसे एक हल्की खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू बहुत शुद्ध थी और उसे लगा कि उसने इसे कहीं से महसूस किया है। कितनी सुगंधित स्त्री है ये गंध, एक शुद्ध परिपक्व स्त्री है। झाओ बुजियांग के आंतरिक विचारों को सुनकर महिला हल्के से मुस्कुराई और धीरे से अपना घूंघट उठाया। झाओ बुजियांग इस महल को पहचान नहीं सकते। घूंघट हटा दिया गया जिससे सबसे बड़ी राजकुमारी ली झाओ हुआ का नाजुक चेहरा सामने आ गया, जिसे इतनी अच्छी तरह से बनाए रखा गया था कि वह एक झटके से टूट सकता था। हर भाव और मुस्कान में बड़प्पन और आकर्षण झलकता था। तो यह वही है, उसके पास आज महल में जो भारी मेकअप था वह नहीं है, लेकिन वह अधिक सुंदर है। ये परिपक्व महिला हल्के मेकअप के लिए उपयुक्त है, आखिरकार वह काफी अच्छी दिखने वाली है। मैं तो बस यही कह रहा था कि कैसी परी धरती पर उतर आई है। इससे पहले कि मैं उसका चेहरा देखता, मेरा दिल पहले से ही डोल रहा था। पता चला कि यह सबसे बड़ी राजकुमारी है जो सब कुछ समझाती है। ली झाओ हुआ अपनी आंतरिक आवाज के कारण गुप्त रूप से खुश था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि झाओ बुजियांग शब्दों के साथ और भी बेहतर होगा। बेटा, तू तो बहुत मीठी मीठी बातें करता है, अगर तेरे बाप के पास तेरा मुंह होता तो यह महल क्यों? ली झाओ हुआ फूल की तरह मुस्कुराई। जब उसने वाक्य का दूसरा भाग कहा तो उसे कुछ याद आ गया, लेकिन वह रुक गई। फिर उसने विषय बदल दिया। झाओ बुजियांग, ये महल चिबा रिझाओ की हत्या के कारण यहाँ है। मैंने मामले की सामान्य रूपरेखा जान ली है और मुझे कई बातें संदिग्ध लगती हैं, तथापि मेरा मानना है कि इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही ली झाओ हुआ ने बात की, काओ शियाओलान की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने अपने गालों को रुमाल से पोंछ लिया। क्या यह महिला मुझ पर इतना भरोसा करती है? क्या यह मेरी सुंदरता के कारण हो सकता है? झाओ बुजियांग मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। ली झाओ हुआ ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। हालांकि शाही फरमान जारी हो चुका है और सम्राट आसानी से अपना आदेश वापस नहीं लेंगे, जब तक कि आपको असली अपराधी का पता न चल जाए। 3 दिन बहुत कम समय है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो पूछ लेना। अदालत में बड़े और छोटे अधिकारियों में से 2 या 3 ऐसे हैं जो मुझे कुछ सम्मान देने को तैयार हैं। जैसे ही ली झाओ हुआ ने बोलना समाप्त किया, उसके शांत स्वर में एक अदृश्य प्रभावशाली आभा थी। अब जब झाओ बुजियांग को पता चल गया था कि उसके पास निजी तौर पर काफी शक्ति है, तो उसे अब शर्मीली होने और उससे इसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि झाओ बुजियांग दंग रह गया। मूल कहानी में ली झाओ हुआ हमेशा अपनी ताकत छुपाती रही थी, अब वह अचानक उसे यह क्यों बता रही थी? अगर ली जायुआन को पता चल गया तो क्या वह सोचेगा कि झाओ बुजियांग ने जानकारी लीक कर दी है? नहीं, जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, मैं अब भी इस खूबसूरत महिला की शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता। झाओ बुजियांग का स्वर ईमानदार था। धन्यवाद राजकुमारी, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ली झाओ हुआ ने झाओ बुजियांग के आंतरिक विचारों को सुनकर सिर हिलाया और यह मान लिया कि वह इतना महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र है कि उसे परेशान नहीं करना चाहता। झाओ टिंगशियाओ, आपने वास्तव में एक अच्छे बेटे का पालन पोषण किया है। काओ जियाओलान अभी भी रोना बंद नहीं कर सका। पूरे काओ परिवार के खत्म हो जाने के कारण वह इतने कम समय में अपने दुख को दबा नहीं सकी। झाओ बुजियांग ने आह भरी। उसने महसूस किया कि यह मामला लॉन्ग झान द्वारा उस पर निर्देशित किया गया था और उसने अप्रत्यक्ष रूप से काओ शियाओलान को फंसाया था। बहन जियाओलान, मेरे साथ आओ। झाओ बुजियांग उस स्थान की ओर चला गया जहां चिबा रिझाओ को बंदी बनाकर रखा गया था। काओ जियाओलान ने खुद को संभाला और कदम से कदम मिलाकर झाओ बुजियांग का पीछा किया। ली झाओ हुआ को संदेह हुआ, उसने एक पल सोचा और उनका पीछा किया। एक महिला को सांत्वना देने के कई तरीके हैं और सबसे अच्छा तरीका है उसे एक मौका देना। यदि एक इंजेक्शन काम न करे तो उसे 2 इंजेक्शन दीजिए। बेशक झाओ बुजियांग काओ शियाओलान को गोली मारने के लिए नहीं बल्कि किसी की पिटाई करने के लिए ले जा रहा था। उसने उस कमरे का दरवाजा खोला जहां चिबा रिझाओ को बंदी बनाकर रखा गया था। युवा मास्टर, क्या आपने मेरे साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है? चिबा रिझाओ ने सोचा कि झाओ बुजियांग ने अपना मन बदल लिया है। किसे पता था, अपनी बहन का सहयोग करो। झाओ बुजियांग ने आक्रामक रूप से काओ शियाओलान को एक कोड़ा थमाते हुए कहा। युवा मास्टर, यह काओ जियाओलान थोड़ा घबरा गया और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। झाओ बुजियांग ने उसे जबरन उसके हाथ में थमा दिया और कहा, अपना गुस्सा निकालो, चिंता मत करो, मैं उसकी रखवाली के लिए जिम्मेदार हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं इसका दोष लूंगा। चिबा रिझाओ अवाक रह गई। जैसे ही वह झाओ बुजियांग पर दहाड़ने वाली थी, उसने झाओ बुजियांग के पीछे काओ शियाओलान को देखा और अपनी दहाड़ को निगल लिया जो बाहर आने वाली थी। यह पागल औरत पहले भी उसे मारना चाहती थी और झाओ बुजियांग ने उसे रोक दिया था। ये देखकर कि काओ जियाओलान ने अभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, झाओ बुजियांग सीधे उसके पीछे आया, उसकी बांह पकड़ ली और कोड़ा नीचे घुमाया, चिबा रिझाओ को मारा। वह दर्द से सिहर उठी, ये समझते हुए कि झाओ बुजियांग उसके पीछे खड़ी पागल औरत के लिए अपना गुस्सा निकाल रहा था। मैंने सचमुच किसी को नहीं मारा, मुझे मारना बंद करो। मुझे पता है कि यह तुम नहीं थी, लेकिन यह मामला तुम्हारी पहचान के कारण शुरू हुआ और तुम एक छोटे द्वीप राष्ट्र की महिला हो, तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें पीटूं? चिबा रिझाओ अवाक रह गया, केवल शिकायत में दबी हुई कराह ही निकाल सका। काओ शियाओलान ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, झाओ गुजियांग को घूरते हुए खुद को इस आदमी के प्रति कृतज्ञता महसूस करने से नहीं रोक पाए। ये देखकर कि काओ जियाओलान की भावनाएं स्थिर हो गई थी, ली झाओ हुआ अधिक देर तक नहीं रुका, झाओ गुजियांग को अलविदा कहकर चला गया। महल की ओर वापस जाते हुए, झाओ गुजियांग ने मेरे प्रति सद्भावना दिखाने के लिए ये कदम उठाया है, ये काफी दिलचस्प और काफी विचारशील है। जैसे ही ली झाओ हुआ बोल रहा था, काओ शियाओलान ने अपने लाल होठों को दबाया और अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। राजकुमारी, मुझे लगता है कि यंग मास्टर भी न्याय के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको यंग मास्टर की मदद करनी चाहिए। मेरा मानना है कि वह एक अच्छे इंसान हैं और उन्हें नहीं मरना चाहिए। चिंता मत करो, ली झाओ हुआ ने इस मूर्ख लड़की को मुस्कुराते हुए देखा, अगर झाओ गुजियांग वास्तव में 3 दिनों के बाद असली अपराधी को नहीं ढूंढ पाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसके लिए पैरवी करने के लिए आगे आऊंगा। अल्पविराम। अंधेरे तहखाने में तेल का दीपक धीरे धीरे टिमटिमा रहा था। जब लियू रुयान ने झाओ गुजियांग को आते देखा तो उसकी आंखों में डर और नाराजगी की झलक दिखी। उसने अपनी छाती को ढंक लिया, जिसे वह पूरी तरह से छिपा नहीं सकती थी, और पीछे की ओर चली गई। उसकी पीठ ठंडी पत्थर की दीवार से सटी हुई थी। तुम यहाँ फिर क्या कर रहे हो? उसकी आवाज ऊंची और उग्र थी, वह खुद को साहसी बनाने की कोशिश कर रही थी। झाओ गुजियांग को ड्रैगन रेजिंग होली बॉडी की शक्ति को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। पिछली बार उसने उसके साथ ऐसा कई बार किया था, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इसे इतनी जल्दी परिष्कृत कर दिया हो? झाओ गुजियांग का आभामंडल ठंडा था और उसने सीधे मुद्दे पर पूछा, लिंग किंगक्सू ने किसी को मार डाला और मुझे फंसाया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उसकी कमजोरी बताओ। लियू रुयान की नजरें इधर उधर घूम गईं। चौथी बड़ी बहन पहाड़ से बाहर आ गई थी, लेकिन झाओ गुजियांग की उपस्थिति को देखकर यह स्पष्ट था कि उसे उसकी वरिष्ठ बहन ने ठुकरा दिया था। हे, यह उसके हक में है। लियू रुयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप कहते हैं कि उसने किसी को मार डाला, आप इतना कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह मेरी चौथी वरिष्ठ बहन थी? बकवास, झाओ गुजियांग ने अपनी तलवार जैसी भौहें उठाई। किसी दूसरे व्यक्ति में रूपांतरित हो जाना जो बिल्कुल वैसा ही दिखता हो तथा एक सातवें दर्जे के अधिकारी के पूरे परिवार को थोड़े समय में मार डालने की क्षमता होना, यदि यह सब मेरा फ्लावर वाटमून का प्रयोग करके नहीं किया गया हो तो फिर और कौन कर सकता है? लियू रुयान ने अविश्वास से झाओ गुजियांग को देखा। झाओ गुजियांग को मेरा फ्लावर वाटमून के बारे में भी पता था, क्या उसने इसे फिर से लॉन्ग जान से सीखा? लेकिन सीनियर बहन पहले ही आ चुकी हैं। लियू रुयान को धीरे धीरे अपने दिल में अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ और उसने अपनी पूरी छाती फुला ली। अब जब तुम्हें दर्पण पुष्प की शक्ति का पता चल गया है जल चंद्रमा, तो तुम मुझे रिहा क्यों नहीं कर देते? अन्यथा यदि सीनियर सिस्टर को ये स्थान मिल गया तो तुम तुम क्या कर रहे हो? लियू रुयान के धमकी भरे शब्द यहीं खत्म नहीं हुए। झाओ गुजियांग ने लियू रुयान को उसी कोड़े से मारा जो काओ शियाओलान ने अभी अभी इस्तेमाल किया था। बोलना, मैं नहीं बताऊंगा। झाओ गुजियांग, यह मत सोचो कि मैं लॉन्ग जान की तरह दरबार को धोखा दूंगा और तुम्हें अपने संप्रदाय के सभी रहस्य बता दूंगा। मेरे पास तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने का समय नहीं है। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें कोड़े मारकर मार डालूंगा। मैं यह नहीं कहूंगा, इसका कोई फायदा नहीं है भले ही आप मुझे मार डालें। झाओ गुजियांग ने कोई दया नहीं दिखाई, लेकिन लियू रुयान की रीढ़ उसकी कल्पना से भी अधिक मजबूत थी। मूल कहानी में केवल मोटे तौर पर उल्लेख किया गया था कि इस मिरर फ्लावर वाटरमून कौशल में एक घातक कमजोरी थी। जहां तक कमजोरी का सवाल है, झाओ गुजियांग को ये बात ग्रैंड फिनाले तक पहुंचने के बाद भी समझ में नहीं आई, क्योंकि लगभग पूरा कथानक लॉन्ग झान के इर्द गिर्द घूमता था और नायक का प्रभामंडल उसके आसपास के लोगों तक फैलता था, इसलिए इस कमजोरी को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन अगर वह किसी को नकली चिबा रिझाओ लिंग किंगक्सू को खोजने के लिए ले जाना चाहता है तो उसे पहले मिरर फ्लावर वाटरमून को तोड़ना होगा। ये चाबुक काम नहीं करेगा, क्या मुझे दूसरा चाबुक लेना चाहिए? झाओ गुजियांग ने लियू रुयान के जिद्दी रूप को देखा और उसे कठोर रूप में बदलने के लिए तैयार हो गया। लियू रुयान का चेहरा बदल गया। मैं बात करूंगा। हम, झाओ गुजियांग हैरान था, वह हार मान रही है। लियू रुयान ने आक्रोश और दर्द से कई बार कराह उठी। उसने अपने होंठ काटे और अनिच्छा से कहा, मेरा फ्लावर वाटरमून की कमजोरी मन की स्थिति में निहित है। मेरा फ्लावर वाटरमून किसी की शक्ल बदल सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, शक्ल दिल से पैदा होती है। स्थिर उपस्थिति बनाए रखने के लिए स्थिर मनस्थिति की आवश्यकता होती है। एक बार मन की स्थिति बाहरी दुनिया से बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है, उदाहरण के लिए अचानक तेज आवाज, तेज रोशनी, मन की स्थिति में उतार चढ़ाव पैदा करेगा, जिससे दर्पण पुष्प जल चंद्रमा की अस्थिरता उत्पन्न होगी तथा वास्तविक रूप उजागर होगा। ये सुनकर झाओ बुजियांग की आंखें चमक उठी। झाओ बुजियांग ने धीरे धीरे अपने दिमाग में एक विचार बनाया, ये जानते हुए कि लिंग किंगक्सू को असली अपराधी के रूप में कैसे उजागर किया जाए। धन्यवाद, अब दूसरा काम करते हैं। लियू रुयान को अपनी बड़ी बहन को धोखा देने के बाद अपराध बोध हुआ। उसकी सिकुड़ी हुई भौहें दुख से भरी हुई थी और उसका कम कपड़ों में दयनीय रूप पहले से भी अधिक आकर्षक लग रहा था। झाओ बुजियांग के शब्दों को सुनकर लियू रुयान की आंखों में भय दिखाई दिया और उसने दया की भीख मांगी। मैंने तुम्हें अपनी कमजोरी पहले ही सच सच बता दी है, अब तुम मुझे और नहीं पीट सकते। चिंता मत करो, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। झाओ बुजियांग ने अपने हाथ से कोड़ा फेंक दिया, आओ मेरी साधना को बढ़ाने में मेरी मदद करो। तीन घंटे बाद स्विफ्ट कैवेलरी कैंप के कमांडर का निवास। झाओ बुजियांग ने हत्यारे को ढूंढ लिया। लिंग किंगक्स्यू को अभी अभी झेनबेई वांगमनों से समाचार मिला था और उसके उत्तम जैद जैसे चेहरे पर पहले तो आश्चर्य प्रकट हुआ, लेकिन फिर वह तिरस्कारपूर्ण भाव में बदल गया। लॉन्ग जान अपनी हंसी रोक नहीं पाए, ये झेनबेई वांग मैनर के लोगों ने खुद कहा था, शहर में कई लोग इसके बारे में जानते हैं। सीनियर सिस्टर झाओ बुजियांग ने शायद खुद को बचाने के लिए एक बलि का बकरा ढूंढ लिया है। यह अयोग्य निकम्मा व्यक्ति केवल इतना ही बुरा विचार सोच सकता है, लेकिन यदि वह सचमुच ऐसा करके बच निकलता है तो यह मेरे प्रयासों की बर्बादी होगी। लिंग किंगक्सू की आंखें तेज हो गईं, आज रात मैं उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा। चूंकि झाओ बुजियांग ने कहा कि उसने हत्यारे को पकड़ लिया है, तो क्या होगा यदि चिबारे झाओ इस समय फिर से किसी को मारने के लिए प्रकट हो जाए, तो फिर झाओ बुजियांग इसे कैसे समझाएंगे। तब तक झेनबेई वांगमनों की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी। लॉन्ग जान बुद्धिमान था और उसने तुरंत लिंग किंगक्सू के कहने का मतलब समझ लिया, तो मैं आज रात फिर से सीनियर बहन को परेशान करूंगा। तुम्हें लगन से अभ्यास करना चाहिए, झाओ बुजियांग की तरह बेकार मत बनो। लिंग किंगक्सू ने उसे घूर कर देखा, अपने पैर की उंगलियों को टैप किया और उसका शरीर फड़फड़ाया और चिबारे झाओ के रूप में परिवर्तित हो गया और रात में गायब हो गया। लॉन्ग जान डांट से थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन वह हमेशा से ही डांट खाने पर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति था और उसने अपनी मुठियां भींच ली लिंग किंगक्सू की हमेशा बदलती क्षमताओं के बारे में सोचते हुए। अगर मैं चौथी बड़ी बहन के साथ सो सकता तो क्या मैं उसे हर दिन एक अलग महिला में नहीं बदल सकता जिसके साथ मैं खेल सकूं? क्या ये कई महिलाओं के साथ सोने के बराबर नहीं होगा? पहले ली युनरुई में रूपांतरित हो जाओ, फिर उस राजकुमारी में, और फिर तीसरी वरिष्ठ बहन, दूसरी वरिष्ठ बहन, पहली वरिष्ठ बहन। मास्टर, चांदनी रात में तलवार चलाने का अभ्यास करते हुए लॉन्ग जान का चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था। ग्रेट जिया राजधानी, पूर्वी शहर, तियानशुई वार्ड, तियानमू वार्ड के निकट, जहां झेनबेई वांगमनो स्थित है। ये वार्ड अधिकांशतः न्यायालय के सिविल अधिकारियों के आवास हैं। रात में लिंग किंगक्सू की आकृति फड़फड़ाती हुई एक दीवार पर खड़ी होकर उसने पूरे तियानशुई वार्ड का सर्वेक्षण किया, एक नए लक्ष्य की तलाश में। पिछली बार जब उसने चिबारे झाओ का रूप धारण किया था तो उसने काओ शियाओलन के परिवार की तलाश की थी, सबसे पहले क्योंकि काओ शियाओलन राजकुमारी का विश्वासपात्र था और दूसरी बात क्योंकि तियानशुई वार्ड तियानमू वार्ड के निकट था, जिससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि झाओ बुजियांग ने चिबारे झाओ को रिहा कर दिया है। इस बार भी यही स्थिति है। उसने एक नया बलि का बकरा ढूंढा, दीवार पर अपने पैर की उंगलियां पटकी, छत की टाइलों पर हल्के से पैर रखा और जमीन पर गिर गई और बहुत ही निर्लज तरीके से लात मारकर दरवाजा खोल दिया। वह चाहती थी कि इस समय उसका चेहरा देखा जाए। जो नौकर द्वार पर दीपक में तेल डाल रहा था वह चौंक गया। आप कौन हैं? चिबारे झाओ, नौकर ने निश्चित रूप से इस जानलेवा राक्षस के बारे में सुना था। यह अवश्य ही होगा कि प्लेबॉय ने उस पर ठीक से नजर नहीं रखी होगी और उसे फिर से रिहा कर दिया होगा। चिबारे झाओ यहाँ मारने के लिए है, चिबारे झाओ यहाँ मारने के लिए है। नौकर की चीख पुकार सुनकर लोगों का एक समूह तेजी से घर से बाहर भागा। चिबारे झाओ, मैं एक दरबारी अधिकारी हूँ, आगे चल रहे बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा। झाओ बुजियांग ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था, तुम सभी महान जिया कुत्ते हो, लिंग किंगक्सू ने ठंडे स्वर में कहा। झाओ बुजियांग, ये बेटा झेनबेई वांग का वंशज है, फिर भी वह आपके साथ सांठ गांठ कर रहा है, हेनसांग। जानना ही पर्याप्त है। जैसे ही लिंग किंगक्सू हत्या शुरू करने वाली थी उसने अपनी लंबी तलवार खींच ली। डैंग, अचानक गड़गड़ाहट जैसी एक घंटी की आवाज गूंजी। लिंग किंगक्सू का हाथ कांप उठा, आवाज बहुत अचानक थी जिससे वह चौंक गई। डैंग डैंग, एक बार फिर घंटे की ध्वनि गूंजी, इस बार घंटे की ध्वनियां आपस में जुड़ी हुई थीं, जिससे आसपास का स्थान हिल गया। वह फिर से चौंक गई। मेरा फ्लावर वाटरमून एक झील की तरह था जिसमें एक जिद्दी पत्थर फेंका गया था, लहरें उठी और अब चिबारे झाओ की पूरी उपस्थिति को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती थी। लिंग किंगक्सू का चेहरा अजीब तरह से मुड़ गया। घंटे की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी जिससे महल के पहरेदार घबरा गए और दौड़कर वहां पहुंचे। हवेली के बाहर खड़े लोग भी इस मजे में शामिल हो गए और ये देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए कि आखिर हुआ क्या था। अनगिनत लोगों ने सफेद पोशाक पहने उस महिला को रात में फड़फड़ाते हुए देखा। उसका चेहरा अजीब तरह से धुंधला था, जैसे लैंपशेड की मंद पीली रोशनी के नीचे छायाएं एक दूसरे पर छा रही हों। जल्द ही ये लिंग किंगक्सू की मूल उपस्थिति में लौट आया। दर्पण पुष्प जल चंद्रमा टूटा। बूढ़ा अधिकारी तुरंत चिल्लाया, आप चिबा रिझाव नहीं है, आप कौन हैं? ये सोचकर कि कैसे दूसरे पक्ष ने जानबूझकर कहा था कि वे झाओ गुजियांग के आदेश पर यहां आए थे, आप वारिस को फंसाना चाहते हैं, आओ उसे पकड़ो। सैनिक लिंग किंगक्सू की ओर दौड़े, लेकिन ये लोग लिंग किंगक्सू के लिए देखने लायक नहीं थे। लेकिन अनजाने में बख्तरबंद सैनिकों का एक समूह रात में गलियों में सभी दिशाओं से बाहर निकल रहा था। देखो चेहरा बदल रहा है, कितनी सुंदर छोटी लड़की है, पलक झपकते ही अपना रूप बदल लेती है, कितना अजीब है। वे सभी कहते हैं कि एक महिला का चेहरा किताब पलटने से भी अधिक तेजी से बदलता है, लेकिन ये सच निकला, मेरे पिता ने मुझे धोखा नहीं दिया। भीड़ और सैनिकों में हड़कंप मच गया, सभी लोग लिंग किंगक्सू के चेहरे में आए तीव्र परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लिंग किंगक्सू बेहद परेशान थी ये जानकर कि वह एक जाल में फंस गई थी। ये सब एक योजना थी, कौन इतना शक्तिशाली था। वह घर की ऊंची जगह पर कूद गई, लेकिन चारों ओर से तीर छूटने लगे, जैसे अचानक आंधी आ गई हो, तीरों की वर्षा ने उसे शीघ्र ही ढक लिया। वह ठंडी सांस लेती हुई बोली, उसका शरीर अभी भी हल्का और फुर्तीला था, वह आकाश में बाणों की वर्षा से बचती हुई आगे और आगे भागती हुई, एक के बाद एक तीरों की बौछार से बचती हुई। ये सोचकर कि वह सुरक्षित है, वह धीरे से छत पर उतरी, धीरे धीरे हांफने लगी, नाराजगी महसूस करने लगी। लेकिन अगले ही पल अचानक एक तेज हवा आई और सीधे उसके दिल पर चोट लगी। टकराना, ये हथेली शक्तिशाली और भारी थी, बौद्ध संप्रदाय के वज्र के समान भयंकर और दबंग थी। लिंग किंगक्सू तुरंत पीछे की ओर गिर पड़ी, मलबे से टकराकर खून के धब्बे मिटा दिए और गुस्से से भरी उसकी आंखों ने उस व्यक्ति को भी देखा जिसने उस पर हमला किया था। लंबी मुखौटा पहने हुए, यहां तक कि उसकी आंखें हल्के धागे से ढकी हुई थी, उसके पूरे सिर को ढकना अधिक उचित था, जाहिर है वह नहीं चाहते थे कि वह अपनी पहचान पहचाने। घृणित खलनायक, उसने अपने चांदी के दांतों को कसकर काटा और देखा कि कुछ ही दूरी पर शहर की रखवाली कर रहे सैनिक मशालें थामे तेजी से भागते हुए आ रहे हैं। ये जानते हुए कि वह लड़ नहीं सकती, लिंग किंगक्सू उठी, चोट को सहन किया और अपनी पूरी ताकत के साथ भाग गई और फिर से रात में विलीन हो गई। शहर की सुरक्षा में लगे सैनिक देर से पहुंचे। नकाबपोश आदमी ने असहाय होकर आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरी ताकत से किया गया छिपकर किया गया हमला इस चेहरा बदलने वाली लड़की को नहीं मार देगा, लेकिन ये भी अच्छा है मैंने अपनी पहचान उजागर नहीं की, मुझे लगता है कि वह मेरे साथ भी कुछ नहीं कर सकती। लिंग किंगक्सू जो ज्यादा दूर नहीं भागी थी ने अचानक अपने मन में ये दो आवाजें सुनी, वह चौंक गई लेकिन उन्हें दृढ़ता से याद किया। चाहे तुम कोई भी हो मैं तुमसे बदला लूंगा। झेनबेई रॉयल हवेली, कुत्ते का बिल। नकाबपोश व्यक्ति के अंदर घुसने के बाद उसने अपना हुड उतार दिया। उसका नाम झाओ गुजियांग था जो एक धूर्त आदमी था। चुपके से किया गया हमला विफल हो गया लेकिन योजना पूरी हो गई। उसने अभी अभी अपने कपड़े बदले थे। बूढ़ा बटलर रिपोर्ट देने के लिए ठीक समय पर आया। महाराज, आज रात शहर की सुरक्षा कर रहे गश्ती बटालियन कमांडर को आपसे कुछ बात करनी है, कृपया उसे अंदर आने दो। गश्ती बटालियन कमांडर ने अपना हेलमेट पकड़ा, एक ही घूंट में चाय पी ली और अपनी दाढ़ी पोंछी जो घास फूस की तरह गंदी हो गई थी। महाराज, उत्तराधिकारी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अनुमान लगाया था। कोई व्यक्ति चिबा हिनाता का रूप धारण कर रहा है। यह एक महिला है और वह काफी सुंदर है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट बहुत ही भयानक है और उसने मेरे कई भाइयों को घायल कर दिया है। कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है, इसलिए ये झूठ नहीं हो सकता। मैं जल्दी ही सम्राट को इसकी सूचना दूंगा। धन्यवाद कमांडर वांग। झाओ गुजियांग ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां हिलाई और बूढ़े बटलर को कुछ लाने का संकेत दिया। बूढ़े बटलर को बर्खास्त होते देख गश्ती बटालियन कमांडर ने अपनी आवाज धीमी कर दी। चूंकि सबसे बड़ी राजकुमारी ने निर्देश दिए हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपकी सहायता करूंगा। ये कहने के बाद गश्ती बटालियन कमांडर ने अपना हेलमेट उठाया और सम्राट को आज रात की स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए निकलने वाला था। कमांडर वांग, एक क्षण रुकिए। इसी समय बूढ़ा बटलर एक लकड़ी की ट्रे लेकर आया जिसमें लाल कागज में लिपटी चांदी थी। ये दृश्य देखकर गश्ती बटालियन कमांडर की भौहें तन गईं। उत्तराधिकारी का इससे क्या तात्पर्य है? झाओ गुजियांग ने बूढ़े बटलर से लकड़ी की ट्रे ली और कमांडर वांग की ओर चला गया। कमांडर वांग ने उसे देखा, बड़ी राजकुमारी ने पहले ही निर्देश दे दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज। कमांडर वांग, मैं झाओ गुजियांग अपने भाइयों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करता। झाओ बुजियांग कमांडर वान के पास गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अत्यधिक आनंद में लिप्त हो गया हो, कमजोर और दुर्बल। उसके पैर नरम पड़ गए और वह गिरने ही वाला था। कमांडर वांग उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़े। झाओ बुजियांग ने ठहाका लगाया और चांदी से भरी लकड़ी की ट्रे कमांडर वांग के हाथों में आ गई। कमांडर वांग दंग रह गए। वह तो एक बदतमीज आदमी था, वह ऐसा दृश्य कैसे देख सकता था? क्या ये वही प्रसिद्ध सरकारी रिश्वतखोरी हो सकती है? कितना रोमांचक है। झाओ बुजियांग अपने हाथों को पीछे करके खड़ा रहा, कमांडर वांग को ट्रे वापस करने का मौका नहीं दिया। कमांडर वांग, आप बहुत व्यस्त आदमी हैं, इसलिए मैं आपको नहीं रखूंगा। कमांडर वांग की बाहें भारी हो गई थीं। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली, भारी सिर हिलाया, महाराज अगर भविष्य में आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस आदेश दे दीजिएगा। अल्पविराम, इंपीरियल पैलेस, इंपीरियल अध्ययन, लीजा युआन, जो अभी भी मामूली मामलों से निपट रहा था, गश्ती बटालियन द्वारा अभी अभी प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को देखकर भौंचक्का रह गया। पिताजी चाय पियो, ली युनरुई ने आज्ञाकारी होकर एक कप ताज़ा चाय ला कर दी। उन्होंने रिपोर्ट की विषय वस्तु भी देखी और प्रसन्न हुई। ये झाओ बुजियांग वास्तव में अद्भुत है। सिर्फ एक दिन में ही उसने अपना नाम साफ कर दिया। वह वाकई वही आदमी है जिस पर उसकी नज़र थी। लीजा युआन ने दयालुता से मुस्कुराते हुए चाय की एक चुस्की ली और उसकी कुछ थकान दूर हो गई। पिताजी झाओ बुजियांग को देखिए, कुछ ही दिनों में उसने असली अपराधी को पकड़ लिया। क्या आपको उसकी प्रतिभा के लिए उसे पुरस्कृत नहीं करना चाहिए? अपनी प्यारी बेटी को झाओ बुजियांग के लिए श्रेय मांगते हुए देखा। लीजा युआन ने एक टपकती हुई छोटी सूती गद्देदार जैकेट की आह भरी और अपना सिर हिलाया। झाओ बुजियांग ने असली अपराधी को बहुत जल्दी ढूंढ लिया, लेकिन झाओ बुजियांग ने गश्ती बटालियन को कैसे प्राप्त किया? ये शहर की रक्षा सेनाओं में से एक है। सम्राट के आदेश या हुक्मनामे के बिना गश्ती बटालियन, स्विफ्ट कैवलरी बटालियन आदि को अन्य किसी के द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता। झाओ बुजियांग, आह झाओ बुजियांग, मैं सचमुच अब तुम्हें नहीं देख सकता। लीजा युआन की आशंका और गहरी हो गई और उसने गहरी भौहें सिकोड़ ली। अपना नाम साफ करना ही उसका इनाम है। पिता, ली युनरुई ने सीधे ताज़ा चाय ले ली और फटकारते हुए कहा, अगर आप झाओ बुजियांग को पुरस्कृत नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन राजधानी में एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हुई हैं और असली अपराधी अभी भी फरार है। क्या ये स्विफ्ट कैवेलरी बटालियन और कैपिटल प्रीफेक्चर द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा नहीं है? आप हमेशा बुद्धिमान और विवेकशील रहे हैं, पुरस्कार और दंड में निष्पक्ष रहे हैं, तो क्या दंड नहीं होना चाहिए? हालांकि वह झाओ बुजियांग के लिए कोई इनाम नहीं जीत सकी, लेकिन जो कुछ लोग पहले झाओ बुजियांग को धमकाने आए थे, वह ली युनरुई जाने देने को तैयार नहीं थी। लीजा युआन ने अपना माथा रगड़ा। वह जानता था कि उसे लोंगजान और राजधानी के प्रीफेक्ट को सजा देनी होगी, अन्यथा युनरुई ये ताज़ा चाय वापस नहीं लाता। अल्पविराम, लोंगजान का निवास, लिंकिंगक्सु रात के अंधेरे में भाग गई और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए विंग रूम में छिप गई। उसकी भौहों में एक जानलेवा आभा थी और उसका नाजुक चेहरा और भी ठंडा हो गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका दर्पण पुष्प जल चंद्रमा कैसे टूट सकता है। गश्ती बटालियन के सैनिकों ने घंटियां थाम लीं और उन्हें बजाया तो वह ध्वनि धरती को हिला देने वाली थी। ये स्पष्ट था कि यह कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर और लक्षित कार्रवाई थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंत में एक नीच चोर ने चुपके से उस पर हमला कर दिया। हथेली की शक्ति के भीतर वास्तव में सच्चे यांग हृदय सूत्र की अद्वितीय आंतरिक शक्ति थी। बड़ी बहन, क्या आप ठीक हैं? लोंगजान ने दरवाजा खोला और अंदर घुसा। उसने लिंकिंगक्सु का पीला चेहरा देखा। जब लिंकिंगक्सु ने उसे देखा तो उसका दिल दहल गया और वह तुरंत सावधान हो गई। उस पर हमला करने वाले चोर के पास ट्रू यांग की शक्ति थी। लोंगजान के अलावा वह और कौन हो सकता है? वरिष्ठ बहन, क्या आप घायल हैं? इस समय लिंकिंगक्सु को बर्फ के पहाड़ के बर्फ कमल की नाजुक अनुभूति हो रही थी। उस सुंदर आकृति की रूपरेखा ने लोंगजान को एक ऐसी गर्मी दी जो बर्फ और हिम के विपरीत थी। शायद यह उसके लिए लिंकिंगक्सु के करीब आने या यहां तक कि उसे नीचे गिराने का एक अवसर था। लोंगजान कुछ कदम आगे बढ़ा। वरिष्ठ बहन, मैं आपको ठीक करने के लिए सच्चे यांग हॉट सूत्र का उपयोग करूंगा, कृपया अपना ऊपरी वस्त्र उतार दें। लिंकिंगक्सु ने लोंगजान की अचानक उग्र निगाहों को महसूस किया, उसकी बौहें ऊपर उठ गईं और उसने डांटा, कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बहन, मैं आपका छोटा भाई सचमुच एक सज्जन व्यक्ति हूँ। लोंगजान, आप मेरे लिए ये याद रखें, भले ही गुरु को विश्वास हो कि आप चुने हुए व्यक्ति हैं और आप भविष्य में संप्रदाय को शाही शक्ति से ऊपर खड़ा कर सकते हैं, भले ही मालिक ये चाहे कि मैं और मेरी बहनें तुम्हारे लिए सब कुछ दे दें, लेकिन यह आपका भविष्य है, वर्तमान आप योग्य नहीं हैं। मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। लोंगजान को लिंकिंगक्सु ने निर्दयतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था और उसका दिल उदास था। लेकिन अपनी छवि बचाने के लिए उन्होंने विषय बदल दिया। बड़ी बहन, आपके छोटे भाई को सिर्फ आपकी चोटों की चिंता है। आखिरकार स्वर्गीय तलवार का जन्म होने वाला है। यदि आपकी चोटें बहुत गंभीर हैं तो यह निश्चित रूप से स्वर्गीय तलवार की लड़ाई को प्रभावित करेगी। लॉन्ग जान के सख्त सवालों का सामना करते हुए लिंग किंगक्सू की आंखें सिकुड़ गईं। वह यहां इसलिए आई थी क्योंकि उसके संप्रदाय दाओ संप्रदाय को खबर मिली थी कि जियांगू के नंबर एक हथियार बनाने वाले गिरोह तलवार कास्टिंग विला ने 3 पीढ़ियों के प्रयास और अपने सभी संसाधनों को एक दिव्य तलवार बनाने में लगा दिया था जो कि जन्म लेने वाली थी। दिव्य तलवार की शक्ति चौंकाने वाली और भयानक थी। जो कोई भी दिव्य तलवार प्राप्त करता वह सभी नायकों को आदेश दे सकता था। जियांगू मार्शल दुनिया 3 धर्म और 9 धाराएं सभी प्रमुख ताकतें इस पर ध्यान दे रही थी और यहां तक कि महान जिया शाही परिवार भी गुप्त रूप से इसकी लालसा कर रहा था। TWKANCOM उसके स्वामी ने गणना की थी कि दिव्य तलवार लॉन्ग जान की थी, इसलिए उसने उसे दिव्य तलवार प्राप्त करने में लॉन्ग जान की सहायता करने का आदेश दिया। लॉन्ग जान को स्पष्ट रूप से पहले ही खबर मिल चुकी थी और अब वह उससे पूछताछ कर रहा था। अतीत में तो वह सच बोल देती लेकिन अब उस पर एक खलनायक ने गुप्त रूप से हमला कर दिया था और उसे गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं। और यह खलनायक संभवतः लॉन्ग जान ही था। लिंग किंगक्सू ने जोर से सांस ली और शांत होने का नाटक करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मामूली चोट है। कुछ ध्यान के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। इससे दिव्य तलवार की लड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लॉन्ग जान ने अपनी वरिष्ठ बहन के चेहरे पर नजर डाली जो पहले से ही गुलाबी हो गया था। फिर वरिष्ठ बहन ध्यान कर सकती है और कनिष्ठ भाई आपको परेशान नहीं करेगा। लॉन्ग जान मुड़ा और चला गया और लिंग किंगक्सू ने धीरे से अपने दिल में राहत की सांस ली। दरवाजे के बाहर खड़े लॉन्ग जान ने मन ही मन सोचा, कितनी अफसोस की बात है। एक महिला के लिए सबसे कमजोर समय वह होता है जब वह घायल हो जाती है या उसका दिल टूट जाता है। यदि चौथी वरिष्ठ बहन की चोट अधिक गंभीर होती या संभवतः बेहोश होती तो उसे एक ही झटके में उसे नीचे गिराने का अवसर मिल जाता। आखिरकार पांचवीं वरिष्ठ बहन के ड्रैगन पोषण संत शरीर के बिना उनकी हालिया मार्शल आर्ट प्रगति धीमी और धीमी हो गई है। यद्यपि लिंग किंगक्सू के पास ड्रैगन पोषण संत शरीर नहीं था, फिर भी वह उसकी अप्रत्याशित दर्पण फूल जल चंद्रमा तकनीक सीखना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिंग किंगक्सू अलग थलग थी और उसे कुछ भी नहीं मानती थी। ऐसी महिला को जीतना अधिक आनंददायक था। इसे भूल जाओ, जब तक बड़ी बहन मेरे साथ है अवसर हमेशा मिलते रहेंगे। जो लोग महान चीजें हासिल करते हैं उन्हें अपनी सांस रोककर रखने में सक्षम होना चाहिए। जब लॉन्ग जान खुद को सांत्वना दे रहा था उसने देखा कि उसका अधीनस्थ किसी हिजड़े की पोशाक में किसी को लेकर आया है। हिजड़ा झांग, कमांडर लांग, मैं यहां एक शाही फरमान सुनाने आया हूं। शाही फरमान जारी किया गया। जैसे ही फरमान सुनाने वाले नपुंसक ने उसे पढ़ा, लॉन्ग जान का लटका हुआ दिल अंततः शांत हो गया। शाही फरमान में कहा गया कि राजधानी में हत्याओं की एक श्रृंखला हुई है और स्विफ्ट कैवेलरी कैंप दोष से बच नहीं सकता। उस पर आधे साल का वेतन जुर्माना लगाया गया और जिंगझाओ प्रांत के साथ मिलकर 3 महीने के भीतर असली हत्यारे को खोजने का आदेश दिया गया। लॉन्ग जान ने शाही फरमान को कसकर पकड़ लिया, उसका चेहरा काला पड़ गया। अभी अभी जब लिंग किंगक्सू घायल अवस्था में लौटा तो उसे खबर मिली थी और वह जानता था कि झाओ गुजियांग को फंसाने की योजना विफल हो गई थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि झाओ गुजियांग वह कुत्ता न केवल एक विपत्ति से बच गया बल्कि उसे खुद भी ऐसी परेशानी झेलनी पड़ी। उनके और झाओ गुजियांग के बीच पहले कोई वास्तविक संघर्ष नहीं हुआ था, लेकिन लॉन्ग जान को हमेशा लगता था कि झाओ गुजियांग उसकी सफलता की राह पर एक कदम मात्र था। अब जब ये कदम बार बार रास्ते में आ रहा था और वह इससे छुटकारा भी नहीं पा रहा था तो इससे लॉन्ग जान और भी उदास हो गया। नहीं, इस बेटे को खत्म करना होगा, अन्यथा यह मेरे दाव दिल को प्रभावित करेगा। लेकिन सौभाग्य की बात यह थी कि लाभ अभी भी उनके पक्ष में था। सम्राट के शाही फरमान में पक्षपात बहुत स्पष्ट था, यह उसकी लॉन्ग जान की मदद कर रहा था। झेनबेई किंग्स हवेली, झाओ गुजियांग, जिसने पहले ही शाही फरमान की बातें सुन ली थी, वह धीरे से खर्राटे लेने से खुद को रोक नहीं सका। कैसा निस्वार्थ सम्राट, वह इतना पक्षपाती कैसे हो सकता है। दोनों हत्यारे की तलाश कर रहे थे लेकिन उसे झाओ गुजियांग को केवल 3 दिन दिए गए, लॉन्ग जान को 3 महीने दिए गए। महाराज कृपया शांत हो जाए। बूढ़ा बटलर झाओ गुजियांग को सांत्वना देने के लिए ऑयस्टर वुल्फबेरी जिनसेंग चाय का एक बड़ा कटोरा ले आया। झाओ गुजियांग ने इसे एक ही घूंट में पी लिया और मेज पर जोर से पटक दिया। मैं कुछ भाप छोड़ने जा रहा हूँ, बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो और उस कालकोठरी में पहुंचा जहां ली रुयान कैद था। सम्राट को उससे, झाओ गुजियांग से और उस सस्ते बूढ़े आदमी झेनबेई राजा से अधिक डर लगता था। उसे जितनी जल्दी हो सके उतना अधिक शक्तिशाली बनना था और अधिक शक्ति प्राप्त करनी थी। जब दुश्मन को संदेह हो कि आपके पास उन्हें धमकाने की ताकत है, तो बेहतर है कि आप ऐसा करें, दुश्मन को ये साबित करने के बजाय कि आपके पास ताकत नहीं है। लियु रुयान को झाओ हुजियांग की भयंकर आभा ने कुछ समय के लिए चौंका दिया। उसके फटे हुए कपड़े मुश्किल से उसके नाजुक शरीर को ढक पा रहे थे। वह केवल अपने तीन बिंदुओं को ढकने की पूरी कोशिश कर सकती थी। उसकी अभिव्यक्ति घबराई हुई थी, पत्थर की दीवार के सहारे झुकी हुई थी। तुम क्या करने जा रहे हो? लियु रुयान, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खेती करने में मदद करो। झाओ हुजियांग की आभा रसातल की तरह गहरी थी। उसने अपना महान वेई तियानलोंग निकाला और इस मोहक दानव को वश में कर लिया। ... अगली सुबह शाही महल के चर्चा कक्ष में मुख्य खोजे ने जोर से चिल्लाया, जैसे कि कोई प्रकाश संकेत दे रहा हो, और उसकी गूंजती हुई ध्वनि परत दर परत नीचे तक प्रसारित हुई। घोषणा करें, झाओ हुजियांग श्रद्धांजलि देने के लिए आगे आए। झाओ हुजियांग, जो चर्चा हॉल के बाहर दूर खड़ा था, सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब से झेनबेई राजा की मृत्यु हुई है, उसे उत्तराधिकारी को उसकी ओर से दरबार में उपस्थित होना पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए होता है। इसलिए झाओ हुजियांग हमेशा सबसे पीछे खड़ा रहता था और कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन इस बार सम्राट ने उसे विशेष रूप से बुलाया था, इसलिए संभवतः कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ताज़ा खबर पूरी राजधानी में फैल गई थी। हान सांग दूत के कारावास के कारण उत्तरी सीमा पर युद्ध की स्थिति, जो पहले से ही अपनी रीढ़ खो चुकी थी, और भी अस्थिर हो गई। हान सांग द्वीप राष्ट्र ने मांग की कि महान जिया राजवंश 10 दिनों के भीतर चिबा रिहुई सहित सभी हान सांग दूतों को वापस भेज दे, अन्यथा शत्रुता की समाप्ति पुनः शुरू हो जाएगी और हान सांग ग्रेट जिया पर पूर्ण आक्रमण कर देगा। आज की प्रारंभिक अदालत मुख्य रूप से हान सांग दूत और महान जिया युद्ध की स्थिति के मामले पर चर्चा करने के लिए थी। कई मंत्रियों का मानना था कि अगर हान सांग द्वीप राष्ट्र लड़ना चाहता है तो उन्हें लड़ने दो, महान जिया कभी नहीं झुकेंगे। हालांकि यदि हान सांग के दूत को वापस नहीं भेजा गया तो उत्तरी सीमा पर प्रभारी कमांडर की आवश्यकता होगी। कमांडर कौन होना चाहिए? आखिरकार उत्तरी सीमा के कमांडर का पद एक कठिन काम था। आसमान ऊंचा था और सड़क दूर थी। उत्तरी सीमा उजाड़ और बंजर थी, राजधानी या जियांगनान की तुलना में कहीं कम समृद्ध थी, और उन्हें द्वीप राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं के प्रति लगातार सतर्क रहना पड़ता था। इसके अलावा उत्तरी सीमा पर झेनबेई सेना तैनात थी। जो कोई भी वहां जाता था उसे पहले झेनबेई सेना के जनरलों को अधीन करना पड़ता था। झेनबेई सेना वे हत्यारे देवता थे जो रक्तपात से अलग खड़े थे। झेनबेई राजा के अलावा कौन उन्हें दबा सकता था? इसके अलावा भले ही वह झेनबेई राजा था, अब जब वह मर चुका था, शाही दरबार का रवैया क्या था? ये बहुत ठंडा था, तो फिर सीमा की रखवाली और देश की रक्षा करने का क्या फायदा? अंत में यह अभी भी कृतघ्न था। यह उस समय अधिकारियों का सच्चा विचार था। ये देखकर कि वहां कोई उपलब्ध नहीं था, ली ज़ायुआन ने लॉन्ग जान के बारे में सोचा। लेकिन लॉन्ग जान भी मूर्ख नहीं था और उसने तुरंत झाओ हुजियांग पर उंगली उठाई। उन्होंने सम्राट से झाओ हुजियांग की सिफारिश की तथा कहा कि वह अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, उत्तरी सीमा की रक्षा करेंगे तथा उत्तरी सीमा पर अपनी जड़ें जमाएंगे, जिसे तीन पीढ़ियों की दृढ़ता माना जा सकता है। ये झाओ हुजियांग को आग में डालकर उसे भूनने के लिए था। हालांकि ली ज़ायुआन को लगा कि लॉन्ग जान ने जो कहा वह सही था, फिर भी उसका रवैया कुछ हद तक झिझक भरा था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले झाओ हुजियांग को आने और पूछने दिया। झाओ हुजियांग ने दहलीज पार की और कई दरबारियों का ध्यान उसकी ओर गया। उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में कुछ हद तक झेनबेई राजा के समान है, लेकिन उसकी आभा अभी भी उससे बहुत दूर है। उस समय झाओ राजा की आत्मा वह एक गुर्दे की कमी वाले बच्चे की तरह दिखता है, वह कैसे पकड़ सकता है? दरबारियों के चेहरे पर ज्यादातर तिरस्कार भरा भाव था। आखिरकार झेनबेई राजा के इकलौते बेटे की राजधानी में अच्छी लेकिन बहुत खराब प्रतिष्ठा थी। लॉन्ग जान दरबारियों के बीच खड़ा था और झाओ हुजियांग को ठंडी नजरों से देख रहा था। चूंकि वह कम समय में झाओ हुजियांग को मार नहीं सकता था, तो क्यों न सम्राट ने झाओ हुजियांग को उत्तरी सीमा के उस कठोर और ठंडे स्थान पर निर्वासित कर दिया। जब तक झाओ हुजियांग को निर्वासित रखा गया, झाओ हुजियांग के रास्ते में आने के बिना ये केवल समय की बात थी कि वह सातवीं राजकुमारी ली युनरुई से मिल जाए। ली युनरुई की मदद से उनका शीर्ष पर पहुंचना लगभग तय था। जब समय आएगा तो वह अदालत से झाओ हुजियांग को उत्तरी सीमा में मरने देने का आदेश जारी कर सकता है। ली ज़ायुआन ड्रैगन सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ झाओ हुजियांग को देख रहा था, जो वहां से चला आ रहा था। वह अपने भाई झाओ टिंगजियाओ को देखकर मदहोश हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि झाओ हुजियांग में भी शुरू में वही आभा थी। अगर इस बच्चे को उत्तरी सीमा पर भेज दिया गया तो ये युनरुई को उससे दोबारा प्यार करने से रोक देगा। हालांकि उसे झाओ हुजियांग पर नजर रखने के लिए अभी भी अपने विश्वासपात्रों को भेजने की जरूरत थी। हालांकि झाओ बुजियांग झाओ टिंगजियाओ जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये गारंटी देना मुश्किल था कि उत्तरी सीमा में झेनबेई सेना उसे दूसरा झेनबेई राजा बनने की सिफारिश करेगी, इसलिए उसे इसके खिलाफ सावधान रहना पड़ा। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हानसांग की सीमा पर दबाव के कारण उत्तरी सीमा को तत्काल एक कमांडर की आवश्यकता थी और झेनबेई राजा का बेटा सबसे सुविधाजनक उम्मीदवार था। आपका प्रजाजन झाओ बुजियांग सम्राट को सम्मान देता है। झाओ बुजियांग ने अपने लबादे को झटका, अपने बाएं हाथ से लबादे का किनारा उठाया, मानो वह घुटने टेक कर सलामी देने वाला हो। ली ज़ायुआन ने अधिक उदारता और उदारता दिखाई, घुटने टेकने से बचो। धन्यवाद सम्राट, झाओ बुजियांग ने फुसफुसाते हुए अपने मुड़े हुए घुटनों को सीधा किया। वह घुटने टेक कर सलामी देने के उसके इरादे को समझ पाने में पूरी तरह असमर्थ था। ली ज़ायुआन ने गहरी आवाज में कहा, आपको उत्तरी सीमा के बारे में पहले से ही पता होगा, थोड़ा आराम करें और दोपहर में रवाना हो और जितनी जल्दी हो सके उत्तरी सीमा पर पहुंचने का प्रयास करें। ये सम्राट था, उन्होंने झाओ बुजियांग को चर्चा करने का कोई मौका नहीं दिया। तुम्हें यहां बुलाकर सिर्फ ये सूचित किया गया था कि तुम काम करो। दरबार के अधिकारियों ने झाओ बुजियांग को ऐसे देखा जैसे वे किसी बोझा ढोने वाले जानवर को देख रहे हों। उन्हें कुछ हद तक सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग खुश हो रहे थे। सौभाग्यवश यह अशुभ बात उन पर नहीं पड़ी। कौन जानता था कि झाओ बुजियांग ने डिक्री को स्वीकार नहीं किया और आदेश प्राप्त नहीं किया, लेकिन अपना सिर हिला दिया। महाराज कृपया अपना आदेश वापस लें। जैसे ही ये शब्द निकले दरबार में कोहराम मच गया। झाओ बुजियांग ने शाही फरमान की खुलेआम अवहेलना करने की हिम्मत कैसे की। लॉन्ग जान की आंखें और भी चमक उठी। शाही आदेश की अवहेलना, वह मूलतः चाहता था कि तुम धीमी मौत मरो, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बच्चा आते ही खुद को चाकू मार लेगा। ड्रैगन सिंहासन पर ली ज़ायुआन की आंखों में तुरंत जानलेवा इरादे थे। झाओ बुजियांग मैं आपके साथ चर्चा नहीं कर रहा हूं।